धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको भी आशीष दे और बाइबल की कक्षा सुप्रभात। और आज सुबह हर एक जन कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा, मैं आशा करता हूँ, आमीन। हम एक प्रकार से यह एक कम समय में सूचित किया गया कि हमें यह कहना था कि हम आज सुबह यहाँ होंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं, मेरा यात्रा का कार्यक्रम अभी तक नहीं बना था, मैं कब निकल रहा हूँ। और यह अब ऐसा है कि यह अगले 6 महीनों के लिए बनाया है, तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि हमारे लिए बेहतर होगा आज सुबह हम सभा को करें, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे फिर से वापस आने में कुछ समय लगेगा, हो सकता है इस शरद ऋतु को। और मैं अब हम इस आने वाले सप्ताह में ब्यूमोंट टेक्सास की ओर रवाना होंगे, जहां हम अगले हफ्ते वहां से आरंभ करेंगे और जारी रखते हुए लगभग वहां 8 या 10 दिन की सभाओं को लेंगे। उन स्वतंत्र और भिन्न भिन्न कलीसियाओं के सहयोग से यह असल में वहां ब्यूमोंट टेक्सास की जीसस नेम कलीसियाओं के द्वारा प्रायोजित किया गया है, जहां कुछ समय पहले हमारी महान सभाएं हुई थी। इस तस्वीर को लिए जाने के ठीक बाद, और वे मैं समझता हूं कि वे वहां पर एक गाड़ी के कोच को चलाते हैं, साथ में मैं सोचता हूं 27 कोच या एक ट्रेन जिस पर 27 डिब्बे होते हैं। वहां ब्यूमोंट की सभाओं में आने के लिए वहां पर शहर के मेयर ने परेड की थी और सड़कों में से होते हुए गए, और वे सारे ब्यूमोंट में एक बहुत ही अच्छा समय था। और हम इस अगले सप्ताह वापस लौट रहे हैं और फिर सेंट एंटोनियो की जाने की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त समय नहीं होगा वापसी पर। और हम वहां से फिनिक्स लॉस एंजलिस जाएंगे, वहां से लॉन्ग बीच के लिए, और फिर हम वापस आएंगे। प्रभु ने चाहा तो पूर्वी तट की ओर वापस जाएंगे, वर्जीनिया और दक्षिण कैरोलिना की ओर वापस जाएंगे, उसके बाद वापस बिंगमिंटन इलिनियोस में आ जाएंगे और वहां से लेन टेक हाई स्कूल में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में क्रिश्चियन बिजनेसमैन, और उसके बाद मैं वहां से उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया जाने के लिए अलास्का की ओर जाऊंगा और जून तक वहां रहूंगा, और तब हम एक अच्छा समय बिताने की आशा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यदि जांच होती है, जो मैं कुछ समय से आयकर के निगरानी में रहा हूं, यहां की कलीसिया के विषय में उस समय तक समाप्त हो जाएगा और फिर मैं विदेश जा पाऊंगा। यदि ठीक यह जून में होता है तो यह बस अफ्रीका के लिए सही हो जाएगा, अफ्रीका में जून, जुलाई और अगस्त के लिए। इसलिए मुझे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। और हम प्रभु के आगमन के लिए देख रहे हैं, ये जो सारी बातें हैं, यदि यह प्रभु की इच्छा होगी तो। देखो, हम नहीं जानते, वो ये वास्तव में अगुवाई नहीं है, हमें बस सारे नियंत्रण एक साथ मिले हैं और इस पर प्रार्थना की है, प्रभु से पूछा हमें किस ओर जाना चाहिए, और फिर ऐसा दिखाई दिया मैं ये सब अपने आप पर नहीं छोड़ता, मैं दूसरों को इसके बारे में सोचने देता हूँ, इस पर प्रार्थना करता हूँ, और फिर ऐसा दिखाई दिया कि हम सभी इस समय पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की ओर जाने की अगुवाई महसूस कर रहे हैं। और फिर हमारे पास चारों ओर से निमंत्रण थे, तो हमने अभी शुरुआत की है और पहला स्थान मेरे हृदय पर आया या तो ब्यूमोंट या सेंट एंटोनियो, इसलिए हमने इसे देखा और हमारे पास दोनों स्थानों पर से निमंत्रण आए थे। और यह हमने ब्यूमोंट में एक को फोन किया और ऐसा हुआ कि उनके सहयोग में 42 कलीसियाएं थी, यूनाइटेड, पेंटिकॉस्टल और इत्यादि की। हमने सोचा कि एक बड़े सभागार के साथ उन्हें सभा को देना बेहतर रहेगा। दोनों स्थान पर 5 और 5 सभाओं करने की बजाय लगभग 10 दिन करेंगे। मैं सोचता हूं यदि आप इसे इस तरह एक ही स्थान पर करते हैं तो यह बेहतर होगा। फिर बहुत से ब्यूमोंट में आसपास के जरूरतमंद लोग हैं और वहां नीचे टेक्सास का वो तेल वाला भाग है, और सो हम ब्यूमोंट में एक अच्छे समय की अपेक्षा कर रहे हैं। और अब हम कभी भी वहां जाने की कोशिश नहीं करते हैं जहां बड़े केंद्र और बड़े बड़े स्थान हैं, लेकिन हम जाने की कोशिश करते हैं जैसे प्रभु हमारे जाने के लिए अगुवाई करेगा, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु अगुवाई करता है। अब किसी भी समय वह हमें मकदुनियाई की पुकार दे सकता है, और हम किसी भी समय कार्य क्षेत्र को छोड़ देंगे, क्योंकि जो कुछ भी करने के लिए वह हमें बुलाता है कहीं पर भी। और हम निश्चित रूप से आप अच्छे लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द संगति के इस समय का आनंद उठाया है। मुझे भरोसा है कि आप अब विश्वास योग्य होंगे और कलीसिया आकर और बाइबल की शिक्षाओं का पालन करेगी। यहाँ हमारे साहसी भाई के जरिए से भाई नेविल, जिसकी मैं प्रभु परमेश्वर के सेवक के रूप में अत्यधिक सिफारिश करता हूँ, और परमेश्वर के साथ और गहराई में बढ़ते जा रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और छोटी कलीसिया, मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की सलाह देता हूँ। अपने आप को स्थिर रखें और हर समय कलवरी की ओर देखते रहें। अपने हृदय और प्राण से कड़वाहट की सारी जड़ों को निकाल दें, जिससे कि परमेश्वर आपको किसी भी समय उपयोग कर सके। यदि आपको कभी भी कुछ करने का महसूस करते हैं, या कोई प्रकाशन या कुछ तो आपके पास असाधारण रूप से आता है, कुछ तो चेतावनी के रूप में या कुछ तो सावधान रहें। शैतान उतना ही धूर्त और चालाक है जितना वो हो सकता है, समझे। इसे परमेश्वर के वचन के साथ मिलाएं और अपने पास्टर से परामर्श लें, देखा। और आप कलीसिया में दानों और इत्यादि को धीरे धीरे बढ़ते हुए और इन दानों के संचालित होते हुए देखते हैं। इससे पहले कि आप इसे संचालित होने दें और चीजों को होने दें, पहले इसे अपने हृदय पर प्रेरणा को महसूस करें। अब शत्रु बहुत ही चालाक है, देखना। और यह बस वही है जो हर समय कलीसियाओं को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह एक सच्चा दान है जिसे गलत तरीके से संचालित किया जाता है, देखा। कुछ तो परमेश्वर करने की कोशिश करता है और इसे गलत तरीके से संचालित किया गया है। यह बस साधारण न ही केवल आपको चोट पहुंचाता है, लेकिन यह सारी कलीसिया के टुकड़े कर देगा, समझे। इसका परामर्श लें, इसे बाइबल में से होते हुए लें, फिर इसे परखें और देखें कि क्या यह परमेश्वर है या नहीं। बस इसे परखते रहें और जांचते रहें, देखें कि क्या यह बिल्कुल सही है और पंक्ति में हो और हर वचन के साथ सही बैठता है। देखो, उसके बाद आप सही होते हो। जब तक वचन ने कहा है कि यह यहाँ होगा, यह इस तरह से कार्य करेगा, ठीक इसके साथ बने रहें। इससे कभी भी बाहर न जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी करे, वह कितना भी वास्तविक क्यों न दिखता हो। यदि यह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचनों में प्रतिबिंबित नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें, किसी भी मौके को न लें। हम अंत के दिनों में हैं, जब शैतान बस भरमाने का काम कर रहा है जितना वो भरमा सकता है। यदि मैं बॉस के स्थान को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करना, मैं कोई बॉस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए उस तरह से महसूस करता हूँ जैसा कि पौलुस ने वहाँ एक बार अपनी सभा के लोगों के विषय में कहा था, तुम मेरे मुकुट में के तारे हो। जब मैं उस पार के देश को पार करके उस ओर वहाँ पर जाता हूँ और उस महिमा में अवस्था में आपसे मिलूं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मुकुट में के तारों की तरह चमकते हुए वहाँ पर खड़े रहें, समझे। और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ रहें और मैं वहाँ पर होना चाहता हूँ। और मैं अपने दर्शन में याद करता हूँ, जब मैंने प्रभु की उपस्थिति को देखा या उस महिमामय देश में, तो वहाँ उस ओर उसके लोगों को देखा था। मैंने चारों ओर देखा, मैंने उनसे कहा और उन्होंने मुझे बताया कि वह पहले मेरा न्याय उस सुसमाचार के द्वारा करेंगे जिसका मैं प्रचार करता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे पौलुस ने प्रचार किया। और लाखों लोग चिल्ला उठे, हम उस पर विश्राम कर रहे हैं, समझे। देखो, अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो और हम किसी दिन वहाँ पर मिलने जा रहे हैं। और परमेश्वर ने कभी भी भाई नेविल और मुझे बॉस बनने के लिए नहीं भेजा, बिल्कुल नहीं। हम तो बस आपके भाई हैं। आप देखो, सुसमाचार में उपदेश देने वाले हैं, तो आओ हम सब मिलकर काम करें। और कभी कभी यदि किसी काम को किया जाना है या इसके बारे में कुछ कहा जाना है, ताड़ना देना या ऐसा ही कुछ, तो उसी क्रम पर, और वो व्यक्ति जिसे वह दान मिला है वह इसे ठुकराता है, तो बस याद रखें, इसे इनकार करता है, याद रखें, तो दान सही नहीं था। यह पहले स्थान में परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर का आत्मा हमेशा सुधार के लिए तैयार रहता है, मधुर और नम्र इच्छा को रखता है। देखना, यदि ये खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं इसे किसी भी तरह से करूंगा, आप जानते हैं किस तरह से कभी कभी। बस याद रखें, अभिमानी आत्माएं परमेश्वर की नहीं होती हैं, देखा। तो एक विकल्प को क्यों ले, जबकि हर एक चीज, सारी धरती परमेश्वर की महिमा से भरी है। आप देखते हैं परमेश्वर की सच्ची सामर्थ को, हम एक विकल्प को क्यों लें। हमें अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन याद रखें, बाइबल ने कहा है कि वो इस तरह आएगा बस इतना धूर्त जितना वो हो सकता है, और हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, समझे। और अब कभी कभी हम सोचते हैं कि हम चुने हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हम हैं, लेकिन आइए हम बस ठीक बाइबल के साथ बने रहें, और फिर यदि हर एक चीज वचन के साथ ठीक बैठती है और वचन के क्रम में है, परमेश्वर की महिमा और कलीसिया के आदर और इत्यादि को लाते हुए, तब हम जान जाते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बाइबल इसका समर्थन करती है। लेकिन अब हमारे मत सिद्धांत इसका समर्थन नहीं करेंगे, यह कुछ भला नहीं करेगा, यह परास्त हो जाता है। तो फिर यदि कोई तो बात हमें प्रभावित करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता यह कितनी भी वास्तविक क्यों न दिखाई देती हो, यदि यह सही नहीं है, वचन अनुसार नहीं है, इससे तुरंत ही हट जाएं, क्योंकि वहाँ पर एक वास्तविक रुका हुआ है, आप देखो। तो अब प्रार्थना करें, और हमेशा और जो कुछ भी आप करते हो मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अब मेरी राय में हम अंतिम बार कार्य क्षेत्रों पर प्रहार करने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। और याद रखें, महान बातें जगह ले रही हैं, यह संसार के बीच अज्ञात बातें हैं। यीशु आया, जिया, मरा और बलिदान किया गया, महिमा में वापस चला गया, और लाखों लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना, समझे। यह तारीफ करने की तरह नहीं है, बड़ा विशाल, यह वो अपनों के लिए आया है, देखो। और यह जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, न ही बाहरी के लिए, कलीसिया के लिए, यह कलीसिया है जो इसके हिलावट को लेती है। मैं उससे अलग सोचता था जब तक कि एक दिन उसने मुझसे बात नहीं की, क्या मुझे वचन में वापस जाना था और इसके बारे में सोचना था कि सारे भविष्यवक्ताओं ने कैसे बताया था कि जब यूहन्ना आएगा, कहेगा ऊंचे स्थानों को नीचा किया जाएगा और निचले स्थानों को ऊंचा किया जाएगा, और परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करेगी, और वो सारे पहाड़ छोटे मेढ़ों की तरह झूम उठेंगे और पत्ते ताली बजाएंगे। तो ठीक है, ऐसा लग रहा था कि सच में कुछ तो बात जगह लेने जा रही है, समझे। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, एक अनुभवी व्यक्ति जंगल में से बाहर आया, शायद उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और भेड़ की खाल का एक पुराना टुकड़ा उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। जंगल में वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, जब वो 9 वर्ष का था तब से लेकर वो वहीं पर था, और उस वक्त वो 30 वर्ष का था। जंगल से बाहर निकल कर आता है, पैर को पटकते हुए मन फिराव का प्रचार करता है, संभव है अपने घुटनों तक कीचड़ में खड़ा हुआ था यर्दन के किनारे पर, और यही है जब ऊंचे स्थानों को नीचा किया गया था और निचले स्थानों को ऊंचा किया गया, समझे। ये आपके पास आत्मिक समझ होनी चाहिए, याद रखें, परमेश्वर ने ऐसा कभी भी नहीं किया और ना कभी करेगा कि चमक धमक में वास करे, वो इसके विरुद्ध है, वह कभी नहीं। वो महान संदेश कभी भी बड़ा फलाना और फलाना बनाओ और फलाना बड़ा बनाओ, ऐसा नहीं होगा, यह उस तरह से नहीं करता है, उसके सेवक उस तरह से काम नहीं करते हैं, उसका आकर्षक और महिमा ऊपर से है। कल या 2 दिन पहले अपने अच्छे मित्र भाई बैक्सवुड के साथ कंटकी की ओर जा रहा था, वहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी खड़ी थी और उसने कहा, भाई हमारे लिए बेहतर होगा धीमे हो जाएं। कहा, वो कठोर है, और मैंने कहा हाँ यह सही है। मैंने कहा, जब कोई राष्ट्र ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां लाखों लोग नौकरी करते हैं और उन्हें नौकरी के लिए महिलाओं को लेना पड़ता है, उन्हें पुलिस कर्मी बनाते हैं और उन्हें वहां भेज देते हैं और कार की ड्राइवर बनाते हैं और इसी तरह की चीजें, यह हमारे राष्ट्र में बड़े धब्बों में से एक है। महिला को बस लगभग वहाँ उतना काम मिला है जैसे कि एक खरगोश तेल की पतीली में चला गया हो, देखा। यह बिल्कुल उसका स्थान नहीं है। और मैंने कहा, यह हमेशा ही मुझे बहुत ही परेशान करता था, लेकिन अब मुझे याद आने लगा है, क्योंकि कोई आश्चर्य नहीं, ये हमारा राज्य नहीं है, हम इस संसार के नहीं हैं। उन्होंने आप क्यों महिलाएं, हमारी महिलाएं, वे क्यों नहीं उनके बालों को छोटा करती और मेकअप करती और रॉक एंड रोल्स और इन सब चीजों को करती हैं? क्यों लोग प्रचलित कलीसियाओं और इत्यादि में जाते हैं, सोचते हैं इसमें कोई बात नहीं, क्यों? यह वे अमेरिकी लोग हैं, वे अमेरिकी हैं, उनके पास अमेरिका की आत्मा है। हम अमेरिकी लोग नहीं हैं, हम मसीही हैं, हम रहते हैं, हमारी आत्मा दूसरे राज्य की है। यदि हमारी आत्मा इस राज्य की होती तो हम इन बातों के साथ आराधना करते, तब हम इन सारे अश्लील गीतों की आराधना करते और इस रॉक एंड रोल की आराधना करते। जहाँ भी तेरा खजाना होता है वहाँ तेरा हृदय होता है, और हमारा खजाना ऊपर है, तो इसलिए हम एक राज्य में जा रहे हैं। यह हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ केवल यहाँ थोड़े समय के लिए प्रवास कर रहे हैं। अन्य नागरिकों को अंधकार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एक नगर में जा रहे हैं, और हो सकता है कि मैं एक शहर व्यापी अभियान को चलाऊं, बस एक हफ्ते या 10 दिनों के लिए मार्ग को बनाऊं, वहाँ एक बहुमूल्य प्राण के लिए एक, वहाँ केवल एक प्राण बैठा हुआ हो। आप कह सकते हैं सभा बड़ी सफल रही, 5,000 लोग वेदी पर आए, हो सकता है कि उनमें से एक भी न बचे, उनमें से एक भी नहीं देखा, और हो सकता है आप वहाँ सोच सकते हैं केवल 2 ही लोग वेदी पर आए, लेकिन हो सकता है उनमें से एक मोती हो। हम केवल छोटी नदी में जाल को डाल रहे हैं। परमेश्वर मछली को चुनता है, वो जानता है कि कौन सी मछली है और कौन सी नहीं। तो देखिए, हम केवल प्रचार कर रहे हैं, और याद रखें कि आप इस आराधनालय में उसी काम को कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती है और परमेश्वर की आवाज उसका वचन है। मैं उस दिन सोच रहा था कि ये लोग किस तरह से कहते हैं कि ना कभी कलीसियाओं का कोई एक संप्रदाय कहता है दिव्य चंगाई सही नहीं थी, ना ही कभी किसी को दिव्य चंगाई का दान दिया गया था, लेकिन संत पौलुस या प्रेरित वे 12 जो ऊपरी कोठरी में थे, उन्हें दिव्य चंगाई का दान दिया गया था, और बस इतना ही, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप देखते हैं इस अद्भुत चार्ट या चित्र के माध्यम से, जिसे भाई बिल्ली ने यहाँ पर हमारे लिए इतने बेहतरीन ढंग से ऊपर लगाया है, वह छोटी सी डोर जो पूरी तरह कलीसियाओं में होते हुए आ रही है। मैं सोचता हूँ कि वही संप्रदाय कलीसिया के इतिहास के बारे में, आयरिनियस के बारे में, संत मार्टिन के बारे में क्या कहता है, और वे सारे शहीद जो प्रेरितों की मृत्यु के बाद सैकड़ों वर्षों तक उस युगों में से होते हुए आए, अन्य भाषा में बोले और बीमारों को चंगा किया और मरे हुओं को जिलाया और सारी कलीसिया में अद्भुत कार्य किया करते थे। सोचो उनके बारे में क्या, यदि यह केवल प्रेरितों के लिए ही था। देखा कि यह कितना सकड़ा है, उनके पास आत्मिक समझ नहीं है। ऐसा ही है, देखना अंधे हैं और पाप और अपराध में मरे हुए। पाप का अर्थ है अविश्वास, हर चीज में अविश्वास पाप है। यदि एक व्यक्ति को एक उपाधि मिलती है, इतनी लंबी DD दुगना L, PhD LLD की उपाधि, और कहता है दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज ही नहीं है या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जैसी कोई चीज नहीं है, तो वह पाप में मरा हुआ मनुष्य है। वो बाइबल में सभी प्रकार के रहस्यों की व्याख्या करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसका वही जीवन उसकी गवाही साबित करता है कि वो मरा हुआ है। वो पाप और अपराध में मरा हुआ है, क्योंकि वो एक पापी है। पाप अविश्वास है। किसी को भी चाहिए पाप ये व्यभिचार करना और सिगरेट पीना और नाचना और ऐसे ही करते जाना, ये नहीं होता है, यह पाप नहीं है, यह तो अविश्वास के गुण है। लेकिन एक विश्वासी, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कोई मनुष्य शराब नहीं पीता, धूम्रपान नहीं करता, इन कामों को न करे, कभी एक बुरा शब्द भी नहीं बोलता हो, सारे 10 आज्ञाओं का पालन करता हो, वो फिर भी एक काला पापी हो सकता है। देखो, उतना ही दूषित जितना वो हो सकता है। यदि वह परमेश्वर की सामर्थ्य के किसी भी चीज से इनकार करता है तो वो एक पापी है। पाप शब्द अविश्वास है। अब आप बस देखें ये सही है या नहीं। परमेश्वर के वचन में एक अविश्वासी वो एक पापी है और स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ओहो, मैंने तब आज सुबह सोचा, प्रभु की इच्छा के द्वारा इसे अपने ऊपर लेते हुए पवित्र आत्मा की आज्ञा से कि फिर से भवन में आऊं, और हो सकता है कि आप सभी को 2 या 3 घंटे तक रोके रखूं, लेकिन मैं जाने से पहले प्रकाशित वाक्य के 4th अध्याय की किताब को समाप्त करना चाहता हूं, और अब मैं आशा करता हूं कि यह आपको नहीं थकाएगा, और मैं आशा करता हूं कि यह आपके लिए महिमा है। मैं आशा करता हूं कि यह कुछ ऐसा है जो आपके लिए भला करेगा और आने वाले दिनों में आपकी सहायता करेगा। और अब हो सकता है मैंने बिली को आज सुबह यहाँ आकर और प्रार्थना कार्ड को देने को कहा यदि हमारे बीच में कोई अजनबी है, क्योंकि हम जा रहे हैं और अब और मैं नहीं जानता कि हम कब वापस आएंगे। यह तो परमेश्वर ही जानता है। और मैं चाहता था, सोचा हो सकता है अंतिम सभा हो यदि, और जब उसने मुझे फोन किया तो लगभग 9 बजे और कहा, डैडी वहाँ कुछ लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना की जानी है। मैंने उनसे पूछा है, लेकिन कहा ये वे लोग हैं जो वे लोग हैं जो हर समय कलीसिया में आते हैं। मैंने कहा फिर कोई प्रार्थना कार्ड को नहीं देना। देखो, मैंने कहा क्योंकि वो लोग, यदि आज सुबह हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम लोगों को बुलाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैंने कहा यदि यह वे लोग हैं जो आराधनालय में आते हैं जिन्हें हम जानते हैं, नहीं, मैं कुछ अपरिचित लोगों को चाहता हूँ। और उसने कहा वह कुछ मिनट पहले वहाँ से बाहर आया था, जब वो वहाँ खड़े होकर मुझसे मिला था, कहा तो ठीक है, मैंने कुछ प्रार्थना कार्ड दिए हैं। कहा वहाँ बस कुछ ही मैंने प्रार्थना कार्ड को दिए हैं। कहा आप जो चाहे कर सकते हैं। मैंने कहा तो ठीक है, हम देखेंगे कि संदेश कैसे आगे बढ़ता है, देखेंगे कि हम कहाँ हैं और फिर हम आगे जाएंगे। उसने बोला निसंदेह बहुत से लोग प्रार्थना कार्ड को चाहते थे, लेकिन कहा वह वे लोग थे जो कलीसिया में हैं। देखा, ठीक है, हम जानते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है और ओह बस वही चीजें वो करता है। क्यों हर समय अलग अलग बातों के लोगों का ये फोन बजता रहता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए, और किस तरह से परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं सोचता हूँ कि क्या वह छोटी महिला या उसका पति यहाँ है जो न्यू अल्बानी से है, जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को लाया था जिस बच्चे का निमोनिया के कारण दम घुटा हुआ था, उस रात लगभग 12-1 बजे मेरे घर में आए थे, वहाँ है। तो ठीक है, बालक कैसा है? ठीक है, अच्छी बात है, तो ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कि यह कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं जानते होंगे। यह आगे नहीं बढ़ता है जब पवित्र आत्मा बोलता है। फ्रेड सॉथमैन, हमारे बहुमूल्य भाई फ्रेड, मैंने उन्हें आमीन कहते सुना कुछ समय पहले, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाया। वो कहाँ पर है? क्या वो यहाँ पर है? यहाँ, ठीक यहाँ पर है भाई फ्रेड सॉथमैन। और ये दिखाने के लिए कि ये कितना साधारण है, उनके कुछ मित्र आ रहे थे, मैं मानता हूँ कि भाई वेल्श इवांस थे, मैं नहीं जानता। उनके पास वहाँ एक खींची जाने वाली गाड़ी थी, उन्होंने उसके द्वार को बंद कर दिया था और फ्रेड ने चाबी को खो दिया था और हर कहीं ढूंढ रहे थे और उन्हें कहीं भी नहीं मिली। और भाई वेल्श सीधे ऊपर आ रहे थे, तो वो दिन आया कि वह पहुँचने वाले थे और इत्यादि, उन्हें कहीं भी चाबी नहीं मिली। तो तब उसने घर पर फोन किया, कहा भाई ब्रैनम चाबी कहाँ पर है, हमें वो कहाँ मिलेगी? अब इससे आप में कुछ लोग चकरा सकते हैं, एक मनुष्य के लिए जो इस तरह का सवाल पूछता है। लेकिन एक मिनट रुकना, याद है कि ईशे के पुत्र खच्चरों को ढूंढ रहे थे, इसलिए यदि मेरे हाथ में दान होता था तो मैं उसे वहाँ ले जाकर और दिखाता, मांगता इसे भविष्यवक्ता को दे दो, और हो सकता है वह हमें बताता कि वे खच्चर कहाँ पर थे, यह याद है? और जब वह रास्ते पर चल रहा था तब वे भविष्यवक्ता से मिले, उसने बोला तुम उन खच्चरों को ढूंढ रहे हो? कहा वहाँ तुम घर वापस जाओ। कहा वे पहले ही वापस लौट चुके हैं, क्या यह सही है? मैंने प्रार्थना की, फ्रेड वहाँ पर चला गया और चाबियों को उठाया, ऐसा ही है। देखा भाई एड डाल्टन, आप कहाँ पर हैं? एड डाल्टन कहाँ है? मैं जानता हूँ कि वो यहीं कहीं पर हैं, मैंने उन्हें कुछ समय पहले देखा था। ओह पीछे, वो वहाँ है, उसने मुझे अतः संचार सार्वजनिक स्पीकर के माध्यम से सुना। एक रात को एक फोन आया और भाई एड गंभीर परेशानी में थे, मैं उनकी सहायता करना चाहता था। नहीं, उन्होंने कहा मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से मांगे। मैंने प्रभु से उसकी सहायता करने के लिए मांगा और अगले दिन उसकी पत्नी ने फोन किया, कोई तो उसके बचाव के लिए आ गया। तो ठीक है, क्या ये सही है भाई एड? देखो वह न्यायी परमेश्वर है, ऐसा ही है, वह न्यायी परमेश्वर है। देखो वो बस यह हर समय न्यायी रहता है, हमेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी परेशानी है, वह परमेश्वर है। हम यहाँ वहाँ जाकर उन चीजों के बारे में बड़ाई करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस दाहिने हाथ को, मेरा मतलब बाएं हाथ को, यह न जानने दें कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। हम आपस में इस पर बात करते हैं, लेकिन हम इसे कहीं बाहर जाकर चिल्ला के नहीं बताते हैं, क्योंकि यह स्वयं पर घमंड करना है, जैसे परमेश्वर केवल ऐसा एक व्यक्ति के लिए कर सकता है, वह इसे किसी के लिए भी करेगा जो उस पर विश्वास करेगा। यह भरोसा है, विश्वास। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके विचार हैं, उसे परमेश्वर के पास ले जाएं। वो हर एक चीज को प्रदान करता है, क्या यह सही नहीं है? तो वह प्रार्थना का उत्तर देता है, वह एक परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला पिता है। अब सो इसलिए मैंने सोचा इस अंतिम सभाओं और इत्यादि में बंद करते हुए, जैसा कि हम जब हम कर रहे हैं सभा के अंतिम समय में, हो सकता है हमारे पास कुछ लोगों के हृदय को परखना हो, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो, और हो सकता है सभा के समय के दौरान हो, हम बस नहीं जानते कि वह क्या करने जा रहा है। मैं इसे उस तरह से चाहता हूँ, किसी बात को तय न करें, बस उसे ही करने दे जैसा वो करना चाहता है। अब प्रकाशित वाक्य की किताब के चौथे अध्याय को लेंगे और घड़ी को रोक दें।
Yes, brother.
जी हाँ भाई, निश्चित रूप से मैं यह विश्वास करता हूँ, पूरी तरह से यह विश्वास करता हूँ। यहाँ भाई वेज इवांस हैं, मैं सोचता हूँ कि वह वहाँ ठीक पीछे बैठे हुए हैं मुझे, जबकि हम प्रकाशित वाक्य चार की ओर जाते हैं। यहाँ अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, आप सभी ने अखबारों में लुइस विले के इस गिरोह के बारे में सुना और पढ़ा होगा, जो इन कारों को चुराता है, और वे तुरंत ही उन्हें केंटकी में कहीं तो ले जाते हैं। और केंटकी में आपके पास यहाँ तक एक अधिकार पत्र भी नहीं होगा, वे आपको केंटकी में एक अधिकार पत्र बनाकर दे देंगे। तो आप बस केवल एक चीज जो आपको करना है कि इसे वहाँ ले जाकर और इसे बेच दें। तो वे इन कारों को ले लेंगे और उन्हें चलाकर और उन्हें फिर से रंग देंगे और इन कारों को बाहर लाकर और उन्हें बेच देंगे। आपके पास बस आपके ब्लॉक का नंबर होना चाहिए और वे आपको अधिकार पत्र बना कर देंगे। तो वे बस सड़क पर से कार को उठा लेते हैं और उसे तुरंत ही उसे ले जाकर और उसे कहीं तो किसी दुकान में लेकर जाते हैं, बस इसके सारे चीजों को पूरी तरह से बदल देते हैं, देखो, और इस पर फिर से रंग लगाते हैं और इत्यादि, इसे बाहर ले जाकर और इसे बेच देते हैं। इसका एक अवैध धंधा है, और विशेष रूप से पूरे संयुक्त राज्य में, और ये केंटकी में एक बड़ा बड़ा काम है। मैंने इसके बारे में कुछ समय पहले यहाँ अखबार में एक लेख पढ़ा था। तो ठीक है, बड़े अच्छे हृदय के बहुमूल्य भाई इवांस और उनका परिवार मैकॉन जॉर्जिया इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आते हैं, यहाँ हर रविवार को सुसमाचार को सुनने के लिए आते हैं। ओह, वे कितने निष्ठावान, क्या ही सच्चे मित्र। फिर वह मिलर के जलपान घर में जाते हैं, जहाँ मैं मिलर जलपान घर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि उन्हें वहाँ केंटकी में सबसे अच्छा खाना लगता है, जो कुछ भी हो लुइस मैंने केंटकी में, जहाँ तक मेरा मतलब आपके निजी घरों से नहीं है जो मैंने वहाँ खाया है, अब मेरा मतलब आप जानते हैं बाहर से है, और मैं भी वहीं पर खाता हूँ। मैं अपने परिवार को घर पर खिलाने की तुलना में वहाँ पर सस्ता खाना खिला सकता हूँ, यह सही बात है। तो फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ, और वैसे ही भाई इवांस वो वहाँ पर जाते हैं, और वो अपने खाने के लिए कुछ तो लेने गए और अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ा किया। जब वो बाहर आए उनके सारे कपड़ों के साथ और परिवार, और वे सारे, उसके पास न तो कार थी और न ही कोई भी चीज वहाँ पर थी, यह सब चला गया था। तो बेचारे इवांस हम सब की तरह एक मनुष्य ही हैं, उसका वहाँ एक छोटा सा व्यवसाय है, वे कारों का काम करते हैं, वे टूटी फूटी खरीदते हैं और उन्हें दुरुस्त करते हैं। वो एक गरीब व्यक्ति है और अपना पैसा यहाँ आने के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उनके लिए वहाँ एक संदेश वाहक भेज दे, जिससे कि उस देश में उनकी सहायता कर सके। अब भाई इवांस वहाँ आए, सो वो नहीं जानते कि वे क्या करें। उन्होंने पुलिस को सूचित किया था और वे इसे नहीं ढूंढ पाए। तो वो घर पर आए, वो और भाई फ्रेड, और वे लोग हम कमरे में बैठ गए और इसके बारे में बात की। मैंने कहा, अब हम इसी तरह से करते हैं, हम कमरे में बैठते हैं, देखते हैं कि क्या बात जगह लेती है, और फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो जब हमने प्रभु से मांगा, जिस व्यक्ति के पास कार थी उसे फेर दीजिए, उसे वापस मोड़ दीजिए और उसे वापस भेज दीजिए, जहां वह कहीं पर भी हो। अक्सर वे उन्हें बॉर्लिंग ग्रीन के आसपास या कहीं और नीचे चलाकर ले जाते हैं, उन्हें यहां के संवेदनशील जगह से बाहर निकालते हैं, आप देखिए, जिससे वे कर सके, जब तक वे उन्हें फिर से रंग नहीं लगा देते और तैयार नहीं कर लेते। यह एक अच्छी कार थी, मुझे लगता है कि वो कार स्टेशन वैगन थी, क्या यह सही है भाई इवांस? वह एक स्टेशन वैगन कार थी, इसलिए और तो क्या हुआ, हम नीचे बैठे और प्रार्थना की और प्रभु ने हमें इस गवाही को दिया, सब कुछ ठीक है, हर एक चीज सही है। सो तब प्रभु की सामर्थ हमारे साथ आ गई। भाई इवांस बाहर निकलकर और उन्होंने चलना आरंभ किया। उन्हें किसी एक रास्ते की ओर जाने की अगुवाई होने लगी। वो यहीं जेफरसन विले में वापस आ गए। उनकी कार लुइस विले में चोरी हो गई थी। यहाँ उनकी कार खड़ी हुई है और उसे चलाकर ले जाने के लिए उसमें पर्याप्त पेट्रोल था। ओह, इसमें से वे चोरी करने वाले इसे लगभग कुछ दूर बॉर्लिंग ग्रीन की ओर लेकर गए और वापस ले आए। उन्होंने कार को रोका और कार से उतरे, चाबी उसी में छोड़ दी, बस चले गए और उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया, ठीक यहीं जेफरसन विले में जहां वह इसे मिल सकी, ना ही लुइस विले में, यहां जेफरसन विले में इसे इतनी दूर से वापस ले आए। आप जानते हैं, परमेश्वर पक्षियों को अपनी आज्ञा को मानने को लगा सकता है, वे मनुष्य को अपनी आज्ञा को मानने को लगा सकता है, वो अपने शत्रुओं को अपनी आज्ञा को मानने को लगा सकता है। वो जी हाँ महोदय, वो परमेश्वर है। यहाँ उसकी कार खड़ी थी, एक भी चीज उसमें से गायब नहीं हुई, बस लगभग आधा टैंक पेट्रोल भरा हुआ, जहाँ वो लगभग बॉर्लिंग ग्रीन तक पहुँच गया था। और पवित्र आत्मा ने अवश्य कहा होगा, वापस मुड़ो, वहाँ वापस जाओ और उस कार को जेफरसन विले लेकर जाओ, इसे यहीं सड़क पर खड़ी करो और ठीक यहाँ पर खड़ी करो, क्योंकि मैं उसे इसे खोजने के लिए ठीक इस रास्ते की ओर और इस रास्ते से ऊपर की ओर भेजूंगा। क्या ये सही है भाई वेल्च? ये सही है। देखना, वो परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देता है भाई रॉय। वो बस यही है भाई स्लॉटर, यह बस वही बात है जैसे उसने आपके छोटे से कुत्ते को चंगा किया, और मैं जानता हूँ कि वह चंगा करता है, वह प्रार्थना का उत्तर देता है, वह अब भी अद्भुत कार्यों को करता है, वह अब भी परमेश्वर है, वह हमेशा परमेश्वर था, वह हमेशा परमेश्वर रहेगा। वो परमेश्वर जो छत पर है, ये क्या है जो भाई यहाँ कलीसिया में गाते हैं? परमेश्वर रसोई घर में है, परमेश्वर बाहर खेत में है, परमेश्वर मोटर वाहन में है, वह परमेश्वर है जो हर जगह है, वह पूरी पूरी तरह हर एक पहलू से परमेश्वर है। ओह, कितना अद्भुत! हम कुछ समय बाद प्रचार करेंगे और इस विषय में कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो ठीक है, आइए प्रार्थना के लिए कुछ क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र वचन से अधिक प्रेम करते हैं, इतना तक कि हमारा हृदय हमारे भीतर जलने लगता है जब हम जानते हैं कि आपका आत्मा हमारे बीच में उतरता है और वहाँ हमसे बातें करता है और हमारे हृदय आगे बढ़कर और इसे ग्रहण करते हैं, और बस ऐसा लगता है कि हम इस पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं प्रभु। और इस अंधकार के समय में यह जानना, जहाँ इतनी अधिक गड़बड़ी या उलझन है, जैसे कि नबी ने कहा अंतिम दिनों में अकाल पड़ेगा, कुछ तो इस प्रकार से, न ही रोटी और पानी के लिए, लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनने के लिए, और मनुष्य पूरब से पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर यात्रा करेगा परमेश्वर के सच्चे वचन की खोज करते हुए। वचन, वचन क्या है? यीशु वो वचन है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया, परमेश्वर के सच्चे वचन के प्रकटीकरण को देखने के लिए, जो वचन के अनुसार प्रकट बना और इसे पूरा किया गया कि किस तरह से लोग यात्रा करेंगे और खोजेंगे और इसे खोजने में असफल हो जाएंगे। हे परमेश्वर, हम बहुत ही खुश हैं, इतने खुश कि हमने उसे वर्षों पहले पा लिया, हमारे हृदय के लिए अनमोल है, और इसे देखते हुए कि हम जरा भी उलझे हुए या गड़बड़ी में नहीं है। हे परमेश्वर, आपने कहा वे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे उस दिन में अद्भुत कार्य करेंगे, और यहाँ हम अंत के दिनों में हैं, इन सब बातों को देख रहे हैं, जो यीशु ने कहा वे बातें पूरी होंगी, जो ठीक हमारे बीच प्रकट हुई है, वही चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य किए गए, ठीक उसी तरह इसे करते हुए जैसे उसने किया था, जैसे उसने कहा, जैसा सदोम के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर भी होगा। और प्रभु, आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन तक पहुंचने और उन सच्ची चीजों को प्राप्त करने दिया, और उन्हें वचन के द्वारा कलवरी में जोड़ दिया और देखने दिया कि उसमें हमारी परिपूर्णता है, और बहुतायत और आशीषें और महिमा और सब कुछ उसी को मिले जो योग्य है, जिसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था किताब को ले लिया और उस पर स्वयं बैठ गया, क्योंकि वह जगत की बुनियाद डालने से लेकर घात किया गया है। हम आज सुबह उसके बारे में बात करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को आशीष दें, उसकी आत्मा हमारे बीच मंडराए और हमें आशीष दे और हमारे अनुभव को अधिक बढ़ाए और हमारे बीच में बीमारों को चंगा करे और हम पर जय पाने का अनुग्रह दीजिए। और परमेश्वर, जब मैं विरोधी का सामना करने के लिए कार्य क्षेत्र में बाहर जाऊं, होने पाए तो मैं महसूस करूं कि मैं हर घड़ी प्रार्थना से घिरा हुआ हूं। ओ, मैं किस तरह से उस घेरे पर निर्भर हूं। शत्रु आता है, लेकिन जानता हूं कि वो घेरा रोके रखता है, क्योंकि माता और पिता और लड़के और लड़कियां, मसीही लोग, अनुभव के साथ फिर से जन्मे हुए, स्वर्ग से बंधे हुए लोग अपने घुटनों पर प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, छुटकारा देना। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शत्रु की रेखा में आगे बढ़ने देना और हर एक उस कीमती प्राण पर विजय को प्राप्त करें जो प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा करें प्रभु, और उन्हें अंधकार में से उजाले में ले आए, क्योंकि हम यह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रकाशित वाक्य की किताब के चौथे अध्याय में हमने तीसरे अध्याय को समाप्त कर दिया है और हम एक तरह से आदर पूर्वक रहें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत लंबे समय तक नहीं रोके रखूं। लेकिन इस तीसरे अध्याय में कलीसिया एक नमूने के रूप में ऊपर चली जाती है। जब यूहन्ना को ऊपर उठा लिया गया, कलीसिया ऊपर चली जाती है और उस समय से लेकर ये इसराइल के साथ व्यवहार कर रहा है उसके फिर से आने तक। क्या आप नहीं देखते कि ये किस तरह से है? आज लोग वे किस तरह से कहते हैं, कोई तो बड़ी बात पूरी दुनिया को और हर एक चीज को हिलाने जा रही है। ये वचन के अनुसार नहीं है, नहीं श्रीमान। क्रम के अनुसार अगली चीज कलीसिया का जाना है। कलीसिया के युगों में पढ़ें। आप देखते हैं क्या? अब यह अन्य बातें जो जगह लेनी है, विवाह के समारोह के समय के दौरान जब कलीसिया महिमा में होती है, परमेश्वर महान अद्भुत कार्यों के साथ वापस लौटता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय चमत्कार और चीजों को प्रदर्शित करे यहूदियों के द्वारा। कलीसिया में बिल्कुल भी नहीं जाता। तीसरे अध्याय पर कलीसिया युग समाप्त होता है, यह सही बात है। और कलीसिया युग ऐसे छोटे से अल्पसंख्यक लोगों के साथ चला जाता है कि हम पाते हैं। अब यहाँ सुनना, मैंने आज सुबह इसे फिर से पढ़ा, इसने मुझे लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो स्थान और कलीसिया युग के अंत में मसीह की स्थिति जो प्रकाशित वाक्य 3 के 20वें पद से लेकर 22वें पद तक पाया जाता है, इसके बारे में सोचे। मसीह अंत में वो कहाँ पर है? कलीसिया युग के अंत में वो कहाँ पर है? उसकी कलीसिया के बाहर है, संप्रदायों और मत सिद्धांतों के द्वारा बाहर निकाला गया। उसकी स्थिति क्या है? वो वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, यह एक दयनीय स्थिति है। तब हम यहाँ पाते हैं, इन बातों के बाद उसने एक आवाज सुनी जो उससे बात कर रही थी कि ओह, ये क्या था? आत्मा धरती पर से चला गया। इन बातों के बाद पहला अध्याय बताता है, मतलब पहला पद, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। प्रकाशित वाक्य 4:1, कलीसिया के चले जाने के बाद फिर एक द्वार खुला हुआ था और हम उस सब बातों में से होकर गए हैं और पाया कि वह मसीह था, वो द्वार था। और वही आवाज जो सोने की 7 दीवटों के बीच में चल रही थी, यह वही आवाज भी थी जिसे उसने स्वर्ग में यह कहते हुए सुना था, यहाँ ऊपर आ, यूहन्ना ऊपर चला गया। यह रैप्चर में जाने वाली कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। यूहन्ना आत्मा में ऊपर गया, स्वर्ग में उठा लिया गया और उन सारी चीजों को पहले से देख लिया कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और चेलों से कहा, यदि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुम्हें इससे क्या? उसने प्रभु के आगमन को देखा और क्या बात जगह लेगी? उसने धरती पर देखा कि कलीसिया के रैप्चर के लिए धरती पर क्या बात जगह लेगी और ऊपर उठाया गया और ठीक आगे यहाँ तक बीतने वाली 6 शताब्दी को भी दिखाया। ओह, क्या यह अद्भुत नहीं है? अब हमने उसे पिछले रविवार को 4 अध्याय और 4 पद पर छोड़ा था और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे और उस आसनों पर मैंने 24 प्राचीनों को श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे देखा और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे। अब हम पाते हैं कि ये प्राचीन थे। एक प्राचीन को कभी भी किसी दूत या किसी भी जीव पर लागू नहीं किया जाता है। यह एक छुड़ाई हुई मनुष्य जाति है। वे प्राचीन, क्योंकि वे दूतों के लिए सिंहासन, मुकुट और अधिकार का उल्लेख कभी भी नहीं किया जाता है, लेकिन मुकुट और सिंहासन और इत्यादि मनुष्य जाति से संबंध रखते हैं, और इन प्राचीनों को मुकुट पहनाया गया और उन्हें वस्त्र पहनाया गया और सिंहासन पर बैठाया गया, और हमने उन्हें वचन के अन्य भागों में पाते हैं कि वे 12 प्रेरित थे और 12 कुलपिता थे, उनमें से 20 और 4 जिसका अर्थ है 24, 12 प्रेरित, 12 कुलपिता। और हमने पाया यहाँ तक कि वो नगर भी जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरता है, धरती के नष्ट होने के बाद और सब टुकड़े टुकड़े हो गया, और धरती पर ज्वालामुखी की राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा, बस इतना ही बचा रह जाएगा। अब कोई और समुन्दर नहीं रहेगा, समुन्दर सूख जाएगा। जैसे मैं पिछली रात किसी से बात कर रहा था या कल कहीं, तो पृथ्वी एक बार इस तरह खड़ी हो गई, तो ठीक है, सूर्य के चारों ओर ऊपर और नीचे समान गर्मी है। वहाँ ब्रिटिश बर्फ के मैदानों में आप वहाँ 500 फीट नीचे विस्फोट कर सकते हैं और खजूर को देख सकते हैं। ये अचानक आकर उन्हें अब रेफ्रिजरेटर की तरह जमा देता है, जैसे आपके पानी का सूखना और इत्यादि होता है, और आपका फ्रिज और गहराई तक जमाता है, जो स्ट्रॉबेरी को बनाए रखता है और चीजों को आने वाले वर्षों और वर्षों और वर्षों तक, समझे। इसी तरह से ये उस समय भी था। शीघ्र ही एक प्रलय पूर्व विनाश आता है और सारी धरती के ऊपर बाढ़ आ जाती है, और जब ऐसा हुआ तो परमाणु शक्तियों ने उसे उसके कार्य क्षेत्र से हिला दिया, और ये पूरा जम गया और वह वहाँ पड़ा रहा। देखा, नीचे खुदाई करें और आप उन्हें अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों और इत्यादि के चारों ओर ताड़ के पेड़ और इत्यादि को पा सकते हैं। दिखाता है कि यह एक समय सुंदर रूप से बसा हुआ था, स्थापित था, लेकिन अब ये वापस हिल गया है। अब जहाँ मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के पास वो पानी था, जब उत्पत्ति आरंभ होती है, उत्पत्ति एक पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, और पानी गहराई पर था। परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडराया और कहा, वहाँ उजियाला होने दो। पृथ्वी ने भूमि और जल को अलग किया, जिससे पृथ्वी बनी, लेकिन पूरी पृथ्वी ढकी हुई थी। अब उसने क्या किया, उसने बस वातावरण में से होते हुए, वो बस वातावरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इत्यादि से भरा हुआ है, तब उसने उसे धरती पर से उठाकर अलग कर दिया। तब धरती पर समुन्दर नहीं था। परमेश्वर ने धरती को पानी दिया, यहाँ तक बारिश भी नहीं हुई थी, उसने इसे झरनों और इत्यादि की सिंचाई के माध्यम से पानी दिया। फिर जब वो केवल एक चीज जो उसने तब की, जब मनुष्य ने इसे अपनी कक्षा या क्षेत्र से बाहर एक तरफ उड़ा दिया, तो क्या घटित हुआ, इसने इसे वापस या नीचे गर्मी और वहाँ ऊपर ठंड को फेंक दिया, और गर्म और ठंडा क्या मिश्रण है, इसे अभी यहाँ उन खिड़कियों पर महसूस करे, यहाँ अंदर गर्म और बाहर ठंडा, पसीने को देखा और बारिश और कुछ नहीं है, लेकिन पसीना पसीने आने की प्रक्रिया है, और पानी राख है, और इसलिए जब यह, मुझे वो गीत पसंद है, आपने अपने हाथ को रखा बहुमूल्य प्रभु घास के बड़े मैदानों पर, अपने अद्भुत हाथ को सीमा पर रखा प्रभु, आपने झरने को ढेल दिया, पहाड़ को ऊपर उठाया, हे प्रभु अपने बहुमूल्य हाथ को मुझ पर रख, आपने बादल बनाए, बादल को तैयार किया जिनसे वर्षा हुई, वर्षा से समुन्दर बना, समुन्दर से बादल आ गए, जिससे कि हमें बहुतायत सा जीवन दे, आप पृथ्वी और आकाश को अपनी आज्ञा से थामे रखते हैं प्रभु, ओ कृपा अपना बहुमूल्य हाथ मुझ पर रखें, ओ कितना महान, जी हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर। फिर इस महान समय में यह अब इस तरह वापस झुक रहा है, और उसने हमसे एक प्रतिज्ञा की है, अब कोई पानी नहीं, लेकिन इस बार आग, बजाय इसे दूर करने के, उन्होंने पृथ्वी को सूरज से दूर कर दिया, अवश्य ही ये ठंडी हो गई। यदि आप इसे सूर्य में फेंकते हैं, तो ये जल जाएगी, और जैसे उसने जल से नाश किया और मेघ धनुष को आकाश में रखा, वो अब और ऐसा नहीं करेगा। अब वो एक प्रतिज्ञा को देता है, जिसे वो करेगा, इसे जला दो, तो वहाँ आप आते हो जहाँ पाप और सारी चमक दमक और सारी गंदगी और ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं घास के मैदान से होकर नीचे उतर रहा था, एक छोटे लड़के की नाई। मैं अक्सर सोचता था, अपनी इतिहास की और भूगोल की किताबों को लेता और बड़े पश्चिमी घाटियों के बारे में सोचता। किसी दिन मैंने कहा, मैं वहाँ शांति पूर्वक और चुपचाप से रहूँगा जहाँ कोई पाप नहीं है, और मैं खेतों में यहाँ वहाँ घूमूंगा और इंडियन की तरह शिकार करूंगा, और मैं वहाँ अपने जीवन के हर एक दिन एक शांति पूर्व जीवन को जीऊंगा। लेकिन अब यह श्वेत मनुष्य वहाँ गया है। जहाँ श्वेत मनुष्य जाते हैं, पाप उसके साथ होता है। वह धरती पर सभी लोगों में सबसे बड़ा हत्यारा और घात करने वाला है, वो है एक श्वेत मनुष्य। वह सभी रंगों में से विश्वासघाती है। यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, अखबार में भाई थॉम यहाँ अफ्रीका से हैं। मैंने दो हफ्ते पहले अखबार के एक लेख में देखा था, मैं सोचता हूँ कि यह था, और उन्होंने कहा यदि अमेरिका के लोगों को अभी भी अफ्रीका जाने की अनुमति मिलती है, अब से 10 वर्षों में वो बड़ा अफ्रीकी शेर हाथी पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। विश्वासघाती कहीं भी गोली को चला सकते हैं। उनमें एक घायल नर को पकड़ने की कोशिश कर रहे दो बड़े पुरुषों की तस्वीर थी। ऐसा दिख रहा था जैसे उनकी आंखों से आंसू बह रहे हों। वे नहीं चाहते, नर नहीं चाहते थे कि मादा मर जाए, और हर एक उस मादा को इस प्रकार से उसके किनारे को पकड़े हुए था कि उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए जमीन पर उसे बस गोली से टुकड़े कर दिया। एक मनुष्य जो इस तरह से किसी को भी गोली मारता है, उसके हाथ में बंदूक रखने के योग्य नहीं है। यह सही बात है, आपके पास इसे संभालने के लिए पर्याप्त सहज बुद्धि नहीं है। अब कुछ वर्ष पहले मेरे अच्छे मित्र भाई रॉयल रॉबर्टसन के पास बारासिंगा के कुछ झुंडों को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, और वे वहाँ वापस आ गए जब मैं कोलोराडो में लेकर जा रहा था। जानता था कि हमारे पास एक अच्छा झुंड था, जेफ और मैंने उन्हें वर्षों तक वहाँ रखा था। झुंड में लगभग 80 बारासिंगा थे। उन्होंने इन कार्यालय के कुछ लोगों को डेनवर से वहाँ बाहर आने दिया, जो इन घुटने तक पैंट पहने हुए और आधे पैरों में लेस लगे हुए वे शिकारी थे। यहाँ पर वे ऊपर आते हैं, एक झुंड इस तरह से जीपों और इत्यादि में हमारे क्षेत्र में वापस आ पहुँचे, और मैं इन 12 सिंगों को लेकर जा रहा था पहाड़ के उस ओर उनके पीछे लगभग 1 या 2 मील, और वे साथ साथ झुंड में चल रहे थे। आपको उन्हें बारीकी से रखना होगा, बड़े पुराने बैल और इत्यादि, यदि आप नहीं करते हैं तो आप अपने झुंड को तोड़ देते हैं। उन्हें बस गाय पशुओं या किसी को भी पालने पोसने की तरह है। वन्य जीवन हमारे लिए समान होना चाहिए, ये एक लक्ष्य नहीं है। यदि आप लक्ष्य को गोली मारना चाहते हैं, उन्हें उन पर गोली चलाने के लिए यहाँ से बंदूक चलाने की दूरी मिल गई थी। यह सही बात है, इस तरह की चीजों को हत्या करना शर्मनाक बात है, यह पाप से भरा है, यह अधर्म है। और मैंने मशीन गनों में से निकली 123 गोलियों को गिना, जैसे जिसे उनके कंधों से गोली को चलाया गया था। और अगली सुबह भाई बैक्सवुड यहाँ मेरे साथ थे, हम पहाड़ पर चढ़कर गए। मैंने गिनती की, 19 लहूलुहान बिछे हुए पड़े हुए थे। वे शिकार के बारे में कुछ नहीं जानते। आप इस तरह के एक बड़े जानवर को गोली मार सकते हैं, आप उसे मारने के लिए काफी गहरा प्रहार कर सकते हैं, और वे बस छोड़ देते हैं, बैंग बैंग बैंग, एक को गोली मारते हैं, फिर दूसरे को मारते हैं, इसलिए वे मर जाएंगे। और क्या, उनमें तापमान चढ़ जाने के बाद यदि आप उन्हें पाएंगे कि वे ठीक नहीं हैं, वे तुरंत ही सड़ने लगते हैं, और मुर्दों को ढूंढने वाले भेड़िए और इत्यादि उन्हें खा लेते हैं। 19 लहूलुहान पड़े हुए बड़े बैल, जिनके खुर जो ऐसे बड़े बड़े हैं, और दो पांव से लहू निकल रहा है जहां पर इसे उन बंदूकों से इस प्रकार छेदा गया था। उन्हें इस तरह के विश्वासघाती लोगों को अपने हाथ में बंदूक रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, यह सही बात है। उनके पास बंदूक संभालने की सहज बुद्धि नहीं है। ओह, इसे इस तरह से करना जबरदस्त पाप से भरा है, यह भयानक बात है। लेकिन यही अमेरिकी लोग हैं। कनाडा, आप कनाडा के बहुमूल्य लोग, यदि अमेरिका ऐसा ही करता रहा तो कनाडा कुछ समय बाद अमेरिकी की तरह अशिष्ट हो जाएगा। कनाडा की सीमाओं के आसपास कहीं भी जाएं और आपको वो अमेरिकी वातावरण मिलता है। यह अमेरिका राष्ट्रों की वेश्या है, बिल्कुल ठीक यही है वो, और वह अब पहले से भी और बदतर होने जा रहा है। वह अपने अंत में आ रहा है। बाइबल उसके विनाश के लिए बोलती है, ये बताती है कि वह किस तरह से होगा। अमेरिका अशिष्ट, सड़ा हुआ, गंदा, जिसमें कोई अच्छाई नहीं है, यह बिल्कुल सही है। वह एक बड़ा राष्ट्र रहा है। उसने सुसमाचार के संदेश को आगे लेकर आया था। जिस तरह से वो है उसे क्या बात ऐसा बनाता है, क्योंकि उसने सुसमाचार के संदेश से मुंह फेर लिया है और सच्चाइयों को ठुकरा दिया है। वो भयानक है, वो आ रहा है। चिंता मत करो, मैंने इसे दर्शन में देखा। यहोवा यो कहता है कि नहीं, ये आ रहा है, वह अपने पाप का भुगतान करेगा। जब अमेरिका अमेरिका था तब वह एक महान राष्ट्र था। इसराइल के बाद से दुनिया में अब तक सबसे बढ़कर अमेरिका को जाना गया था, लेकिन उसने निश्चित रूप से अब खुद को दूषित कर लिया है। उसने संदेश को अस्वीकार कर दिया है। उसने बस कुछ भी नहीं लिया सिवाय अब वह खुद को। आप देख सकते हैं कि वह अब कहां पर है। हर एक जन यह जानता है कि पिछला चुनाव दिखाता है कि उनकी आत्मिक स्थिति कहां पर है। वह नहीं जानता। अब ये प्राचीन लोग अपने मुकुट के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अब पांचवा पद हम आरंभ करने जा रहे हैं। और उस सिंहासन में से बिजलियां, गर्जनाएं, आवाजें निकलती हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। ओह, मुझे ये पसंद है। क्या आपको पसंद नहीं? ओह, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरा कोट मुझ पर फिट बैठता है। आप जानते हैं, मैं बस जब ओह, मेरा मतलब आत्मिक कोट से है, निश्चित रूप से। आप जानते हैं, तो ठीक है। सिंहासन में से आइए अब कुछ मिनटों के लिए इस सिंहासन के बारे में बात करें। यह दया का सिंहासन नहीं था। दया का सिंहासन समाप्त हो गया है। कोई और दया नहीं, यह बिना दया के है। हम किस तरह से जा रहे हैं? किस तरह से न्याय का आसन, मसीह का न्याय का आसन होने जा रहा है? न्याय का आसन, सफेद न्याय का सिंहासन। क्या तब वहाँ पर दया होगी? वहाँ पर कुछ भी दया को बढ़ाया नहीं जाएगा। न्याय के सिंहासन पर आप चिल्ला सकते हैं दया, तब आप अब और चिल्ला भी नहीं सकेंगे। और ऐसा है, आप बस वैसे ही हो सकते हैं, कहीं तो हवा में चिल्लाते रहें, क्योंकि अब और कोई दया नहीं है। अभी ये दया का दिन है। अब आइए हम यहाँ पुराने नियम में जरा सा पीछे जाएं और देखें कि दया क्या है। पीछे जाकर और देखें कि इस सिंहासन का क्या हुआ। यह सिंहासन निश्चित रूप से ये न्याय का आसन है। और आज दया होने का कारण ये है कि दया के आसन पर एक प्राश्चित्ता का छिड़काव किया जाता है, लहू का। और जब तक लहू न्याय के आसन पर है, तब तक यह न्याय नहीं होता है, यह दया होती है। क्योंकि न्याय को रोके रखने के लिए कोई तो मर गया। यदि आप इसे देखते हैं तो आमीन कहें। जब तक लहू दया के आसन पर होता है, दिखाता है कि न्याय को थामे रखने के लिए कोई तो मर गया। लेकिन जब कलीसिया का रैप्चर किया जाता है, तो दया का आसन न्याय का आसन बन जाता है। वहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ नए नियम में भी, और वो पवित्र स्थान यही है जहाँ वो न्यायी पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान के आसन पर न्यायी है। अब पवित्र स्थान का न्याय आसन धुएं से भर गया है। यह क्या था? जैसे कि सीने पर्वत। न्याय, दया ने उस परमेश्वर के सिंहासन को छोड़ दिया था। परमेश्वर बिना दया के संसार का न्याय करेगा, यह कितने लोग जानते हैं? उस दिन वो केवल एक ही चीज को पहचानेगा, वो क्या है? लहू। केवल यही एक चीज है जो क्रोधित परमेश्वर को शांत करती है। आदम और हवा ने बस उसी तरह का पैबंद बनाया जैसे कोई भी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल बना सकते हैं। इसने उनकी नग्नता को ढक दिया, लेकिन परमेश्वर इसके माध्यम से देख सकता था। सो उसने किसी चीज को मार डाला और उसकी मृत खाल को ले लिया, खाल मरे हुए जानवर की, और इसे ढक दिया। लहू को इसके स्थान को लेना था। इससे उसका क्रोध थम गया। उसने लहू को देखा और उससे पीछे हट गया, क्योंकि किसी ने उसके जीवन को बहाया था। हे परमेश्वर, इस पर सोचें। केवल एक चीज जो परमेश्वर को पीछे हटा देती है, वो है लहू। और केवल एक ही लहू है जिसमें वह वापस आएगा, और यह उसके अपने पुत्र का लहू है। जब वो देखता है कि यह उसके अपने पुत्र का लहू है, तो वो वापस पीछे हट जाएगा, क्योंकि यही वो उपहार है जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को उन्हें छुड़ाने के लिए दिया है, जिन्हें वो पहले से जानता था। और यह परमेश्वर को उसके न्याय से वापस लाता है। लेकिन जब वह लहू को हटा दिया जाता है और वो हर एक जन जिसे पहले से जानता था उसे बहुमूल्य शरीर के अंदर बुलाया जाता है, उसकी कलीसिया बनकर तैयार हो जाती है और ऊपर उठाई जाती है, तब लोगों पर परमेश्वर का कोप आता है। ओह भाई, मैं वहाँ कभी भी खड़ा नहीं होना चाहता, मुझे मशीन गन के सामने खड़ा होने दो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे इंच दर इंच आड़े से काटने दो, कुछ भी होने दो, जैसे कोलंबस के शूरवीरों ने शपथ ली, उन्हें मेरे पेट को फाड़ने दो और गंधक और हर एक चीज को मुझ में जलने दो और मेरे हाथ और पैर काट दिए जाएं, ये कुछ भी हो, लेकिन मुझे कभी भी उस सफेद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होने दो। ओह, मैं यहाँ इस छोटे से सिंहासन को लूं, मसीह के आसन के सामने और उसके लहू को स्वीकार करूं। मेरे अपने हाथों में कुछ भी नहीं जो मैं लाऊं प्रभु, मैं कोई और सोता नहीं जानता, कुछ भी नहीं सिवाय यीशु के लहू के, यही है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, यही मेरी आशा और सहारा है, कुछ भी नहीं सिवाय यीशु के लहू के, कोई आश्चर्य नहीं। एडी पेरोनेट, उसके गीतों से मुंह मोड़ लिया गया जब वो एक मसीही था, एक कट्टर मसीही, वे इसके गीतों को नहीं खरीदना चाहते थे। एक दिन उसने कहा, मैं एक गीत लिखूंगा और किसी दिन वे स्वीकार करेंगे, और लोग धार्मिक गीतों में कुछ और अधिक आधुनिक ढंग को चाहते हैं। एक दिन वहाँ पवित्र आत्मा ने नियंत्रण लिया और उसने कलम को लिया और उसने लिखा, पूर्ण रूप से यीशु के नाम की सामर्थ्य की जय हो, वे दूत गिरकर दंडवत करें, शाही मुकुट को सामने लाओ और उस प्रभुओं के प्रभु को मुकुट पहनाओ, क्योंकि मैं मसीह पर जो मजबूत चट्टान है मैं खड़ा हूँ। अन्य सारी भूमि धसती हुई रेत है, अन्य सारी भूमि धसती हुई रेत है, चाहे ये कलीसिया हो, चाहे ये मित्र हो, चाहे ये शत्रु हो, चाहे ये राष्ट्र हो, चाहे ये बहुतायत धन हो, चाहे ये गरीबी हो, चाहे ये अच्छा हो या ये जो कुछ भी हो, अन्य सारी भूमि धसती हुई रेत है, केवल यही एक चीज है, यह अतः चली जाएगी, लेकिन मसीह वो ठोस चट्टान, मैं खड़ा हूँ। अन्य सभी भूमि धसती हुई रेत है, इसे मन में रखें। ध्यान दें, आइए हम लेव व्यवस्था 16 को देखें और पीछे की ओर पढ़ें। अब बाइबल में पीछे की ओर बहुत पहले लेवीय नियमों में और लेव व्यवस्था के 16 अध्याय को यहाँ पर देखें और 16 अध्याय के 14 पद से आरंभ करते हुए। ओह, मुझे इन चीजों पर अपना समय को लेना अच्छा लगता है, इन्हें बाहर लाना। लेव व्यवस्था 4 या लेव व्यवस्था 16:14, और तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर इसे दया के आसन पर अपनी उंगली से छिड़के, दया के आसन पर। देखो, हम थोड़ी देर बाद इसमें से लेने जा रहे हैं पूर्व की ओर। उस शब्द को मत भूलना, पूर्व की ओर। यीशु कहाँ से आ रहा है? पूर्व, महिमा के बादल में। SUN सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से। SON पुत्र कहाँ से ऊपर आएगा? पूर्व से। दया का आसन कहाँ रखा था? पूर्व की ओर। मैंने आप सभी को पूर्व की ओर इस तरह क्यों बैठाया है? क्यों वेदी पूर्व की ओर होती है? हम इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे। कितनी सुंदरता से मैं इसका चित्र बनाने जा रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को कागज और इत्यादि लाने के लिए कहा, जिससे कि कुछ ही मिनटों में इन मानचित्र को उतारें। तो ठीक है। इसे छिड़के पूर्व की ओर और दया के आसन के सामने वो छिड़के, उसकी उंगली से 7 लहू को छिड़के। ओह, क्या वो सुंदर नहीं है? 7 पूर्व की ओर, यह क्या है? 7 कलीसिया युग लहू के द्वारा ढके हुए होंगे। हालेलुया, यीशु मसीह का लहू उतना ही इसमें पर्याप्त है, कल आज और युगानुयुग, और हर एक युग के लिए, हर एक पापी को बचाने के लिए, हर एक बीमार को चंगा करने के लिए, हर एक अद्भुत काम के लिए, हर एक चिन्ह को पूरा करने के लिए। 7 पुराने नियम में मसीह के आने से बहुत पहले, 1490 वर्ष पहले का समय, इस पर सोचें। चिन्ह 7 फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको दया के आसन के ऊपर और उसके सामने छिड़के और वो पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वो और वह इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उसके लिए भी वह वैसा ही करे जो उनकी भांति भांति की उनकी अशुद्धता के बीच रहता है। यह क्या था? दया का आसन। अब वे कहां पर हैं और वहां संदूक के अंदर क्या था? वो नियम। और नियम एक आज्ञा के उल्लंघन करने पर दया के बिना मरना था, लेकिन इसलिए कि तुम पर दया की जा सके उस लहू को वेदी पर रखना था। वे दया के आसन पर छिड़कते थे और दया का आसन वो वेदी है जहां आप घुटनों को टेकते हैं और दया के लिए मांगते हैं। परमेश्वर न करे कि हम इसे कभी हमारी कलीसियाओं से न हटाएं। पुराने समय की वेदी जहां लोग घुटने टेक सकते थे और परमेश्वर से दया की पुकार कर सकते थे और दया भरपूर होती है और प्रभु यीशु के लहू से आजादी से बहती है। अब यही वो दया भी है, यही दया का आसन है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, यह दया का आसन नहीं था क्योंकि वहाँ बिजलियाँ और गर्जन और आवाजें थी। दया पर बिजलियाँ और गर्जनाएं नहीं होती है, यह न्याय है। आइए हम निर्गमन में जाएं, निर्गमन के 19वें अध्याय और 16वें पद को निकालें। निर्गमन, निर्गमन का 19वां अध्याय और आइए हम 16वें पद से आरंभ करें। और ये ऐसा हुआ, सुनना क्या, जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा, और ये ऐसा हुआ तीसरे दिन जब भोर हुई, बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर तुरही का शब्द बड़ा हुआ। तुरही की आवाज क्या है? ये प्रधान दूत है। और जितने लोग थे, सुनना, जितने लोग छावनी में थे कांप उठे थे। न्याय, वे वहां से निकल गए थे और परमेश्वर ने उन्हें वहां से होकर यात्रा करने के लिए अनुग्रह दिया था, लेकिन उन्होंने एक नियम की मांग की थी। वे परमेश्वर उनसे चाहता था कि वे अंतर संप्रदाय हों। वे इसमें से एक संप्रदाय बनाना चाहते थे, कुछ तो ऐसा जिसके बारे में वे वाद विवाद कर सके, बजाय इसके कि वे केवल परमेश्वर का अनुसरण करें और उसके अधिकार क्षेत्र के नीचे रहें, उसकी सामर्थ्य के नीचे रहें। अनुग्रह ने एक भविष्यवक्ता को प्रदान किया था, अनुग्रह ने एक प्रायश्चितता को प्रदान किया था, एक मेमना, अनुग्रह ने इन सारी चीजों को प्रदान किया था, और फिर भी उन्होंने न्याय को चाहा। वे कुछ ऐसा चाहते थे जिसे वे कर सकें। परमेश्वर ने कहा, उन्हें एक साथ एकत्र करो, मैं उन्हें बताऊंगा कि यह क्या है, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि यह क्या है। समझना, सुनना, और तुरही की आवाज तेज और तेज होती जाती है जब तक ये धरती को हिला नहीं देती। आप देखो न्याय क्या होता है, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे दया दो। और हाँ, वह निर्गमन था, वो 19वां अध्याय और 16वां पद था भाई फ्रेड। निर्गमन 19:16। अब 17वें पद पर ध्यान दें। और तब मूसा लोगों को छावनी से निकाल ले गया ताकि परमेश्वर से भेंट करे। ओ प्रभु, मैं उससे शांति में मिलना चाहता हूँ, ना ही इस तरह। और वे पहाड़ के निचले भाग की ओर खड़े हुए, बहुत दूर। याद रखना, उस पर्वत के चारों ओर रेखाएं खींची गई थी, यहाँ तक यदि एक गाय उस पहाड़ को छू भी ले तो उसे ठीक वहीं मरना था, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। और परमेश्वर और मूसा ने लोगों को आगे लाया। अब 18वां पद, अगला पद, और इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, क्योंकि यहोवा जो आग में होकर इसमें उतरा बस धुआं और भट्टी की तरह जल रहा था। वह किस में उतरा? न ही उसकी तेजो में महिमा में, लेकिन उसके न्याय के प्रकोप में। और उसका धुआं भट्टी का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बोध कांप रहा था। भाई, मैं वहां नहीं रहना चाहता। और जब तुरही की आवाज ज्यादा हो गई और बहुत बढ़ने लगी और बढ़ने लगी, मूसा बोला और परमेश्वर ने उसे एक आवाज के द्वारा उत्तर दिया। मूसा बोला, ना ही लोग, वे कांप रहे थे। और यहोवा नीचे सीने पर्वत के ऊपर उतरा पर्वत की चोटी पर, और प्रभु ने मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर गया। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत नाश हो जाएं। लोग कलीसिया में पीछे बैठते हैं और किसी को अन्य जुबान में बोलते हुए देखकर हंसते हैं या आत्मा में नाचते हुए देख, खत्म, वो पवित्र आत्मा की निंदा कर चुका, हमेशा के लिए छाप लग गई। जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक शब्द भी बोलता है, उसे इस जगत में कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, न ही आने वाले जगत में। इसे टकटकी लगाकर मत देखो, इससे दूर रहें, या नहीं तो इसे स्वीकार करें। बेहतर होगा कि हम उस वचन को छोड़ दें, इसका आगे का पढ़ें, इसके बाकी का। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, और लोगों ने कहा, ओह मूसा तुम बोलो, परमेश्वर अब और न बोले। काश अब हमने इसके लिए नहीं कहा होता, देखा मूसा तुम से बात कर, अगर परमेश्वर बोलता है हम सब मरेंगे। देखो परमेश्वर ने एक प्राचीता को बनाया था। अब सिंहासन की आवाज, ध्यान देना, इस सिंहासन में, सिंहासन के सामने सात तारे थे, तारों की आवाज, आवाजें। आप देखो यहाँ प्रकाशित वाक्य 4 या 5 में और भी बहुत कुछ है हम देखते हैं। और सिंहासन से बिजलियाँ, गर्जनाएं और आवाजें निकली, न ही एक आवाज, आवाजें, बहुवचन। ये क्या था? परमेश्वर कलीसिया से बात कर रहा है, सात आत्माओं के जरिए से खुद को प्रतिबिंबित कर रहा है। जब परमेश्वर का सच्चा अभिषिक्त बोलता है तो वह परमेश्वर की आवाज होती है। इसे अस्वीकार करना धूपदान को हटाना है। देखा आवाजें, सात कलीसिया युगों की आवाज, यहाँ पर कोने में गर्जना और बिजली के साथ बोलती हुई आवाजें। इन दिनों में वे ऐसा कहते हैं तो ठीक है, हम पुलपिट पर नरक कहने में विश्वास नहीं करते। ओह दया, बिल्कुल बेकार की बात। हमें परमेश्वर के लोगों की आवश्यकता है, ऐसे पुरुष जो पीछे नहीं हटेंगे। अब हर कोई प्रचारक नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास एक आवाज है। और यदि आप लोगों को उपदेश नहीं दे सकते हैं, यदि आप एक प्रचारक हैं, तो आपको उपदेश देने के लिए पुलपिट में बुलाया जाता है। यदि आप नहीं हैं, तो भी आप एक प्रचारक हैं, लेकिन लोगों के लिए एक प्रचार के रूप में जीते हैं। अपने प्रचार को जीवित रहने दें। और ये परमेश्वर की आवाज है जो इसे अस्वीकार करने वालों को दोषी ठहराएगी। वे कहते हैं कोई भी उस पुरुष के या स्त्री के जीवन पर उंगली नहीं उठा सकता, वे मधुर हैं, जी रहे हैं। वे यदि कभी कोई परमेश्वर का मनुष्य रहा था तो यही वो पुरुष है या वो स्त्री है। देखो अपने प्रचार को जिए। यदि आपको प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाया गया है तो उन्हें प्रचार करने का प्रयास न करें। आप किसी भी तरह सबको मिश्रित कर देंगे और गड़बड़ कर देंगे और लोगों को उलझा देंगे और आपको पता नहीं चलेगा, तो आप उन्हें और खुद को भी नष्ट कर देंगे। केवल अपने प्रचार को जिए। प्रचारक को उसके प्रचार को करने के लिए और उसे जीने के लिए भी बुलाया गया है। यदि आप इसे नहीं जी सकते हैं तो आप इसका प्रचार करना बंद कर दें, लेकिन आपको अपने उपदेशों को जीना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ आवाजें थी। ओ हमें किस तरह से जयप्रसन्न मिले में हजारों जीवित आवाजों की आवश्यकता है। मधुरता और पवित्रता, शुद्धता, निर्मल जीवन में परमेश्वर की गर्जन, गर्जनाओं को करते हुए बिना किसी दोष के आज धरती पर यहाँ वहाँ चलते हुए, जी हाँ श्रीमान, सच्चे मसीही, यही शत्रुओं के विरुद्ध गर्जन है। शैतान इसकी परवाह नहीं करता कि आप कितनी जोर से चिल्ला सकते हो, शैतान परवाह नहीं करता कि आप कितना कूद सकते हैं या आप कितना ये कर सकते हैं या चिल्ला सकते हैं, लेकिन शैतान को पवित्र निर्दोष जीवन जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, इसे देखकर उसे तकलीफ होती है। उसे कुछ भी कहो, उसे कुछ भी बुलाएं, बस जितना मधुर हो सकता है वो होता है और आगे बढ़ जाता है। ओह प्रभु, वह उसे दूर फेंक देता है। यही वो गर्जन है जो शैतान को हिला देती है। बिल्कुल जैसे, तो ठीक है, आप कहते हैं क्या वो बिली ग्राहम और ओरल रॉबर्ट्स की तरह प्रचार कर सकता है या कोई तो एक महान प्रभावशाली बोलने वाला वो हो? ओह नहीं, कभी कभी शैतान बस उस पर हंसता है। वह उस पर उसके बाद कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आप सभी धर्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो आप चाहते थे और सभी धर्म विद्यालय के प्रशिक्षण को लेते हैं और शैतान बस पीछे बैठकर और उस पर हंसता है। लेकिन जब वो उस जीवन को देखता है, वहाँ पर उन चेलों की ओर देखे, उस पागल बालक को जो उस दिन मिर्गी के साथ था और वे कह रहे थे उसमें से बाहर आ शैतान, उसमें से बाहर आ शैतान, उसमें से बाहर आ शैतान। वहाँ बैठे हुए शैतान ने कहा, अब क्या तुम अपने आप को बहुत अधिक लज्जित नहीं कर रहे हो? अब तुमने देखा कि तुम क्या कर रहे हो। यीशु ने तुमसे कहा था, उसने तुम्हें आज्ञा दी कि मुझे बाहर निकालो, तुम में से कोई एक भी नहीं कर सकता। लेकिन भाई, जब वे उसे आते देखते हैं, वो एक चुपचाप चलता हुआ आता है। ओ परमेश्वर, उसे कुछ भी नहीं कहना था। ठीक तभी वो शैतान पहले से ही डरा हुआ था। वो जानता था कि उसे ठीक तभी छोड़कर जाना था। सही है, क्योंकि वहाँ पर एक जीवन आ गया, न केवल एक उपदेश लेकिन एक जीवन। कहा उसमें से बाहर आ। ओह प्रभु, इसने इसे किया चुपचाप से। वो जानता था कि वो किस विषय में बात कर रहा था, वो जानता था कि वो क्या कर रहा था। अब आवाजें, सात तुरहियों की आवाजें, वे सात तारे, सात संदेश वाहकों की आवाजें थी। लेकिन अब यहाँ देखना, और सात दीवट सिंहासन के सामने, ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। सात दीवट, आइए यहाँ थोड़ा सा चित्र बनाएं। सिंहासन, पवित्र स्थान, सभा के लोग, और ठीक यहाँ एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात तारे, सात दीवट, सात संदेश वाहक, सात आत्माएं थी। पूरी तरह से इसका अर्थ नहीं है कि परमेश्वर सात आत्माओं में है, लेकिन एक ही पवित्र आत्मा के सात प्रकटीकरण। पवित्र आत्मा कहाँ है? यहाँ सिंहासन पर, हर एक कलीसिया युग में से चमकते हुए। इस कलीसिया का युग वापस इस प्रकार से प्रतिबिंबित कर रहा है परमेश्वर की आवाजों को। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। देखो, सात वहाँ आवाजें थी और सात दीवटों पर आग थी, सात आत्माएं जो परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। याद है, दो रविवार पहले हमने इसे लिया था, वो बड़ा हीरा, लेकिन इसे कई अलग अलग तरीकों से काटा जाता है जिससे कि ये प्रतिबिंबित करे और इसमें से प्रकाश निकले। इसी तरह से यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ होना है। प्रकाशित वाक्य एक, क्या ये सही है? तब परमेश्वर की सृष्टि कब हुई थी? वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है और परमेश्वर अनंत है। क्या यह सही है? लेकिन जब परमेश्वर की सृष्टि हुई थी, जब एक छोटा बालक जो एक माँ की गर्भ में गर्भधारण हुआ था, एक कुंवारी के, और वो इस छोटे से बालक को जन्म देने के लिए अपने भीतर इन कोशिकाओं को विकसित करना आरंभ करती है, यह परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ था। क्योंकि परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया और इमानुएल बन गया, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ। फिर उस महान रत्न में जो मिट्टी से आता है, क्योंकि वह मिट्टी से बना था। क्या यह सही है? वह खाना खाता है जैसे मैं खाता हूँ, वह खाना खाता है जैसे आप खाते हैं, जो कि शरीर की मिट्टी, वो कैल्शियम, पोटाश, पेट्रोलियम, लौकिक प्रकाश बन जाता है, लेकिन उसमें अनंत प्रकाश ने वास किया। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञानी पुरुषों ने तारे से कहा, अपने सिद्ध प्रकाश की ओर हमारा मार्गदर्शन कर। वे बस एक सिद्ध प्रकाश के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे, और वहाँ वो था परमेश्वर का सिद्ध प्रकाश, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ। अब वहाँ वो था। ज्ञानी पुरुषों के उसे आकाश में देखने के बाद वह धरती के उसके तारों को वापस कैसे प्रतिबिंबित कर सका था, और वे यहाँ धरती पर सेवकाई करने वाली आत्माएं बन गए। वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, बड़ा हीरा काटा गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया था, उस पर हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यह क्या कर रहा था? प्रतिबिंबित। कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर का सेवक होने का दावा करता है, जो दिव्य चंगाई और उसकी सामर्थ का इनकार करता है, उसे उस हीरे से उसका प्रकाश नहीं मिल रहा है, उस सिंहासन से उसका प्रकाश नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह उसे कल, आज और युगानुयुग के लिए प्रतिबिंबित करता है, और उन सात तारों और सात कलीसिया के युगों में से होते हुए। ओह, परमेश्वर की स्तुति हो। मान लो कि ये एक सेवक के लिए पुलपिट से परमेश्वर की आराधना करना उचित है, धन्यवाद देते हुए और स्तुति और आदर और शक्ति के साथ। ओह, कितना वास्तविक! यह मेरे प्राण को उत्तेजित कर देता है। इतना तक मैं महसूस करता हूँ जैसे कि मैं चिल्ला सकता हूँ और दौड़ सकता हूँ, और जितना ऊंचा उछल सकता हूँ उतना उछलूं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ तो है जिसने जो मैं था उसमें से बदल दिया है। मैं वो नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए, और वो नहीं जो मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उससे बदल गया हूँ जो मैं हुआ करता था। कुछ तो हुआ है, कुछ तो बात ने जगह ली है। और यहाँ खड़े होकर और इस अनंत वचन को देखें, यही है जो हर एक तूफान को हिलाता है। जब उन्होंने बाइबल जलाने की कोशिश की और इत्यादि, इसने ठीक बस उसी तरह से हिला दिया, क्योंकि इसने कहा, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन न टलेगा। अब यहाँ शिकागो के पास और एक बाइबल कलीसिया के पुलपिट पर रखी हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध से बहुत पहले की बात है। ये एक मिशनरी के पास बाइबल थी और एक मनुष्य परिवर्तित हुआ था, और वह उस मिशनरी को अपनी बाइबल देना चाहता था, पर उसने कहा, मैं आपको यह नहीं दे सकता, मेरी माँ ने मुझे इसे दिया था। कहा, मैं जब मैं घर पहुँचूंगा तो मैं आपको एक बाइबल भेजूंगा। वह वापस समुद्र के पार जाने लगा, और एक जर्मन पनडुब्बी संचालक ने उस जहाज को उड़ा दिया। उन्हें उसका एक टुकड़ा भी नहीं मिला, और दो वर्ष के बाद दूर तट पर की ओर उन्होंने एक बक्से को तैरते हुए देखा। उसमें से कुछ ने सोचा कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जो डूब गया हो। तब उन्होंने उस बक्से को बाहर निकाला और उसे खोला, और दो लोगों ने साथ साथ चलते हुए, और वहाँ इसकी केवल एक चीज बची थी, वह थी वह बाइबल जिसे वो मिशनरी को वापस भेज रहा था। यह आज शिकागो के पास एक मेथोडिस्ट कलीसिया में एक पुलपिट पर रखी हुई है। आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन न टलेगा। यहाँ 1937 में बाढ़ के समय के दौरान इस छोटी सी पुरानी कलीसिया में, जब मिट्टी का फर्श और इत्यादि जोश में था, हम यहाँ इस एक नाव के ऊपर चढ़ गए, बाढ़ ऊपर बढ़ने लगी। और ठीक है, उस रात जब मैंने सुसमाचार का प्रचार किया था और अपनी बाइबल को पुलपिट पर खुला छोड़ दिया था, जब मैं घर गया था, भविष्यवाणी कर रहा था कि बाढ़ आएगी, मैंने कहा, मैंने उसे यहाँ नीचे देखा, स्प्रिंग मार्क पर 22 फुट की माप पर था। बुजुर्ग भाई जिम वाइस हार्ट, और वे मुझ पर हंसे, आपको ये याद है भाई जॉर्ज? मैंने कहा, उसने कहा, ओ बिल्ली, 84 में स्प्रिंग मार्क पर ये केवल लगभग 6 इंच था। मैंने कहा, मैंने एक मनुष्य को आकाश से उतरते देखा और एक नाप की छड़ को लेकर और उसे स्प्रिंग मार्क पर 22 फुट पर चिपका दिया और कहा, 22 फुट। उसने कहा, आप बस उत्तेजित हो गए हैं। मैंने कहा, मैं उत्तेजित नहीं हूँ, यहोवा यो कहता है। उनसे पूछे कि स्प्रिंग मार्क के ऊपर कितना फुट था? 22 फुट के उस इंच तक, बिल्कुल। और वो पुरानी बाइबल जहाँ उस रात प्रचार किया गया था, उसने बारिश को आरंभ किया और बाढ़ और ऊपर बढ़ने लगी थी, और ये पुरानी कलीसिया कुर्सियाँ सीधे छत तक चली गई थी, बाइबल सीधे छत तक चली गई थी। वो सारा पानी इसे यहाँ से साफ करते हुए जो इसे ऊपर उठा रहा था, पुलपिट सीधा ऊपर चला गया। बाद में वे सीधे नीचे आ गए और हर एक कुर्सी ठीक उसी स्थान पर वापस आ गई और बाइबल ठीक उसी स्थान पर वापस रखी हुई थी और वो सारा पानी था और फिर भी बाइबल खुली हुई थी, वही अध्याय उसी स्थान पर। आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। कैसे वह बाइबल उस खारे पानी में 2 वर्ष तक तैरती रही, यहाँ तक कि उस पर के शब्द भी खराब नहीं हुए थे। परमेश्वर के वचन सत्य है, आमीन। मुझे याद है उसके बाद बुजुर्ग भाई जिम वाइसहार्ट इससे बहुत संतुष्ट हुए थे। हर बार उनकी बाह में दर्द होता है, उनके साथ किसी तरह का कुछ तो गलत हुआ। जब वे लगभग 75 वर्ष के हुए तो उन्हें गठिया रोग हो गया। दर्द यहाँ पर उन्हें तकलीफ देने लगता। वह दौड़कर बाइबल को लेते और इसे खोलते, वहाँ पर रख देते। यहाँ एक और दर्द होता। मैं एक दिन वहाँ गया और उनके ऊपर बहुत सारी बाइबलें रखी हुई थी कि मैं भाई जिम को नहीं देख सकता था। उनके ऊपर बस बहुत सी बाइबलें रखी हुई थी। उसने कहा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। बस ऐसा ही है, आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा। याद रखना, वो बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर मुझसे मिलने आया करता था और उसके लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं है, मैं नहीं सोचता, और मैं साथ ही अक्सर उसकी थोड़ी मदद किया करता था क्योंकि वे बुजुर्ग थे और उन्हें पैसे की आवश्यकता थी और वो वहाँ आते थे। उसने कहा, एक दिन मैं कनाडा के लिए निकल रहा था, पीछे मुड़ा, बस गेट से बाहर निकला और उसने कहा, बिली मेरे बेटे, इन दिनों में से एक दिन तुम वापस आओगे और बूढ़े अंकल जिम अब इस सड़क पर यहाँ वहाँ अब और पैर घसीटता हुआ नहीं होगा। यह आखिरी बार था जब मैं कनाडा में था। मुझे एक टेलीग्राम मिला, वो ठीक वही बहन मार्गन के हाथों में ही चल बसे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वे उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए, उनकी ओर देखा और उनकी मृत्यु हो गई। बहन मार्गी, क्या वो आज सुबह यहाँ पर है? वह अक्सर अंदर होती है, आप सभी जानते हैं, कैंसर के बड़े मामलों में से एक, जहाँ बैप्टिस्ट अस्पताल में वह 17 वर्ष से मर चुकी थी। वहाँ पर मेडिकल क्लिनिक जो वहाँ के रिकॉर्ड पर है, कैंसर से मरती हुई 17 वर्ष पहले। वह 412 नाबलोच एवेन्यू में रहती है, यहाँ के अस्पताल में नर्स का काम करती है। ओह अद्भुत अनुग्रह, कितना मधुर सा लगता है। लुइसविले में एक वकील है, जिम टॉम रॉबर्टसन, और हम सभी जिम टॉम को जानते हैं। यही है जो उसे इस संदेश में विश्वास करने के लिए लेकर आया। वह वहाँ पर गया और उसके पिता अस्पताल में उन कर्मचारियों के प्रमुखों में से एक हैं। उसने वहाँ पर जाकर और इसे ढूंढा यह देखने के लिए कि क्या ये सच है कि वह कैंसर से मर रही थी, और उसे छोड़ दिया गया था और घर भेज दिया गया, और सोचा जहाँ तक वे जानते थे कि वह मर चुकी थी, और उसके पिता ने इसके बारे में पता लगाया और यह सच है। और जिम टॉम ने कहा, यह झूठ है, वो ठीक अभी यहाँ बैठी हुई है, मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ। ओह ओह, वो एक सच्चा परमेश्वर है, क्या वो नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ कि वह हमारी गलतियों को देख सकता है, क्या आप खुश नहीं हैं? हमें हमारे पूरे हृदय से उससे प्रेम करने को लगाता है। सियासन, बिजलियाँ, क्या 7 दीवट या 7 दीवट या 7 तारे जिन्हें 7 आत्माएं कहा जाता है, इसका अर्थ वो पवित्र आत्मा के 7 प्रगटीकरण, जो लोगों के लिए दया के आसन पर 7 कलीसिया युग हैं। यहाँ ये है दया के 7 आसन, 7 आसन, 7 कलीसियाएं, 7 तारे, 7 प्रगटीकरण, 7 आत्माएं, 7 दीवट। ओ प्रभु, परमेश्वर कितना सिद्ध है। हर एक बाइबल के अंकों में वहाँ रखा हुआ है। बाइबल के अंक धरती पर सबसे उत्तम चीज है। आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल के अंकों में एक भी दोष नहीं पा सकते। ना ही साहित्य का दूसरा टुकड़ा लिखा गया है कि आप एक दोष भी नहीं पा सकते हैं। इससे पहले 3 पदों को पढ़ें, लेकिन ना ही वे 200 से भी अधिक वर्षों से प्रभु की प्रार्थना में एक वाक्य को जोड़ने या उसमें से एक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिद्ध है, अब और ना ही जोड़ सकते हैं या इसमें से अब और ना ही निकाल सकते हैं। वे सोच रहे थे कि वे प्रार्थना को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे, वे इसे इसमें मिलाने की कोशिश करेंगे और इसे इसमें डालेंगे या इसे इसमें से निकालेंगे, यह बस ठीक नहीं है। देखो, ये तो सिद्ध है, परमेश्वर के सारे मार्ग सिद्ध है, इसलिए हम असिद्ध हैं। लेकिन उसने कहा, इसलिए तुम वैसे ही सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, कि हमारे अपने आप को भूलकर और केवल उसी में जिए। आप यहाँ हो, ये कितना बहुमूल्य है। तो ठीक है, 6वां पद, अब यदि हम इसमें जाएं, 7 दीवट, और उस सियासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है और सियासन के बीच में और सियासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ओह प्रभु, इसे देखना, प्राणी हैं जिनकी आंखें ही आंखें हैं, आंखें ही आंखें हैं, आगे और अब रुकना, सियासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है और सियासन के बीच में चार और सियासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। अब कांच का सा समुद्र, आप जो मैं इसका यहाँ बहुत अधिक प्रतिरूप नहीं है, लेकिन मैं इसे एक मिनट के लिए मिटाना चाहता हूँ। अब हम यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करना चाहते हैं। पुराने मंदिर में कांच के समुद्र का प्रतिरूप है, क्योंकि मूसा को धरती पर मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर से आज्ञा मिली थी, जैसे उसने इसे स्वर्ग में देखा था। हर एक जन ये जानता है, तो ठीक है। और अब मैं बस थोड़ा सा चित्र ये कहते हुए बनाता हूँ कि यहाँ पुराने नियम में ये संदूक था, तो ठीक है। अगली बात, जिसे परम पवित्र स्थान कहा जाता था, और यहाँ अगला स्थान वेदी थी जो पवित्र स्थान कहलाती थी, और ठीक पहले यहाँ इसे पीतल का समुन्द्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बलिदानों को धोया जाता था, यहाँ धोया जाता था इससे पहले कि उन्हें गया था वेदी पर, पीतल की वेदी पर या पीतल के समान वेदी पर जहाँ बलिदान को जलाया जाता था। अब हम इसे अभी देखना चाहते हैं, ये कहाँ, यह कहाँ पर था। और अब इस कांच के समुद्र में जो सियासन के सामने और पवित्र स्थान के सामने था, बस अब याद रखना, सात सुनहरे धूपदान यहाँ इस तरह से रखे हुए हैं और एक होद में आता है, समझे। अब यही वो एक है जो पवित्र स्थान से यहाँ पर प्रकाश को चमकाता है। अब यदि आप नहीं, आपको इसे तब तक लिखने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप बस ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन यह मेरे पास यहाँ कुछ और भी है, मैंने खुद चित्रित किया है, जिसे मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन अब आप देखो, यह पीतल का समुन्द्र कहलाता है। यह बहुत बड़ा नहीं था, इसे मंदिर में लगभग उपयुक्त स्थान में स्थापित किया गया था। यह यहाँ लगभग इस तरह से स्थापित किया गया था, जो पीतल का समुन्द्र था, यह पीतल में से बना हुआ होद था जिसमें वे बलिदानों को धोते थे। बलिदानों को जलाने या स्वीकार करने से पहले उन्हें धोना पड़ता था। ओह, क्या ये ठीक अभी एक उपदेश को नहीं बनाता डॉक्टर? ओह प्रभु, क्या ये बस नहीं, ये मुझे अभी ताजा मिला, उन्हें धोया जाता है। कोई भी बलिदान परमेश्वर के लिए स्वीकार करने से पहले उसे पहले धोया जाना है। कैसे? न ही भावनात्मक रूप से, लेकिन वचन के द्वारा धोया जाता है। अब हम पीछे जाकर और इसे ले सकते हैं, जहाँ यह यहूदी रब्बी को, जब मैं अलगाव के जल के उस उपदेश को प्रचार कर रहा था, लाल बछड़ा जो जल रखा हुआ था, जिसे उन्होंने अलगाव का जल बनाया था, और इससे पहले कि हम कभी भी सच्चे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ सकें, हमें सबसे पहले अलगाव के जल में से होकर आना होगा। जी हाँ श्रीमान, आपको किस में से होकर आना है? वचन। ओह, अब मैं देखूंगा कि क्या मैं बस ऐसे बात कर सकता हूँ कि आप हर एक जन इसे पकड़ ले। अब अपने आत्मिक विचार को पहन ले, युद्ध के टोप को उतार दें, और अब अपने आत्मिक विचार को पहन ले, क्योंकि यहाँ कुछ तो आ रहा है। वेदी पर ग्रहण करने से पहले धोया जाता है, इसे पहले अवश्य ही अलगाव के जल के द्वारा धोया जाना है। अब मेरे साथ जल्दी से इफिसियों 5 को निकालें, बस अपनी जगह बने रहें और पीछे की ओर पलटें, बस कुछ पन्ने पीछे, इफिसियों के 5वें अध्याय की ओर 26वां पद, कि वो उसे शुद्ध और पवित्र बना सके, कलीसिया, वो इसके विषय बोल रहा है। देखिए, अब मैं उससे कुछ थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप लगभग 21वें पद में वापस जाएं, जब आप देखते हैं परमेश्वर के भय में अपने आप को एक दूसरे के अधीन कर दो। अपने आप को अधीन करें सभा के लोगों, अपने आप को अपने पास्टर के अधीन कर दो। पास्टर, अपने आप को अपनी सभा के लोगों के अधीन कर दो। यदि एक छोटा गुट उठ खड़ा होता है तो दोनों ओर ना रहें, अपने आप को सारी सभा के लोगों के अधीन कर दो। सभा के लोग, यदि आप एक गुट को आरंभ करते हैं तो परमेश्वर के भय में अपने आप को अपने पास्टर के अधीन कर दें। समझे? ओ भाई, हे पत्नियों, अपने आप को अपने पति के ऐसे अधीन करो जैसे प्रभु के, क्योंकि वो तुम्हारा स्वामी है। आप महिलाओं में कितने लोग ये जानते हैं? यह बिल्कुल सही है। बाइबल आरंभ में ऐसा कहती है, यह अभी भी उसी तरह से है। हे पत्नियों, अपने आप को अपने पति के ऐसे अधीन करो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, यहाँ तक जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। वैसे ही पति है, आप सभी ये जानते हैं। आप जो विवाहित लोग और वयस्क लोग हैं, या बच्चे जो जीवन के तरीके को जानने के लिए पर्याप्त उम्र के हैं, तो ठीक है। जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, यहाँ तक जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके और अपने आप को उसके लिए दे दिया। उसके ऊपर रोब न जमाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पति होने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह सही है, जिससे कि वह, सुनना, यहाँ है ये, अब इसे पकड़ना, जिससे कि वो उसे शुद्ध और पवित्र बनाए, किसके जल के स्नान के द्वारा। तब हर एक आराधना करने वाला जो कभी भी इस तक पहुंच को पाता है, उसे वचन के द्वारा आना होता है। नहीं तो वहाँ बहुत से आते हैं। मैं छोटी छोटी कहानियों और बातों में विश्वास करता हूँ इस विषय में कि माँ बहुत वर्ष पहले मर गई है और वह स्वर्ग में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह सब तब अच्छा लगता है जब वचन को लागू किया जाता है। बहुत से लोग वेदी पर इसलिए आते हैं क्योंकि वे अपनी माँ से स्वर्ग में मिलना चाहते हैं। यह सब ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन यह वो वजह नहीं है कि आप वेदी पर आएं। आप अपने पापों को अंगीकार करते हुए वेदी पर आएं, क्योंकि मसीह आपके स्थान पर मरा वचन के द्वारा। फिर कोई भी बलिदान जो वचन के अनुसार नहीं आता है, तब इसे अस्वीकार्य किया जाता है। क्या यह सही है? ओ भाई, मैं इसे कहना पसंद नहीं करता हूँ। ओह, मुझे यह कहने से घृणा है। मुझे इसे कहने के लिए क्षमा करें। यही कारण है कि प्रेरितों के काम 19 बाइबल में है, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा, हम नहीं, कि क्या वहाँ है या नहीं। कहा, फिर तुम्हारा कैसे बपतिस्मा हुआ था? तुम्हें यहाँ क्यों नहीं मिला? वे वचन को छोड़ किसी और तरीके से आए थे। कहा, ओह, हम उस विधि से होकर गए हैं, हमने बपतिस्मा लिया था यूहन्ना का। उसने कहा, यह काम नहीं करेगा। यूहन्ना ने केवल मन फिराव के निमित्त बपतिस्मा किया, पापों की क्षमा के लिए नहीं। और जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने फिर से बपतिस्मा लिया था। क्यों? वचन के द्वारा, वचन के जल से धोए गए। वचन ने कहा, यीशु मसीह के नाम में कोई भी चीज जो उस पर किसी और चीज को थोपती है, यह गलत है। अब मेरे बहुमूल्य भाई, मैं जानता हूँ कि यह टेप भी हो रहा है। अब उत्तेजित मत हो जाना, मैं इसे ईश्वरीय प्रेम के साथ कहूँगा। वह घड़ी आ पहुँची है जहाँ मैं इन चीजों पर और अधिक रोके नहीं रख सकता। आगमन के बहुत नजदीक है। समझे? तेरी एकतावाद शैतान का है। मैं इसे कहता हूँ, यहोवा यो कहता है। देखो, यह कहाँ से आया है? यह निसियन परिषद से आया है, जब कैथोलिक कलीसिया का शासन काल बन गया था। वो शब्द त्रिएकता यहाँ तक बाइबल की पूरी किताब में इसका उल्लेख भी नहीं है। और जहाँ तक तीन परमेश्वरों की बात है, यह नरक से है, एक ही परमेश्वर है, यह बिल्कुल सही है। अब फिर क्या आप कहते हैं, क्या आप यह विश्वास करते हैं कि ये सभी लोग जो त्रिएकतावादी हैं, वे नरक से हैं? नहीं श्रीमान, मैं विश्वास करता हूँ कि वे मसीही हैं, लेकिन वो समय आ रहा है भाई जहाँ वे सचमुच से गलत हैं। कोई भी मनुष्य कहीं भी कभी भी जो इस विषय पर बात करना चाहता है, मेरे पास आए, कोई भी सेवक, बिशप, आर्क बिशप, चाहे आप कोई भी हो, और इसे टेप किया गया है, ये दुनिया भर में जाएगा। मैं भाईचारे के प्रेम में निमंत्रण देता हूँ दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति के लिए जो मुझे इस टेप पर सुनता है, वो मेरे पास आए और मुझे किसी भी एक वचन के लेख या किसी भी इतिहास में से एक परिच्छेद को दिखाए, उसमें से जो प्रमाणिक इतिहास है, जहाँ किसी भी व्यक्ति को कभी भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया था, जब तक वे कैथोलिक कलीसिया के साथ संगठित नहीं हुए थे, तो मैं अपने सिद्धांत को बदल दूंगा। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था। और मेरे बहुमूल्य भाइयों, आपकी आंखें इन बातों के लिए अंधी हो गई हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको उजियाला दे। अब यदि आपके पास इसका समर्थन करने के लिए वचन है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, या आपके फोन को सुनने के लिए रुका हुआ हूँ। आप इस टेप के बाद यदि आप मुझे उस पर चुनौती नहीं देते हैं, तो आप जानबूझकर आत्मिक अज्ञानता में चल रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है, तो आइए परमेश्वर से पूछें। याद रखना, मैं कहता हूँ कि यहोवा यो कहता है, यदि आप मुझे उसका सेवक होने का विश्वास करते हैं, और यदि यह वचन के अनुसार नहीं होता था, तो यह गलत होता। फिर यदि यह वचन के अनुसार नहीं है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप मुझे ठीक करें। देखें कि क्या होता है। यह एक गलती है। मेरा मानना है कि तीन परमेश्वरों में विश्वास करने वाले हजारों त्रिएकतावादी लोग बचाए गए हैं, क्योंकि वे कुछ भी अंतर नहीं जानते। हम संदेश में उस पर आगे ले लेंगे। अब आप सभी अपने टेप को बंद करके और भवन से बाहर नहीं चले जाना। आप त्रिएकतावादी भाइयों, इसे सुनना, लेकिन आप बस कुछ मिनट के लिए शांत बैठें। आपको इसे अपने आप के लिए लेना है, आपको इसे अपने सभा के लोगों के लिए देना है, समझे? इसे टेप में लेना बंद न करें, बस इसके साथ बने रहें, इसे शब्द दर शब्द पता लगाएं और देखें कि क्या यह सही है। बाइबल ने कहा, सारी बातों को साबित करो। मैं जानता हूँ कि यह लोकप्रिय नहीं है, ऐसा ही इशू था, ऐसा ही हमेशा संदेश रहा है। आपने मुझे प्रेम किया जब मैंने आकर और आप लोगों में से बीमारों और पीड़ित लोगों को चंगा किया। आपने सोचा था कि यह बहुत ही भीड़ थी और कलीसिया का निर्माण हुआ। अब यीशु ने वही काम किया जब तक कि एक दिन वो सत्य की ओर नहीं उतरा, और जब उसने ऐसा किया तो यहाँ तक 70 लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, और वो बाकी के 12 की ओर फिरा और कहा, तुम भी जाओगे? और पतरस ने उन याद रखने वाले शब्द कहे, प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंतता के वचन केवल तेरे पास ही हैं, और केवल परमेश्वर का वचन ही अनंत है, और मुझे कहीं भी ढूंढ कर बताओ कि परमेश्वर ने कभी किसी को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया था। आप मती 28:19 को जाएं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जहां मती ने कहा, इसलिए तुम जाकर और सारे राष्ट्रों को शिक्षा दो, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और कोई भी यह सोचता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक नाम है, तो यह दर्शाता है कि उनकी शिक्षा में कुछ तो गलत है। अब सातवीं कक्षा के छात्र के लिए इसे उन बिशप लोगों से कहना जो इसे सुन रहे हैं, पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है, और पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है। वे तो शीर्षक हैं जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर जाते हैं, जो कि यीशु मसीह है। याद रखें, यह क्रोध में नहीं कह रहा हूँ, यह प्रेम और ईश्वरी आदर में कहता हूँ, मसीह के पूरी देह के लिए प्रेम और सोच विचार के साथ, जहाँ मुझे मेरे त्रिएकतावाद के भाइयों के द्वारा आमंत्रित किया गया है, और पूरी दुनिया में कि आकर और उनके सभा के लोगों को प्रचार करूं। लेकिन जब मैं आपके बीच होता हूं, तो मैं इसका कभी भी उल्लेख नहीं करता। मैं चाहता हूं जब तक आप मुझसे खुद नहीं पूछेंगे और मैं आपके साथ पास्टर के कक्ष में जाकर और आपके साथ इस बारे में बात करूंगा, लेकिन आपकी सभा के सामने यह उन्हें हिला देगा। प्रकाशन को लेकर और अपने झुंड को सिखाने के लिए ये आपका स्थान है। आप झुंड के चरवाहे हैं, मैं सेवकों से बात कर रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझता है तो आओ हम बैठकर और एक साथ सोच विचार करें। बाइबल ने कहा सारी बातों को साबित करो और जो लाभ की है उसे पकड़े रहो। कांच का समुन्दर जहाँ बलिदान धोया जाता था और हम धोए जाते हैं, ओह इसे मत भूलना। हम थोड़ी देर बाद उस पर वापस आ रहे हैं। वचन के जल से धोया गया, तब आपको वचन सुनना होगा। इससे पहले आप वहां प्रवेश कर सकें, क्योंकि केवल एक ही तरीके से आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, वो है विश्वास के द्वारा। क्या यह सही है? विश्वास सुनने से आता है, सुनना वचन से होता है, हमारे विवेक को धोता है। ना ही एक मनुष्य से मिलना, ना ही पिता से मिलना, ना ही माँ से मिलना, ना ही बालक से मिलना, ये सब सच है, हम ऐसा करेंगे। लेकिन पहली चीज जिसमें हमें आना है वो है परमेश्वर के विधि का मार्ग। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम धोए जाते हैं, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। अनुग्रह, परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है ये सही है। आप परमेश्वर का विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जैसे ही आप खेदित होते हैं आपको पहले ही क्षमा किया जा चुका है। जब मैं कल एक भाई से बात कर रहा था तो इस पर कुछ उलझ गया और मैंने कहा, देखो भाई, यदि आपने अपनी पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ कहा है तो आप तुरंत उसके लिए खेद महसूस करोगे। आप खेदित होते हैं आपने ऐसा किया, आप पहले ही अपने हृदय में पछतावा कर चुके हैं। ये सही बात है, लेकिन आपको उसे इसके बारे में बताना होगा। आपको जाकर और कहना है, प्रिय मुझे क्षमा करना कि मैंने ऐसा कहा। तब आपने पूरी तरह से पश्चाताप किया है। अब परमेश्वर के साथ इसी तरह से है। एक मनुष्य जो जाकर और कहेगा मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे कहूंगा कि मुझे क्षमा करे, लेकिन वास्तव में मैं खेदित नहीं हूँ, तुम एक ढोंगी हो। समझे, ये सही बात है। यह परमेश्वर के द्वारा कभी भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। आपको अपने पापों के लिए पूरी तरह से खेदित होना चाहिए। फिर जब आप जानते हैं कि आपको अपने पापों के लिए खेद है और फिर पश्चाताप करें और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और तुम क्षमा को पाओगे, पवित्र आत्मा को पाओगे। देखो यह बिल्कुल साधारण सा है, परमेश्वर ने इसे बहुत ही साधारण बनाया है। यहाँ वो हम यहाँ ध्यान देते हैं कांच का समुन्दर, इसकी तुलना बिल्लोर या कच्चे हीरे से की गई थी। अब कांच के समुन्दर का प्रतिरूप है जिसे पीतल के समुन्दर के द्वारा नमूना बताया गया है। यह स्वर्ग में कांच का समुन्दर है। मूसा ने इसे कांच के समुन्दर के नाई देखा और बना हुआ जिसे पीतल का समुन्दर कहा जाता था, एक पीतल के समान वेदी, पीतल का बलिदान, मेरा मतलब एक पीतल के समान वेदी। आप जानते हैं कि पीतल बाइबल में किस बारे में बताता है? न्याय को। उसने पीतल के सर्प को बनाया। सर्प का क्या अर्थ है? सर्प के प्रतीक का अर्थ होता है पाप का न्याय किया जा चुका है। अदन के बगीचे में जब तेरी एड़ी उसके सिर को कुचल डालेगी, उसका सिर एड़ी को ढसेगा। और पीतल दैविक न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। पीतल की वेदी जहां बलिदान को जलाया जाता है, पीतल का होद जहां इसे वचन के जल से धोया गया था। समझे, एलिया ने उसके दिनों में बाहर जाकर और ऊपर की ओर देखा और कहा, आकाश पीतल जैसा दिखता है, एक ठुकराए गए राष्ट्र पर दैविक न्याय, ओह प्रभु, पीतल पीतल सा। अब हम होद में हैं और आपने देखा कि यह होद खाली था और बिल्लोर या शीशे की तरह साफ था। क्यों? कलीसिया को पहले ही छुड़ाया गया था। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं, हालांकि जब महासंकट के संत आगे आते हैं, हम इसे फिर से आग से भरा हुआ देखते हैं। क्या आपने जाना? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? आइए अब प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय दूसरे पद की ओर चलते हैं और पढ़ेंगे, जहां हम इस पीतल की आग को फिर से देखते हैं। तो ठीक है। और मैंने एक और दूत को देखा। मैंने स्वर्ग में एक और चिन्ह देखा, ठीक है, बड़ा और अद्भुत चिन्ह, अर्थात सात दूत जिनके पास सातों पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनमें परमेश्वर के प्रकोप के साथ भरा हुआ है। अब परमेश्वर का क्रोध देखो, और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुंदर देखा था। अब देखना, और वे जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, और उन्हें उस कांच के समुंदर के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा, और उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा का गीत गाया। ओह, क्या आप इसे देखते हैं? महासंकट काल। ओह, क्या आप जल्दी में हैं? तो ठीक है, सुनना, आइए यहाँ कुछ बात को देखेंगे। हम कैसे आते हैं? हमें आना ही है इस अन्य जाति कलीसिया को, इस वचन के लिए जो कांच का समुंदर जल, वचन का जल है। क्या यह सही है? वचन को जिस तरह से इसे लिखा गया है उसे पहचाने, तब बलिदान ग्रहण किया जाता है और अंदर से पवित्र आत्मा से भर दिया जाता है, उस युग के प्रकाश के जरिए से चमकते हुए यहाँ से, यहाँ यह पवित्र स्थान से यहाँ इसके अंदर आता है, तारे से निकलकर यहाँ इसके अंदर आता है। इसे पकड़ा, ध्यान दें। अब इस युग के अंत में यूहन्ना जब उसने वहाँ पीतल का समुंदर देखा, तो यह बिल्लोर या शीशे सा साफ था। ये क्या था? वचन को धरती पर से उठा लिया गया था, कलीसिया में रैप्चर हो गया था, और ये बिल्लोर या शीशे सा साफ था। अब और लहू नहीं, कलीसिया का युग खत्म हुआ था। अब प्रकाशित वाक्य 15 में स्त्री के बीज के अवशेष, जो कि महासंकट के संत थे, जो महासंकट में से होकर गुजरे थे, वहाँ पाए गए, देखो इस समुन्द्र पर खड़े थे, और ये आग, लहू, लाल जीप सी उठती हुई लपटें परमेश्वर की आग से भर गया। उन्होंने पशु, रोम पर, उसकी संख्या पर, उसके नाम के अक्षर पर विजय को पा लिया था, और उसकी छवि पर कलीसियाओं के संगठन और बाहर आ गई थी, और मूसा और एलिया के प्रचार के द्वारा वे दो भविष्यवक्ता जो इज़राइल को बाहर निकालने के लिए प्रकट होंगे। लोगों का यह झुंड, वे महासंकट काल के संत जो उस समय में वापस लाए जाएंगे, जो देखो कलीसिया का अब रैप्चर किया गया है, लेकिन याद रखें कि पत्री सिंहासन पर बैठी है। महासंकट काल राज्यों में रहते थे बाहर, और उनके सभी राजाओं को और उनके आदर और महिमा को नगर के अंदर लाया गया। जब हम प्रकाशित वाक्य 22 में जाते हैं, तो आप इसे देखेंगे, यदि आप इसे लिख रहे हैं और इसे पकड़कर रखते हैं, जब हम इस बात को ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा क्या मतलब है। हमारे पास हर छोटी चीज को पकड़ने और उसे यहाँ और वहाँ से लेने का समय नहीं है, लेकिन इसके मुख्य स्थानों में से ले लेंगे। फिर किसी दिन, हो सकता है प्रभु की इच्छा हुई तो, हमारे पास इसके बारे में बात करने के लिए बहुत समय होगा। अब ये महासंकट काल के संत जो सामने आए, वे बड़े क्लेशों में से होकर गुजरे थे। कलीसिया महासंकट में से होकर नहीं जाएगी। क्या आप देखते हैं कि वे पहले से ही महिमा में थे, और यहाँ पर महासंकट के संत, वे जो पवित्र लोग हैं, जिनके पास यह मेरी और आपकी गलती होने की वजह से उन्होंने कभी भी वचन को नहीं सुना था, यदि उन्होंने इसे सुना है और इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो वे नरक में चले जाते हैं। उन्हें बाहरी अंधकार में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वचन को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन यदि उन्होंने इसे कभी भी नहीं सुना होगा, तो परमेश्वर न्यायी है, महासंकट काल उनके लिए आता है। अब बस एक मिनट ध्यान देना, संतों को उसी वचन के द्वारा धोया जाता है, क्योंकि यह वही वेदी है, यह वही कांच का समुन्दर है, और वही वचन है। प्रकाशित वाक्य 2:5, प्रकाशित वाक्य 15, या मेरा मतलब 2 से लेकर 5 तक, ध्यान दें बस एक मिनट। अब हम कभी भी उनके पास वचन को लेकर नहीं गए, यही कारण है कि वे इस तरह से थे। हम कभी भी उनके पास वचन को लेकर नहीं गए, हमें इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए हम सारे लोगों को नहीं पकड़ सकेंगे, कलीसिया नहीं करेगी इस युग में जिसे सत्य मिला है, क्योंकि वे क्लेश में होकर जाएंगे। वे संत नहीं हैं जो बहुत पहले कलीसिया के युगों में मर गए, क्योंकि उसने कहा वे उस बड़े महासंकट में से बाहर आते हैं, और कलीसिया के घर जाने के बाद बड़ा महासंकट अभी भी आगे आने वाला है। ओह, वहाँ आप हैं। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। सुनना, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार का वचन सुना। अब आइए फिर से 15वें अध्याय के 2 पद पर आरंभ करें। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुन्दर देखा था, और जो उस पशु पर जयवंत हुए थे उसकी मूरत पर, उसकी छाप पर और उसके नाम के अंक पर, उन्हें उस कांच के समुन्दर के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। अब देखो, उन्होंने कभी भीतर प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उन्होंने वचन को सुना था, उन्होंने वचन को सुना था। अब सुनो, देखो उन्होंने किस तरह के सिद्धांत को सुना। देखें कि क्या यह अब कलीसिया के साथ तुलना करता है। और उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा का गीत गाया, अर्थात मूसा के उस पार जाने के बाद, और मेमने का गीत जो कहता है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। वो मेमना कौन है? स्वर सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हे संतों के राजा, तेरे मार्ग ठीक और सच्चे हैं। देखा कि उन्होंने उसे किस तरह से पहचाना, ना ही त्रिएकता में कोई तीसरा व्यक्ति, लेकिन प्रभु परमेश्वर स्वर शक्तिमान संतों के राजा। सुनना, क्या आप तैयार हैं? चौथा पद, हे प्रभु कौन तुझसे न डरेगा, बड़ा अक्षर LORD एलोहिम, और महिमा करें, कौन बचा है जो तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा। वे उसी जल के द्वारा धोए गए थे जिससे आप अब धोए जा रहे हो, वचन को सुनते हुए और यीशु मसीह के स्वर शक्तिमान होने का विश्वास और सामर्थ। यह आरंभ से ही संपूर्ण प्रकाशन है। पूरी बात इस प्रकाशन में लिपटी हुई है कि यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर हमारे बीच देहधारी हुआ। तेरा नाम महान और अद्भुत है, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम का आदर न करेगा। तू ही, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, क्योंकि सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि इसे स्वीकार न करने का क्या अर्थ है। आपके न्याय प्रकट किए जा रहे हैं। सो यहाँ हम खड़े हैं, हम अभी धोए गए हैं, हम महासंकट काल में से होकर आने के बाद जल के द्वारा धोए जा रहे हैं। हमने आपके लिए अपना पक्ष रखा है और हमने आप पर विश्वास किया है, और अब हम कांच के समुन्दर पर खड़े हैं, और हम आपके पवित्र आत्मा के प्रतिबिंब के नाई आपका आदर और महिमा करते हैं, और तेरे धूपदान सच्चे हैं और तेरे न्याय सच्चे हैं। ओ प्रभु, हम उस बात पर एक सप्ताह बने रह सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आइए अब ठीक यहाँ पर कुछ चित्रित करते हैं। बस एक मिनट, मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसे मैं चित्रित करना चाहता हूँ। अब आइए, क्यों न हम उसे ठीक वहीं ले जाएं जहाँ हम हैं। अब यदि हम ध्यान दें तो यहाँ एक बड़ी तस्वीर है। अब यहाँ परम पवित्र स्थान है, तो ठीक है, यहाँ पवित्र स्थान है, और यहाँ पहला है। वहाँ पर आने से पहले ये समुन्द्र है, तो ठीक है। अब ध्यान दें, हम परमेश्वर के पास कैसे पहुँचते हैं? विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यही है जो युग के संदेश वाह के अंदर परम पवित्र स्थान से प्रतिबिंबित हो रहा है। वापस अंदर, और वह सुलेमान के मंदिर में यह प्रतिबिंब को देता है। उन धूपदानों ने उसके उजालों को उस पीतल के होद में प्रतिबिंबित किया। तो यहाँ कलीसिया युग का दूत उस जल में प्रतिबिंबित कर रहा है वो व्यक्ति जो यहाँ पर है, उसकी दया को, उसके वचन को, उसके न्याय को, उसके नाम को प्रतिबिंब कर रहा है। यहाँ सब कुछ प्रतिबिंबित होता है जहाँ आप इसे विश्वास करने के द्वारा अलग हुए हैं। क्या आपने इसे समझा? ध्यान दें कि यह यहाँ पर कितना सुंदर है। हम उस दिन इस पर बात कर रहे थे। यहाँ देखें, यहाँ इस तरह से धर्मी ठहराया जाता है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। तो ठीक है, दूसरा स्थान धोए जाने के बाद पवित्रीकरण, और फिर पवित्र आत्मा से भरा जाना। धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने इसे देखा, उसका संदेश कैसा था? सुनने के द्वारा धर्मीकरण पवित्रीकरण वो है जो आप करते हैं, और उसके संबंध में आपने उसकी सराहना करते हुए जो कुछ किया, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मोहर बंद किया। अब आप मेरे बैप्टिस्ट भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने के अलावा और क्या कर सकता था, और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यही है सब जो वो कर सकता था। ठीक यहाँ उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को स्वीकार करने के लिए उसे खतने की मोहर को देकर उस पर मोहर लगाई। यह दिखा रहा है कि परमेश्वर उसके विश्वास को स्वीकार किया। और यदि आप परमेश्वर में विश्वास का दावा करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा कभी भी मोहर नहीं किए गए हैं, Ephesians 4:30, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, Ephesians 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिसके द्वारा तुम पर मोहर लगाई गई है। और आपको तब तक मोहर नहीं किया जाता है जब तक आप पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। ये कब तक रहेगा? क्या अगली बेदारी होने तक, हमारे छुटकारे तक, छुटकारे के दिन तक? इससे अलग होने का कोई जरिया नहीं है। आप इससे अलग नहीं हो सकते क्योंकि यह आपसे अलग नहीं होगा, समझे? क्योंकि तुम्हें छुटकारे के दिन तक तुम पर मोहर लगाई गई है। वहाँ ना कोई भविष्य, ना ही कोई वर्तमान, संकट, भूख, प्यास, मृत्यु या कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकता है जो मसीह में है। पौलुस ने कहा, मैं इसके लिए पूरी तरह से यकीन करता हूँ। आप वहाँ हो, आप वहाँ हैं, आपको आपके छुटकारे के दिन तक मोहर किया गया है। ध्यान दे, जो फिर से पिछले रविवार तक लाएगा। क्या मेरे पास समय है? मैं बस देखो, इसे देखना, आत्मा, आत्मा, प्राण और शरीर। तो ठीक है, देखो, शरीर, प्राण, आत्मा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ आपके लिए कुछ तो बनाऊंगा। अब मैं यहाँ कुछ तो चित्रित करने जा रहा हूँ। मुझे पिछले रविवार को इसे चित्रित करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने इसे पीले कागज के इस टुकड़े पर खुद यहाँ पर चित्रित किया है। मैं ऐसा चाहता हूँ जिससे कि आप इसे चिन्हित कर सकें और आप देख सकें कि मेरा क्या मतलब है। अब आप अपनी कलम को उठा लें। अब यह शरीर है और यह प्राण है और यह बड़ा अक्षर SPIRIT, आत्मा, पवित्र आत्मा है। तो ठीक है, अब यही है, हम इसी के बने हुए हैं। यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, यहाँ वेदी, पवित्र स्थान, और यहाँ समुन्दर, यही है जहाँ आप वचन को सुनते हैं। विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से। अलगाव, अलगाव का समुन्दर, अलगाव करने वाला समुन्दर। अब इस पर ध्यान दें। अब यहाँ आने के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार है और यही है, आपको पहले यहाँ आना होगा। क्या यह सही है? अब मैं सोचता हूँ मेरे पास जगह होती, मैं यहाँ डाल देता। वो कुवारियाँ जब वो विवाह का बोझ, एक और देखें कि यह मनुष्य यहाँ विवाह के बोझ में कैसे आया, और वह किसी और रास्ते से आया, यहाँ द्वार था। यीशु ने कहा, मैं द्वार हूँ, और यह विवाह की मेज यहाँ रखी हुई थी और चारों ओर लोग बैठे हुए थे, और यहाँ ऊपर एक मनुष्य था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। और जब राजा भीतर आया तो उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आए मेरे मित्र, तुम यहाँ कभी किस तरह से पहुँचे? इससे पता चला कि वह इस द्वार से नहीं आया, वह एक खिड़की से अंदर गया, या पीछे के रास्ते से आया, या किसी मत सिद्धांत या संप्रदाय के जरिए से वह द्वार से नहीं आया था। क्योंकि पुराने पूर्वी देश में उनके पास अब भी वही चीज होती है, जिस दूल्हे का विवाह होने वाला होता है वह निमंत्रण को देता है और उसके द्वारा आमंत्रित हर एक व्यक्ति को वस्त्र प्रदान किया जाता है। ओह, जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा हृदय किस तरह से गोल गोल और गोल गोल घूमता है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे पहले निमंत्रण नहीं देता, और वे सब जिसे पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। हमें कैसे बुलाया गया? जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे नाम मेमने के जीवन की किताब में डाले गए थे, उस उजाले को देखने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए, उसमें चलने के लिए। हमारे नाम जब मेमना घात किया गया था उसी समय किताब में डाल दिए गए थे जब मेमने का नाम वहाँ डाला गया था। बाइबल हम इसे थोड़ी देर बाद ले लेंगे। इसने कहा उसने धरती पर सबको भरमाया जिसके नाम मेमने के जीवन की किताब में जगत की बुनियाद के समय से लेकर नहीं लिखे गए हैं। ध्यान दें, तब यदि वह दूल्हा स्वयं जब वह द्वार पर खड़ा था और वह व्यक्ति निमंत्रण लेकर आया और कहा ये रहा, धन्यवाद, उसने निमंत्रण को लिया, उसे यहाँ रख दिया और उस पर एक वस्त्र को डाल दिया जिससे कि वे सभी एक जैसे दिखें, मैं ये पसंद करता हूँ। देखा, परमेश्वर की सामर्थ में, जीवित परमेश्वर की कलीसिया में, धनी निर्धन बंधुआ आजाद काला गोरा बूरा पीला सभी एक जैसे दिखते हैं क्योंकि वे उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के वस्त्र को पहने हुए होते हैं। देखा, अब ये दिखाता है कि वो द्वार से नहीं आया था। अब यहाँ ध्यान दें, ओह यदि एक मनुष्य ने परम पवित्र स्थान में जाने की कोशिश की, कोई तो कोई बाइबल का शिक्षक मुझे बताए, यदि कोई इस परम पवित्र स्थान के अंदर जाने लगता है यहाँ से होकर आए बिना तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हारून के बेटे ने एक दिन अजीब सी आग को लिया, कुछ सांप्रदायिक आग को, जबकि यह सांप्रदायिक आग नहीं थी और वे द्वार पर मर गए। क्या यह सही है या ये एली के पुत्र थे? मैं सोचता हूँ एली के पुत्रों ने उन्हें अंदर ले लिया जब इसने हारून के पुत्रों का प्रतिनिधित्व किया जो याजक था। अब देह के अंदर आने का एक ही तरीका है, ये शरीर कैसे नियंत्रित होता है। अब ध्यान से देखें और आप अपने कलम को तैयार रखें। यहाँ इस तरफ वो फाटक है जो देह के अंदर जाता है, 1 2 3 4 5। अब आपने इसे चित्रित कर लिया। अब यहाँ पर पहला फाटक है देखना, सूंघना, सुनना और चखना, और स्पर्श करना या महसूस करना या दोनों में से एक इसे लिखना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही देह की चेतनाएं हैं। क्या यह सही है? कितने लोग ये जानते हैं? 6 चेतनाएं देह को नियंत्रित करती हैं। अब आपके पास एक प्राण है, आपके इसमें से होकर जाने के बाद चेतनाएं बाहर है, यह बाहरी पद्धति है। अब यहाँ प्राण में 1 2 3 4 5 5 गुण हैं। अब आप उन्हें लिखना चाहते हैं। पहली है कल्पना, कल्पना। दूसरा एक विवेक है। और तीसरा एक याददाश्त है, और चौथा एक तर्क है, और पांचवा एक है स्नेह। अब क्या आपने इन सबको समझ लिया? यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो मुझे अभी बताएं। आपने उन सबको लिख कर ले लिया, देखना, चखना, महसूस करना, सूंघना और सुनना। शरीर, यही शरीर के लिए खुला है। प्राण, कल्पना, विवेक, याददाश्त, तर्क और स्नेह है, ये चेतनाएं हैं या गुण हैं, जैसे प्राण की चेतनाएं। और प्राण उस आत्मा का स्वभाव है, यही जो भीतर है, क्योंकि प्राण केवल आपके अंदर जो कुछ है बाहर उसका वातावरण बनाता है। ये पवित्रीकरण के स्थान को लेता है जो प्राण है, वहाँ उसी वर्ग में रख देता है। तो ठीक है, अब हर एक सबने लिख कर ले लिया तो ठीक है। अब इस द्वार के लिए केवल एक द्वार है जिसे कहा जाता है खुद की इच्छा। आप वहाँ के मालिक होते हैं जो वहाँ चलता है, और ये क्या करता है, ये क्या है? अवश्य ही शरीर को धोया जाना है, होद में पवित्रीकरण, यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ यहाँ, और ये फिर से परमेश्वर का न्याय आसन बन जाता है जहाँ परमेश्वर आपके हृदय में बैठता है। और यदि आप कुछ गलत करते हैं, कहते हैं ओह प्रभु मैंने गलत किया, कुछ लोग कहते हैं यह मुझे दोषी नहीं ठहराता कि मैं छोटे बालों को रखूं, जो महिलाएं हैं, यह मुझे मैनिक्योर या मेकअप या जो कुछ भी है इसे करने के लिए दोषी नहीं ठहराता है, यह मुझे नाचने को जाने के लिए दोषी नहीं ठहराता है, यह मुझे थोड़ा सफेद झूठ बोलने के लिए दोषी नहीं ठहराता है, यह मेरी ताश के पत्तों की पार्टी में ताश खेलने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता है। आप जानते हो क्यों? आपके पास दोषी ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे विवेक को ठेस नहीं पहुंचाता। आपके पास विवेक नहीं है, जैसे सांप के पास कमर हो, तो आप बस, आपके पास कोई विवेक नहीं है। आपको ठेस पहुंचाने के लिए वहां कुछ भी नहीं है, आप संसार के हो। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि यीशु मसीह को यहां आने दें और एक बार इसे करने का प्रयास करने दें। भाई, आपको इतना दोषी ठहराया जाएगा कि आप पीछे हटकर और उस चीज से अपने सिर को हिलाएंगे, ठीक उतना ही निश्चित रूप से जितना मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि वो पवित्र है। सुनना, मैं वचन का हवाला दे रहा हूँ। यदि तुम उन चीजों से प्रेम करते हो जो संसार है, संसार की चीजें हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। यह कैसे किया? खुद की इच्छा। आप इसे क्यों खुद की इच्छा कहकर बुलाते हैं भाई ब्रैनम? क्योंकि ये आदम और हवा की तरह अदन की वाटिका में एक पुरुष और स्त्री को फिर से वापस रख देता है। किस बात पर? दो पेड़, खुद की इच्छा, यह एक मृत्यु है, यह एक जीवन है। खुद की इच्छा अनैतिक, स्वतंत्र नैतिक अधिकार। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और हवा को ठीक यहाँ स्वतंत्र नैतिक अधिकार के स्थान में रखा। वह आपको उसी स्थान पर रखता है और केवल इसी तरह से आप इस चीज को यहाँ निर्धारित कर सकते हैं। ये है आपकी खुद की इच्छा। हालेलुया! आपकी खुद की इच्छा, आपके पास परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा होनी है। परमेश्वर की इच्छा को अंदर लेने के लिए आपको अपनी इच्छा को निकालना होगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जो हृदय की ओर ले जाता है। ओह, आप कलीसिया में जुड़ सकते हैं, आप जो बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन हैं, और आप मेथोडिस्ट और पिलग्रिम होलीनेस पवित्रीकरण तक आ सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की इच्छा को लेना होगा। खुद की इच्छा पवित्र आत्मा को यहाँ पर अंदर आने दें ताकि इसे प्रकट करे। ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे, वे जो विश्वास करते हैं मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाओं में बोलेंगे, वे बीमारों पर हाथों को रखेंगे या घातक चीजों को उठा लेंगे और इत्यादि। ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जिन्होंने उनकी इच्छा को मेरी इच्छा होने दिया है, और जो काम मैं करता हूँ वे भी करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे नहीं चुकेंगे। वहाँ एक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की इच्छा है। आपने समझ लिया मेरा क्या अर्थ है? यहाँ देखो, पवित्र स्थान उस होद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वे उजियाले हैं, धूपदान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उनमें से हर एक के पास एक उजियाला है। उन्हें उनका उजियाला कहाँ से मिल रहा है? उनका उजियाला कहाँ प्रतिबिंब होता है? ये कहाँ पर प्रतिबिंबित होता है? यह यहाँ किसी संप्रदाय पर एक कोने में प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है, यह यहाँ पर पीछे वचन को प्रतिबिंबित कर रहा है। यह अलगाव का जल है, पश्चाताप और पापों की क्षमा के लिए। लूका 24:49, यरूशलेम से आरंभ करके सारे राष्ट्रों में उसके नाम से अवश्य ही प्रचार किया जाना चाहिए। किस तरह से यरूशलेम में पश्चाताप और पापों की क्षमा की शिक्षा दी गई थी? कितनी दूर इसे सारे संसार में जाना है? तुम पश्चाताप करो, पत्रस ने कहा प्रेरितों के काम 2:38 में, और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। यह संदेश सारे जगत में जाना है और उसके बाद अंत आ जाएगा। तब अंत हो जाएगा जब यह संदेश सारे संसार भर में चला जाएगा। कैसे? ये धूपदान यहाँ पर उजाले को प्रतिबिंब कर रहे हैं। कुछ मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल संप्रदाय पर? खैर, निश्चित रूप से नहीं। यह यहाँ प्रतिबिंब होते हैं। मैं हूँ कि नहीं, ना ही मैं था, ना ही तीन या चार अलग अलग व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ अपने आप को स्थापित करते हुए उन हर एक कलीसियाओं में से प्रतिबिंबित कर रहा है। वहाँ पीछे मुड़कर देखें और देखें कि उन्होंने क्या किया। हम अभी इतिहास में से होते हुए आए हैं। उन्होंने उसे वैसा ही प्रतिबिंबित किया जैसा वो था, जैसा वह है और जैसा वह हमेशा रहेगा। वह जो था, जैसे ही यूहन्ना को इसकी पहली झलक मिली, उसने कहा वह जो था, जो है और आने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर की रचना, अल्फा ओमेगा आदि और अंत। यही सच्चा उजियाला है जिसे प्रतिबिंबित किया जाना है। क्या आप इसे देखते हैं? आमीन। 12 बजे के बाद और मेरे पास, सुनना, आइए अब जल्दी करें ताकि आप इसकी नकल उतार कर बना सकें। मैं बस पसंद नहीं करता कि आपको बहुत देर तक रोके रखूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं आपसे फिर से कब मिलूंगा, समझे? और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। मित्रों, यह जीवन है। अब देखो, मेरा मतलब यह नहीं है क्योंकि इसे मैं कह रहा हूँ, यदि मैं प्रतिबिंबित कर रहा हूँ उस प्रकार, तो मैं, आपने मेरे हृदय को गलत समझा है। मैं प्रतिबिंबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ओह, यह तो बस आप कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने उजाले को नहीं पाया है, तो मैं आपको यहाँ पर एक की ओर संकेत करने की कोशिश कर रहा हूँ, न ही यहाँ एक जो पुलपिट पर है, वो एक जो वहाँ उस सिंहासन पर है, और वह सिंहासन अवश्य ही आपके हृदय में होना चाहिए। तब आप ठीक उस चीज को देखोगे जैसा इसने यहाँ प्रतिबिंबित किया है। यह यहाँ ऊपर क्या है, ये इसे प्रतिबिंबित कर रहा है, और यह ये है वो वचन, वचन के जल के द्वारा धोए गए, वचन के द्वारा धोए गए अलगाव के जल में से होते हुए, संसार की चीजों से, वचन के द्वारा। वचन कहता है कि वो कल और युगानुयुग एक सा है। यह ऐसा नहीं कहता वो पेंटिकॉस्ट युग में ऐसा है, वहाँ पीछे चेलों के समय में और फिर अगले युग में वो बदल गया। नहीं, वो एक सा है। देखा, आप इसे और कुछ भी नहीं कह सकते। हम उन बातों में से एक बात पर घंटों तक बने रह सकते थे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अब पकड़ रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप इसे पकड़ लेंगे, मेरा यही विश्वास है। तो ठीक है श्रीमान, अब ये क्या है? धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, प्राण, शरीर, आत्मा, सब एक समान। अब डीवर्ड वचन को प्रतिबिंबित कर रहा है। सच्चा वचन किसे प्रतिबिंब करता है? यह डीवर्ड क्या होगा यदि यह इस तेजोमय महिमा से उसके प्रतिबिंब को प्राप्त कर रहा था? यह तेजोमय महिमा को प्रतिबिंब करेगा। क्या ये सही है? यदि आपको आपका उजियाला धर्म विद्यालय में मिला है, आप धर्म विद्यालय को प्रतिबिंबित करेंगे। आपको ये मेथोडिस्ट धर्म विद्यालय में मिला है, आप मेथोडिस्ट वाद को प्रतिबिंबित करेंगे। आप प्रतिबिंबित करते हैं। यदि आपने इसे पेंटिकॉस्टल धर्म विद्यालय में पाया है, तो आप पेंटिकॉस्टल वाद को प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन यदि आपने इसे परमेश्वर की महिमा में पाया है, जलती हुई झाड़ी के द्वारा, क्योंकि जब मूसा उसकी उपस्थिति में से बाहर आया, तो उसे अपने चेहरे के ऊपर कुछ डालना था, इसलिए लोग उसे यहाँ तक देख भी नहीं सकते थे। क्या यह सही है? वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह एक तेज हवा के दिन पर एक घर को आग में बुझाने की कोशिश करने जैसा था। इसमें से आग बुझाना और तेज हवा के दिन घर में आग लग जाती है। ओह, जितना अधिक उन्होंने इसे फूका, उतना ही ये तेज होता गया, क्योंकि आप उसे रोक नहीं सकते। सीधे सीधे जब उन्होंने उसे महासभा के न्यायालय के सामने रखा, तो बाइबल ने कहा वह वहाँ खड़ा हुआ एक दूत की तरह दिख रहा था। अब मैं नहीं सोचता एक दूत का बस अभिप्राय ऐसा है कि वो कोई एक जीव था जो वहाँ खड़ा था, लेकिन एक दूत ठीक ठीक जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वैसे किसी भी दूत को कलीसिया युग के संदेश वाहक को वापस पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती है और जाकर ये देखे कि धर्म विद्यालय क्या सोचते हैं। वो जानता है कि परमेश्वर ने अपनी बाइबल में क्या कहा है, और वह सामर्थ जो यह साबित करने के लिए प्रतिबिंबित हो रही है कि वो कल, आज और हमेशा के लिए एक सा है, वो डरता नहीं है। वह बिल्कुल वही बता रहा है जो वो जानता है कि यह सत्य है, और परमेश्वर ठीक वहाँ खड़ा होता है और वहाँ इसका समर्थन करता है, उसी प्रकार के चिन्हों और अद्भुत कार्यों के साथ और उसी वचन के साथ। यही एक दूत है। स्तिफनुस वहाँ खड़ा था, उसने कहा मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कहा तुम हटीले और हृदय और कानों के खतना रहित लोगों, तुम हमेशा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे पूर्व पिताओं ने किया वैसा ही तुम भी करते हो। कहा तुम्हारे पूर्व पिताओं में से किसने भविष्यवक्ताओं को मारकर और फिर उनकी कब्रें नहीं बनाई? तुम जो संप्रदाय हो, तुम में से किसने उसी काम को नहीं किया? देखा, सफेद बड़ी दीवारों वाले किले और मुर्दा घर और चीजों को यहाँ पर बनाते हो और फिर परमेश्वर के बारे में बात करते हो। तुम वही वो एक हो जिसने उसे मुर्दा घर में डाला था। तुम वही वो एक हो जिसने उसे कब्र में डाला था। बिल्कुल वही वो चीज है जिसने उसे वहाँ पहले कब्र में डाला था, जो एक बड़ा सफेद किला बंद चर्च था। वो संप्रदाय, फरीसी और सदूकी लोग जो उसे वहाँ डालते हैं और फिर उसके लिए एक स्मारक बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे आपको बताने दो कि मसीह एक जीवित अस्तित्व है। वह कुछ तो ऐसा नहीं है कि मरा हुआ है, वह कुछ ऐसा है जो मरे हुए में से जी उठा और हमेशा के लिए जीवित है। ओ भाई, यकीनन ये क्या करता है? यह किसे प्रतिबिंब करता है? यह यहाँ से प्रतिबिंबित हो रहा है, यह क्या होगा? यह होगा उसका सच्चा प्रतिबिंब क्या है? तब वो पहली चीज जो ये प्रतिबिंबित करेगा, यह उसका नाम होगा। क्या यह सही है? यह उसके नाम को प्रतिबिंबित करेगा। अगली चीज प्रतिबिंब करती है जो उसकी सामर्थ होगी। देखा मेरा क्या मतलब है? यह वो सब कुछ प्रतिबिंब करेगा जो वो है। तो यदि यह इस युग को यहाँ प्रतिबिंबित कर रहा है जो वो था, फिर तो वो एक सा है। महिमा महिमा, यह क्या है? यह उसे प्रतिबिंबित कर रहा है जैसे वो था, जैसा वो है, जैसा वो हमेशा रहेगा, क्योंकि यह सीधे परमेश्वर के सिंहासन से आ रहा है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वही परमेश्वर, वही सामर्थ, वही महिमा, वही हर एक चीज, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ओ भाई, आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस छठवें पद के शेष भाग को यहाँ पर लेते हैं, उस चौथे अध्याय के। मैंने उस पर यहाँ कुछ समालोचना को लिखा है और मैं जल्दी करना चाहता हूँ और इसे ले लूंगा यदि मैं कर सकता हूँ। अब वो बाकी का इस छोड़ने के बाद, इस पद को छोड़ने के बाद, यह बस ऐसे ही बस घूमता रहता है बताते हुए कि उन्होंने क्या किया। आइए देखते हैं कि क्या हम वहाँ इसे ले सकते हैं। कांच, कांच का समुद्र। अब हम जानते हैं कि यह क्या था। सिंहासन के बीच में चार जीवित प्राणी, वे पशु। अब कितने लोगों के पास बाइबल का फिर से छपा हुआ संस्करण है? आपके फिर से छपे हुए संस्करण में यह कहता है जीवित प्राणी। तो ठीक है, मैंने सोचा कि कैसे इस किंग जेम्स ने यहाँ जीवित कहा जो चार पशु थे। खैर, मैंने एक यूनानी शब्दकोश को लिया और वापस बाइबल शब्दकोश में गया और पता लगाया कि इसका क्या अर्थ है। अब यहाँ है जो यह कहता है। अब और ध्यान से देखना, यहाँ जिस शब्द का अनुवाद किया गया है, अब आप इसे चिन्हित कर लें जिससे कि आप इसे देख भी सकते हैं सुनिश्चित करने के लिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ उसे चिन्हित कर लें, और यदि आप कर सकते हैं और चाहते हैं तो ठीक है। फिर से छपा हुआ संस्करण इसमें जीवित प्राणी कहता है। अब देखें, और वहाँ चार पशु थे जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और ये आगे बढ़ता है और इसका वर्णन करता है। पशु, जिस पर हम एक मिनट में जाएंगे। अब यहाँ पशु ने प्रतिनिधित्व किया। क्या आपने आपकी बाइबल में पशु के ऊपर किनारे पर लिखी हुई बातों को पढ़ा है? यदि आपके पास ये है, किनारे पर लिखा होता है, उसे पढ़ें। मैंने देखा कि डॉक्टर स्कॉटफील्ड बाइबल ने यहाँ इसे उसके बाइबल में चिन्हित किया है। उन पशुओं का मतलब है, वो यहाँ पर लिखता है, कहता है जीवित प्राणी। ओ प्रभु, अब देखो वहाँ यूनानी शब्द जेड दो बार ओ एम है, या जेड दो बार ओ एन है। यह है जेड दो बार ओ एन है। अब यूनानी में इसे जून कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एक प्राणी। अब ये ऐसा नहीं है। यदि आप इसे अब पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। मैं इसे पढ़ने जा रहा था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। प्रकाशित वाक्य 11, 13 और 17 को लिखकर ले लें। अब जहाँ पर पशु है, वहाँ प्रकाशित वाक्य 11, 13 और 17 अध्याय में ये उसी प्रकार से पशु कहलाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पशु, इसका अनुवाद है टी एच ई आर आई ओ एन, जंगली पशु। वो शब्द, यूनानी शब्द थेरियन, जिसका अर्थ होता है एक जंगली अदम्य पशु। थेरियन, जिसका अर्थ है एक जंगली अनियंत्रित पशु। लेकिन जून का अर्थ है एक प्राणी। देखो, चार जीवित जून प्राणी, ना ही वे पशु जंगली हैं, थेरियन, लेकिन जून जीवित प्राणी, और थेरियन जंगली होता है, अनियंत्रित खूंखार। दूसरे शब्दों में, यदि आप 11वां अध्याय देखेंगे, रोम का पशु, 13वां अध्याय संयुक्त राज्य, 17वां अध्याय संयुक्त राज्य अमेरिका, और रोम दोनों कैथोलिक बाद के साथ संगठित सांप्रदायिक कलीसियाएं उन्हें एक अपरिवर्तित सुसमाचार के लिए अनियंत्रित बनाता है। अनियंत्रित, परमेश्वर धन्य हो, हम बड़ी मेथोडिस्ट कलीसिया, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल संप्रदाय से आए हैं। हम जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई नेतृत्व नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं बताएगा। आप वहाँ हो, अनियंत्रित, अपरिवर्तित, स्वाभाविक दया के बिना है, क्षमा रहित, झूठे, दोष लगाने वाले, असहमी, और जो भले हैं उनके बैरी भेज तो धरते हैं। अब इसमें से होकर जाएं और मुझे बस उस बात को अलग अलग करना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं सो या किसी भी तरह से इस टेप पर जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसा करने का समय नहीं है। अब आप समझते हैं, कितने समझते हैं, कहें आमीन। देखो ये जो है जून क्या है, दो बार जेड ओ एन क्या है, जीवित प्राणी, इसका उच्चारण जून किया जा सकता है, जेड दो बार ओ एन, आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे, जून जून मैं कह सकता हूँ। और थेरियन है, टी एच ई आर आई ओ एन, थेरियन, देखो तो इसका अर्थ है कि अनियंत्रित पशु, जंगली, खूंखार, यही है वो पशु। आप अपना अपनी यूनानी शब्दकोश को ले और ठीक वापस जाकर और देखें कि क्या यह वही शब्द नहीं है। आप वहाँ इसमें खोजें और देखें, अपनी यूनानी पाठ्य पुस्तक को लें, अपनी एम्फेटिक डायलॉग के अनुवाद को लें। अब इसमें देखें कि क्या यह सच नहीं है, यह सच है, इसका अर्थ एक अनियंत्रित पशु है, प्रकाशित वाक्य 11, 13 और 17 में। और यहाँ प्रकाशित वाक्य 4 में इसका अर्थ है एक जीवित प्राणी, न ही पशु, लेकिन इसे पशु कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ 1:8 में वही बात है, 1 से लेकर 28 ये है, हो सकता है इसे ले लेंगे एक मिनट में, तो ठीक है। अनियंत्रित, अपरिवर्तित, जंगली पशु, अनियंत्रित, लेकिन ये जीवित प्राणी है, वे क्या है, वे दूत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या, आइए हम प्रकाशित वाक्य 5 में पढ़ें, ठीक पूरे पन्ने पर, प्रकाशित वाक्य 5:11। और मैंने देखा और बहुत से दूतों की आवाज को सुना, वे दूत बहुवचन लगभग सिंहासन के चारों ओर और एक जोड़ को देता है, और पशु और प्राचीन, देखो और एक और को जोड़ता है, देखा, वे दूत नहीं थे, न ही वे प्राचीन थे, वे जीवित प्राणी थे उस सिंहासन पर। ओह, क्या आप इसे पसंद नहीं करते हैं, जीवित प्राणी, वे दूत नहीं हैं, क्योंकि ये ठीक यह इसे साबित करता है। देखो, मैंने देखा और दूतों की आवाज को सुना, सिंहासन के चारों ओर और पशुओं और प्राचीनों को। अब यहाँ 3 अलग अलग वर्ग हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब आप यहाँ सभी ने इस क्रम को लिख लिया होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहाँ इसके 3 अलग अलग वर्ग हैं, 3 अलग अलग प्रजातियाँ। अब देखना, सिंहासन के चारों ओर, यहाँ पर सिंहासन है। अब इस सिंहासन पर पहले 4 जीवित प्राणी है, उसके बाहर 24, बस इसी तरह से प्राचीन है सिंहासन पर बैठे हुए, उनके सिंहासन पर उनके छोटे छोटे सिंहासन है, और इसके चारों ओर, सिंहासन के चारों ओर दूतों का बड़ा समूह है। समझे मेरा क्या अर्थ है, वे हर एक दूसरे से भिन्न है, एक उस दूसरे एक से भिन्न है। वहाँ वे दूत हैं, यहाँ प्राचीन हैं और यहाँ जीवित प्राणी हैं। अब आइए इसे कुछ मिनट के लिए न छोड़ें, आइए इसे कुछ मिनट के लिए पकड़े रखेंगे। जीवित प्राणी, यदि वे दूत नहीं हैं, तो वे क्या हैं? वे छुड़ाए गए मनुष्य नहीं हैं, वे क्या हैं? क्या आप जानना चाहेंगे? यहाँ पर मेरा अनुवाद है, मैं आशा करता हूँ कि यह सही है, मुझे विश्वास है कि ऐसा ही है। वे परमेश्वर के पहरा देने वाले हैं, उसके सिंहासन के। अब हम इसे जरा सा इसमें से मिटाने जा रहे हैं। अब आप देखिए, वे न तो दूत हैं और न ही मनुष्य, वे न ही जंगली पशु हैं, वे प्राणी हैं, जीवित प्राणी। अब यहाँ परमेश्वर का सिंहासन है और ये उसके रक्षक हैं। अब आइए उसमें से थोड़ा सा पढ़ें और कुछ ही मिनटों में देखेंगे। देखो, वे परमेश्वर के दूत या परमेश्वर के पहरा देने वाले हैं, उसके सिंहासन के, और वे, आइए लेंगे बस एक मिनट में, फिर से आइए हम यज्ञ पर वापस जाएं। मैंने इन बातों को यहाँ लिखकर रखा है और मैं बस उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना पसंद नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि यह एक, आइए यज्ञ के पहले अध्याय को वापस लेंगे और आइए 12वें से 17वें पद के साथ आरंभ करेंगे, बस एक मिनट। और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। अब हम कुछ ही मिनटों में देखने जा रहे हैं और आपको यह 7वां पद यहाँ याद होगा। अब देखो वे यहाँ पर कैसे दिखे, प्रकाशित वाक्य के उसी अध्याय के 7वें पद में। 4 और पहला पशु सिंह की नाई था, दूसरा पशु एक बछड़े की नाई था, तीसरा पशु एक चेहरा था एक मनुष्य का, और चौथा पशु जैसा उड़ता हुआ उकाब, चौथा पशु उड़ते हुए उकाब की नाई था। अब जब यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसने वही देखा जो यूहन्ना ने देखा था। आपको याद है कि पिछले रविवार को हमने किस तरह से परमेश्वर की महिमा पर लिया था और उस तस्वीर को लिया जहां उसने इसे हमारे साथ लिया था। आपको ये याद है, परमेश्वर की महिमा वही चीज जो यहेजकेल ने देखा, वही चीज जो यूहन्ना ने देखा, वो आज यहाँ पर है। यहेजकेल के समय में यीशु मसीह को एक सा बनाता है, वही चीज यहाँ धरती पर थी। वही परमेश्वर जो आज हमारे साथ है, वही कल, आज और हमेशा एक सा है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। प्राण, शरीर और आत्मा का प्रवेश द्वार, पीतल सा समुद्र, वचन हमारे प्राण को पवित्र करने वाला और पवित्र आत्मा से भरने वाला, वही चीज देखो, बिल्कुल वही। अब इसे देखें तो ठीक है, और जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते। अब वे जाते और जब वे गए तब वे न मुड़े, वे मुड़ नहीं सके। यदि वे इस ओर जाते थे तो ये एक मनुष्य के जैसे जा रहे थे, इस ओर जाते तो एक उकाब के जैसे जा रहे थे, इस ओर जा रहे थे तो बैल के जैसे जा रहे थे, इस ओर जा रहे थे तो वे सिंह के जैसे जा रहे थे। वे पीछे की ओर नहीं जा सकते। जहाँ वे गए उन्हें हर कहीं आगे की ओर जाना था, पशुओं में से हर एक को। अब बाइबल में पशु का क्या अर्थ है? सामर्थ, तो ठीक है, मतलब एक सामर्थ। अब और जीवित प्राणियों का रूप अंगारों और जलते हुए पतीलों के समान दिखाई देते थे, और जैसे वह आग जीवित प्राणियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देता रहा, और आग तेज थी और उस आग से प्रकाश निकलता था। यही परमेश्वर है, आग से निकलता प्रकाश। अब ना ही जगत संबंधी प्रकाश, वो अनंत प्रकाश। और जीवित प्राणी दौड़े और घूमे। आइए देखें, जीवित प्राणी दौड़कर और लौट आए और बिजली की चमक की नाई दिखाई दिए। अब जब मैं जीवित प्राणियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और उनके बनावट ऐसे फिरोजी रंग के से थे, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। भाई ब्रैनम, यहाँ पर यह किसका प्रतीक है? यह क्या है? इसका अर्थ है कि ये रक्षक परमेश्वर के संदूक। जब यहेजकेल ने उन्हें देखा तब वे पहिये पर गोल गोल घूमते हुए यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब यूहन्ना ने उन्हें देखा वे स्वर्ग में उनके सही स्थान के अंदर आ चुके थे। परमेश्वर का संदूक धरती पर था, पहियों पर गोल गोल घूमता हुआ। जब वे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, इसका अर्थ था कि यह यात्रा में था। वे इसे उस वहाँ जंगल में से होते हुए लेकर गए और वहाँ से होते हुए मंदिर और इत्यादि के अंदर ले गए, लेकिन अब इसे ग्रहण किया गया है क्योंकि कलीसिया का युग समाप्त हो गया है और इसे महिमा में ग्रहण किया गया है। देखा, यह अब स्वर्ग में स्थिर है, सारे दूत और इसके चारों ओर उनके साथ है। हम उन्हें उनके मुकुट उतारते हुए पाते हैं और उनके मुंह के बल गिरते हुए और उसे महिमा देते हुए। समझे, यह मंदिर संदूक के परमेश्वर के रक्षक थे। अब याद रखें, संदूक के परमेश्वर के रक्षक या दया के आसन के। अब याद रखना, कितनों को यूहन्ना ने कितनों को देखा? 4 को। उसने कितनों को देखा? उसने भी 4 को देखा, 4 जीवित प्राणियों को। अब देखो, उन दोनों ने एक ही दर्शन को देखा, और 4 पृथ्वी की संख्या है। क्या आप यह जानते थे? अब कितने लोग जानते हैं कि इससे पहले हम इसके अंदर जाएं, 4 एक धरती की संख्या है, निश्चय ही, जैसे 4 इब्रानी या एक पृथ्वी है, यह पृथ्वी की एक संख्या है, छुटकारे, छुटकारे की। अब इसे अपने मन में रखें, छुटकारा, क्योंकि मैं इस बात को कुछ ही मिनट में लेने जा रहा हूँ बहुत ही स्पष्ट रीति से। देखो, छुटकारा, अब वहाँ 3 इब्रानी बच्चे धधकते हुए भट्टी में थे, लेकिन चौथा एक आया, ये छुटकारा था। लाजरस तीन दिन तक कब्र में था, लेकिन जब चौथा आया तो वह छुड़ाया गया। चार परमेश्वर की संख्या है, छुटकारा। तो ये दिखाता है कि ये प्राणी धरती के विषय में अवश्य ही कुछ तो रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको बहुत भूख नहीं लगी है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी आत्मिक भूख अब स्वाभाविक भूख से थोड़ी ऊपर है। देखा तो ठीक है। अब ध्यान दें, उनके पास आंखें हैं, यहाँ येशकेल में, आगे और पीछे और भीतर। आइए अब इसे पढ़ते हैं, यहाँ पर नजर डालें। देखो, आप यहाँ पर देखें, मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने यहाँ से होकर बात की थी। वे पशु चार मुख, एक उकाब के जैसे, और पंख, आंखें ही आंखें, बाहर भीतर। यहाँ देखना, और वे चार पशु और उनमें से प्रत्येक के छह पंख उसके चारों ओर थे, और वे उड़ गए, और इत्यादि, और उसकी आंखें थी, बाहर, भीतर और पीछे की ओर। यह उनके बुद्धिमता के विषय बताते हैं। वे जानते थे कि जो था, जो है और जो आने वाला है, क्योंकि वे ठीक उस आसन पर थे, इतने निकट, यहाँ तक कि वे इंसान भी नहीं थे, मंदिर के रक्षक, या मंदिर के रक्षक नहीं, मंदिर के रक्षक 144,000, लेकिन यह दया आसन के रक्षक हैं, सियासन के रक्षक। वो सियासन जो ठीक परमेश्वर के पास ही में जीवित प्राणी है, परमेश्वर के बगल में वहाँ खड़े हुए हैं। उनकी बुद्धिमता, वे जानते हैं कि जो था, जो है, जो आने वाला है। उनके पास बाहर आंखें थी, दिखा रहा था कि वे क्या देख सकते थे, क्या आने वाला था। आंखें भीतर, अब हर एक चीज जानता है, और पीछे की तरफ आंखें, जो जानता था कि क्या था, जो है, जो आने वाला है। कलीसिया युगों में से प्रतिबिंबित हो रहा है वो जो था, जो है और आने वाला है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उन्हें अब पकड़े रहना। हम कुछ ही मिनटों में उस चीज को ब्लैक बोर्ड के जरिए से समझने जा रहे हैं। इस पर देखें, अब बस एक मिनट। उनकी बुद्धिमता को प्रकट करता है, और इसने दिखाया कि वे जानते थे, पता है, वे सारे भविष्य और वर्तमान और भूतकाल को जानते थे, और इसके बारे में सब कुछ पता था। और उनके वे थकान रहित थे, वे कभी भी थके नहीं। उनका मनुष्य से कुछ भी संबंध नहीं हो सकता, मनुष्य थक जाता है, लेकिन वे थकान रहित थे। उन्होंने गाया, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पवित्र पवित्र पवित्र, हर युग में से होते हुए सारे दिन और सारी रात पवित्र। आइए बस एक मिनट पीछे चलते हैं, आइए पीछे चलते हैं। मेरे मन में एक वचन आया है, यशाया 6। अब जल्दी से देखो, यशाया ने बिल्कुल ठीक उसी चीज को देखा। प्रभु का हर एक दर्शन यही है जो मैं कहता हूँ। यदि हमारे पास आज जो दर्शन है वे वास्तव में बाइबल के दर्शन नहीं है, तब वे गलत हैं। यदि वे प्रतिबिंबित करते हैं, या कोई भी प्रकाशन जो परमेश्वर कुछ भी दिखाता है इसके अलावा कि वह हमेशा से क्या था, तो यह एक गलत प्रकाशन है। सारी कलीसिया इसी पर बनी है। मती 17। आइए देखें, यशाया 6वां अध्याय। यह युवा भविष्यवक्ता उस भले राजा के हाथों पर झुका हुआ था, और उसने उसके लिए हर तरह के अच्छे वस्त्रों को लाया था, और वह एक भविष्यवक्ता था, और वह हर जगह साथ साथ गया। लेकिन एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, इसलिए उसे अपने लिए उपाय करना था, सो वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। इसलिए वो वहाँ से निकलना आरंभ करता है जहाँ पर राजा का स्थान था। फिर ऐसा करने के लिए, अच्छा बूढ़ा राजा एक भला पवित्र व्यक्ति था, परंतु वह बाहर निकला और देखा कि लोग कैसे जी रहे हैं, इसलिए वो मंदिर में चला गया। अब सुनना, जिस वर्ष वो उज्जिया राजा मरा, उसी वर्ष मैंने प्रभु को सिंहासन पर बैठा हुआ भी देखा, बहुत ही ऊंचे पर, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया महिमा। उसका घेरा क्या है? वो रहा दूत, वे जीव उसके घेरे जो उसके पीछे पीछे आए थे। घेरे के पीछे क्या आता है? देखा, उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया, और उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, और उन हर एक के पास छह छह पंख थे। दो पंखों के साथ वे अपने मुंह को ढापे थे, और दो के साथ अपने पाँव को, और दो से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके महिमा से भरपूर है। और जब पुकारने वाले की आवाज से देवरियों की नेवे डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। मेरे प्रभु, ओ प्रभु, यह उन दर्शनों को दर्शाता है कि उन पुरुषों में से प्रत्येक के दर्शन बिल्कुल एक से हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, वे थकते नहीं हैं, दिन और रात पवित्र 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 प्रभु के लिए। आइए अब बस एक मिनट पीछे जाते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने इन लोगों को सही लिया है। पहली बार जब इन रक्षकों का उल्लेख किया गया था, ये उत्पत्ति में है। अब याद रखें, जो कुछ भी हम प्रचार करते हैं, इसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आना है। जब भी आप सवाल को पूछना चाहते हैं, आकर मुझसे पूछें, समझे, ये अवश्य ही पूरी बाइबल में होना है, न ही बस इसका कुछ भाग, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलता है। वो जो उत्पत्ति में था, वो आज है, और वो युग के मध्य में था, वो हमेशा एक जैसा होता है। देखा, अब उत्पत्ति में जब ये करूब इसी तरह से मैं उन्हें देखता हूँ, मुझे ये पता लगाने के लिए पीछे जाना था कि वे आरंभ में क्या थे। आइए उत्पत्ति 3:24 की ओर जाएं। अब कुछ क्षण के लिए उत्पत्ति 3:24। आप इसे पसंद करते हैं तो ठीक है। अब आइए लगभग 22वें पद से आरंभ करें। मैं बस इसे पसंद करता हूँ, ये कुछ तो ऐसा है जिसे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा अतिरिक्त, लेकिन यह हो सकता है किसी दिन बहुत कुछ अच्छा करेगा। और प्रभु ने कहा, देख, पुरुष हम में से एक के समान हो गया है। अब मेरी प्रिय और बहुमूल्य और प्यारी बहनों, मुझे इसे इस तरह से रखने दें। यह मत सोचना कि मैं नारीत्व की उस वफादारी और शालीनता, बहुमूल्य रत्न के ऊपर एक निंदा को उछाल रहा हूँ। मैं यहाँ यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक महिला क्या है। कृपया करके और टेप पर आप महिलाएं जो इस टेप को सुन रही होंगी, मैं आपको तिरस्कार करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल एक प्रभु का सेवक हूँ ताकि प्रकाश को लाऊं। पृथ्वी पर सबसे गिरी हुई और अनैतिक और सबसे बुरी चीज एक महिला है जब वह बुरी होती है, और सबसे बहुमूल्य रत्न जो एक पुरुष के पास है उसके उद्धार के अलावा एक भली महिला है। और मैं उस गिरी हुई, अनैतिक, अपमानित के लिए बात कर रहा हूँ, और मैं आपको ठीक यहाँ दिखाने जा रहा हूँ जबकि हम इस पर हैं। बस आपको यह भी दिखा सकता है कि मैं क्यों, कि बाइबल स्त्रियों के लिए सिखाती है कि वो प्रचारक न बने, पास्टर, शिक्षक या कलीसिया में कुछ भी न बने। अब जरा से सुनना। और प्रभु ने कहा, देख, पुरुष हम में से एक बन गया है। अब उसने कभी नहीं कहा कि महिला एक बन गई है, पुरुष एक बन गया है, और भला और बुरा जानता है, महिला नहीं जानती, उसे भरमाया गया था। क्या आप इसे देखते हैं? अब पौलुस ने कहा, और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न अधिकार चलाए, लेकिन क्योंकि आदम को पहले बनाया था और फिर हवा को, और आदम नहीं भरमाया गया था लेकिन स्त्री को भरमाया गया था, इसलिए वो परमेश्वर में से एक नहीं बनी। वो कोई कभी फर्क को नहीं जानती थी, उसे भरमाया गया था। क्या आपने इसे समझा? यदि आप आमीन कहते हैं तो मैं। प्रभु ने कहा, देख, पुरुष हम में से एक बन गया है, भला और बुरा जानकर और जानकर, और अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर एक घूमने वाली ज्वाला में लहराती तलवार को भी नियुक्त कर दिया। चार पशुओं को देखें, वहाँ आप केवल चार रास्ते देख सकते हैं। देखो, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। इन करूबों के पास वाटिका के द्वार पर एक जलती हुई तलवार थी जीवन के वृक्ष के मार्ग को पहरा देने के लिए, क्योंकि यदि मनुष्य को कभी जीवन के वृक्ष की पकड़ मिल जाए तो वो हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। और इन करूबों को, जिनका पहले उल्लेख किया गया था, उन्हें वाटिका की पूर्वी फाटक पर रखा गया था जो चार दिशाएं जाती है। मुझे इसे उससे थोड़ा सा अलग बनाना चाहिए था। मैं परमेश्वर के क्रम को और इस तरह की चीजों को सही रूप से नहीं कर सकता, लेकिन मैं बस जिससे कि आप जान सके कि मेरा क्या मतलब है। वहाँ अदन की वाटिका है और ठीक यहाँ पर फाटक है, यहाँ पर खुलता है बाहर की तरफ खुलते हुए, और इस फाटक पर वे करूब थे, वे करूब। और याद रखें, यह नहीं कहता कि एक करूब, इसने कहा करूबो। वहाँ करूबो को किस बात के पहरे के लिए रखा गया था? जीवन के पेड़ के लिए। यही वो था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी, जीवन के वृक्ष के मार्ग की। मार्ग, मार्ग कौन है? यह कहाँ से प्रतिबिंब होता है? यहाँ पवित्र स्थान है, यहाँ वे कुरूब हैं। अब देखो, इन सबको नीचे रख दो। यहाँ पवित्र, पवित्र, यह परम पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान, यह पवित्र स्थान है, और यहाँ समुन्द्र है, और यहाँ जलते हुए दीवट है। साथ यही है जो यहाँ से प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देखा वे क्या प्रतिबिंबित कर रहे हैं? वे परमेश्वर की आग से जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा कर रहे हैं और प्रतिबिंबित कर रहे हैं। देखो, ये यहाँ प्रेस्बिटेरियन धर्म विद्यालय या पेंटिकॉस्टल धर्म विद्यालय से नहीं आ सकता है, इसे यहाँ से आना है। प्रकाश को प्रतिबिंब कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान दें, ये करूब जिन्हें यूहन्ना ने यहाँ देखा था, अवश्य ही वे जीवन के वृक्ष को पैरा रखने में रुचि रखते होंगे, इसलिए उन्हें अवश्य ही मनुष्य जाति में रुचि लेना है, या उत्पत्ति पढ़े। फिर से उत्पत्ति की ओर वापस जाते हुए, उन्होंने जीवन के वृक्ष की चौकसी रखा, उसकी रक्षा की, जीवन के मार्ग की। वो जीवन का मार्ग, मार्ग किस तरह से है? यीशु ने कहा, मैं वो मार्ग हूँ, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आती है। यदि कोई मनुष्य इस रोटी को खाता है तो वो हमेशा जीवित रहेगा। अब वहाँ उस जीवन के पेड़ की ओर वापस जाने का मार्ग है। आपने इसे समझ लिया? अब इस पर मैं अब दिखाना चाहता हूँ और इसे सुनिश्चित करना चाहता हूँ। यह एक वेदी है। अब यह अवश्य ही अदन की वाटिका में एक वेदी रही होगी। मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्या आपको याद है कि केन और हाबिल दोनों यहाँ आराधना करने आए थे? तो यह दिखाता है कि परमेश्वर की वेदी को हटाकर और यहाँ अदन की वाटिका में स्थापित किया गया, और अदन की ओर वापस जाने का एकमात्र मार्ग वेदी है। आप यहाँ फिर से हैं। देखो, वेदी में से होते हुए अदन की ओर वापस, और उन्हें वहीं पर चौकसी करना था और उसका पहरा देना था कि जब तक ये वेदी लहू से लथपथ न हो जाए, तब तक वे वहाँ वापस न जा सकें। हे परमेश्वर, क्या लोग इसे नहीं देख सकते हैं? देखो, लहू के अलावा कुछ भी नहीं। वहाँ एक प्राश्चित्ता, एक दया का आसन होना है। यह न्याय की वेदी अवश्य ही प्राश्चित्ता का आसन बनना है, और जब यह वेदी यदि लहू को उठा लिया जाए, तो उस न्याय के दिन परमेश्वर के क्रोध की आग खड़ी होगी, ताकि उस वृक्ष की फिर से रक्षा करे। अदन के इस फाटक में फिर से केवल एक ही चीज प्रवेश करेगी, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा। आपने इसे देखा? अब ध्यान दें। जी हाँ, अब केन, ओह, यहाँ पर केन है और यहाँ पर हाबिल है। हाबिल, तो ठीक है, अब दोनों लड़के इस द्वार पर आराधना करने आते हैं। क्या यह सही है? तो यह अवश्य ही परमेश्वर की वेदी रही होगी। क्या यह सही है? और इस वेदी के आगे उन्होंने एक प्रतिस्थापन वेदी बनाई। यहाँ पर परमेश्वर की सच्ची वेदी है, ये मनुष्य के हृदय में है। उसके बाद यहाँ नीचे एक और वेदी है, जो पवित्र स्थान में परम पवित्र स्थान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ओह, ओह, मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे अन्य जुबान में बोलूं। ओह प्रभु, महिमा हो। क्या आप नहीं देख सकते? यह एकदम सिद्ध है। बस ध्यान दें। ओह, मेरा ऐसे कहने का कारण क्योंकि मैं अपनी अंग्रेजी बोली में पर्याप्त शब्दों को नहीं पा सकता हूँ ताकि मेरी भावना को व्यक्त करूँ। देखिए, कुछ तो व्यक्त करना है। भाई रोवे के जैसे राष्ट्रपति के राजनीतिज्ञ, जो लगभग 4 या 5 अलग अलग उपराष्ट्रपतियों के थे, उन्होंने कहा, ओ भाई ब्रैनम, मैं एक रात में सभा में गया। उसने कहा, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। उन्होंने कहा, मैं वहाँ बाहर खड़ा था। और उन्होंने कहा, ओह, कहा, मैंने जीवन भर प्रभु से प्रेम किया है। उसने बोला, मैं सोचता हूँ एपिस्कोपेलियन। उसने कहा, मैंने सोचा कि मैं प्रभु को जानता हूँ। उसने कहा, मैं एक रात को मैंने यहाँ वहाँ देखा, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। कहा, मैं बिना किसी भी बात के अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन कहा, मैंने वचन को आगे आते हुए सुना, ओह यह आना आरंभ हुआ। उसने कहा, मैं तंबू के बाहर ऊपर नीचे चलना आरंभ किया, आगे पीछे चलने लगा, और कहा तुरंत ही मैं दरवाजे तक जाने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। जब वेदी की पुकार हुई तब मैं इसके नीचे धीरे धीरे चलने लगा और वेदी की ओर दौड़ा और नीचे गिर पड़ा, कहा प्रभु मैं एक पापी हूँ, और कहा तब उसने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और कहा मैं 8 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ है। देखा, वह एक उसमें वो एक राष्ट्रपति का एक राजनीतिज्ञ है, और वुड्रो विल्सन से लेकर अब तक जितने भी हैं, वो हमारे प्रत्येक राष्ट्रपति के लिए एक राजनीतिज्ञ रहे हैं, विदेशी राजनीतिज्ञ, कोई भी विदेशी भाषा को बोल सकते हैं। उसने कहा मैं व्यावहारिक रूप से संसार की हर ज्ञात लिखित भाषा को जानता हूँ, लेकिन कहा मैं इतनी महिमा से भरा हुआ था कि मैं उनमें से किसी भी भाषा का उपयोग उसकी स्तुति करने के लिए नहीं कर सकता था। इसलिए प्रभु ने मुझे उसकी स्तुति करने के लिए स्वर्ग से एक नई भाषा को दिया है। ओह ओह, आप वहाँ हो, इस फाटक का पहरा देना। केन और हाबिल यहाँ आराधना करने के लिए आए, तो यह अवश्य ही एक वेदी रही होगी जिसका वे पहरा देते हैं। क्या यह सही है? ये करूब। एक और बात, यहाँ एक और प्रमाण पर ध्यान दें। केन, देखो अब बाइबल को देखें। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी ओर मुड़ें, लेकिन यह कोई बात नहीं, आपको यह उत्पत्ति में मिलता है। तो ठीक है, देखो केन चला गया, केन प्रभु की उपस्थिति से वाटिका के फाटक से बाहर चला गया। तो प्रभु की उपस्थिति अवश्य ही वेदी पर रही होगी, और वेदी फाटक पर थी, महिमा। ओह तो ठीक है, यह परमेश्वर का वास करने का स्थान है, उसकी वेदी पर। अब केन इस स्थान से प्रभु की उपस्थिति से चला गया। आप इसे लिखकर रखना चाहते हैं, उत्पत्ति 4:16, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं। अब आपने ये सब लिखा है, क्या आपने लिख दिया है? अब मेरे पास कुछ और भी है जिसे मैं यहाँ केवल एक मिनट में चित्रित करना चाहता हूँ। मैं बस आशा करता हूँ कि आपकी कोई भी फली की सब्जी जल नहीं जाएगी या आप पर कुछ भी नहीं होगा। अब ध्यान दें, उन्हें जलने दो, इसमें कोई बात नहीं, वे वैसे भी सड़ जाएंगे। आइए हम यहाँ इस विषय में सोचते हैं। यही वह चीज है, यही वास्तविक है। मूसा को स्वर्ग में उठा लिया गया था, मूसा को धरती पर से ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की वेदी को देखा। क्या यह सही है? मैं यहाँ अपने तथ्य को साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप नहीं जानते? तो ठीक है, वह परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर चला गया, और जब वह परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे उतरा, उसने कहा परमेश्वर ने मूसा को बताया, धरती पर हर एक चीज को स्वर्ग के अनुसार नमूने के रूप में बनाओ। क्या यह सही है? तो ठीक है। अब जब उसने ऐसा किया, जब उसने वाचा का संदूक बनाया, तो उसने संदूक के पहरे के लिए 2 करूबों को रखा। देखा यह क्या है? यह मंदिर था, ये वेदी थी, सियासन के पहरेदार, वे 2 करूब। उसने कहा उन्हें पीतल में से बनाओ और उनके पंखों को इस तरह से छूते हुए रखो, क्योंकि बिल्कुल ठीक इसी तरह से उसने स्वर्ग में देखा था। ठीक यही है जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा। ये 4 करूब स्वर्ग में सियासन के संदूक के चारों ओर हैं। वे संदूक को पहरा दे रहे थे, करूब दया के आसन पर पहरा दे रहे थे। यदि आप उस वचन को पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास उस पर जाने का समय नहीं है, तो निर्गमन 25:10 से लेकर 22 लिख कर ले लें। अब वे दया के आसन को पहरा देते हैं जब परमेश्वर अपनी तेजो में महिमा में होता है। तेजो में महिमा कहाँ थी? दया के आसन पर। क्या यह सही है? वे उस तेजो में महिमा का पहरा देते हैं। सुनना मित्रों, उसके बाद यह दिखाता है कि हर एक दुष्ट या चालबाज वहाँ नहीं आ सकता और उसे नहीं ले सकता है। उसकी उपस्थिति के अंदर आने से पहले आपको तैयार होना होगा। नमूने के रूप में हारून को देखें। इससे पहले अब याद रखें, उन दिनों के सभा के लोग यहाँ तक किसी भी आचरण या ढंग से इसके अंदर नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन जब हारून अंदर गया, उसे इसके अंदर कितनी बार जाने के लिए मिलता था? वर्ष में एक बार। उसके पास कैसे? उसे विशेष वस्त्रों को पहनना होता था जिसे किसी विशेष हाथों से बनाया गया था, एक अनोखे तरह के वस्त्र। उसे इस तरह से वस्त्र पहनने होते थे। उसके पास उसमें कुछ अनारदाने और कुछ घंटी लगी होती थी, जो हर बार उसके चलने पर ये बजती थी, पवित्र 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 प्रभु के लिए। वह लहू के साथ दया के आसन के निकट पहुंच रहा था और उसे एक विशेष तेल से अभिषेक होना था, शारोन के गुलाब से बना एक विशेष सुगंध का इत्र लगाना था। और यीशु वो शारोन का गुलाब था, और ध्यान दें, गुलाब एक सुंदर चीज है, इसमें इत्र होता है, लेकिन इससे पहले कि इत्र को बाहर निकाल सके, गुलाब को कुचलना पड़ता है, और उसके बाद गुलाब से इत्र को निचोड़ा जाता है। यीशु उसके जीवन में जो अब तक का सबसे सुंदर जीवन था, लेकिन वो उसी तरह से नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपनी कलीसिया का अभिषेक करना था, ताकि उसके परम पवित्रता तक पहुँचे। इसलिए उसके जीवन को निचोड़ दिया गया था, और वही पवित्र आत्मा जो उस पर था, ये कलीसिया पर डाला गया है, और यह उसे कल, आज और युगानुयुग एक सा शारोन का गुलाब उसका इत्र बना देता है। वो व्यक्ति जो इस परम पवित्र स्थान के अंदर की ओर आ रहा है, उसका उसी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया होना है, और जैसे वो चलता है पवित्र पवित्र पवित्र, उस न ही अपने मुंह में सिगार लिए हुए पवित्र, न ही अपने कॉलर को घुमाए हुए पवित्र पवित्र पवित्र, यीशु मसीह की पवित्रता के वस्त्र को पहने हुए। आप कितने अद्भुत हैं। ओह, अब दया का आसन हृदय में है, आसन जहाँ से उसकी महिमा आगे उसके सारे बच्चों के ऊपर चमक रही है, मनुष्य के हृदय में उसकी तेजो में महिमा। यहाँ मनुष्य का हृदय है, क्या यह सही है? क्या यह दया का आसन है? आप इसमें से होते हुए इसके अंदर कैसे आते हैं? क्या इन भिन्न भिन्न सिद्धांतों में से होते हुए, खुद की इच्छा में से होते हुए, खुद की इच्छा यहाँ इसमें आते हैं, और वहाँ से होते हुए बाहर क्या आता है? तेजो में महिमा। तेजो में महिमा क्या है? ये परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब कोई पुरुष चल रहा होता है या एक महिला, तो वो तेजो में महिमा को प्रतिबिंबित करता है। वह जुए के अड्डों में नहीं जाता है और ऐसे ही जारी रखे और यहाँ से बाहर जाकर और वचन का इनकार करे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, उसका हृदय एक बात पर स्थिर रहता है, परमेश्वर। और यदि वो सचमुच परमेश्वर का बुलाया हुआ है, तब यीशु मसीह उसमें से होते हुए तेजोमय महिमा के साथ स्वयं को प्रतिबिंबित करता है, उन्हीं कामों को करते हुए जो उसने वहाँ पहले किए थे, उसी सुसमाचार को प्रकट करता है, उसी वचन का प्रचार करते हुए, वही वचन प्रकट बना उसी माप में जो ये तब था, वैसे ही जैसे ये वास्तव में पेंटिकॉस्ट पर था, इसे वापस फिर से माप में दिया गया है। ओह प्रभु, दया का आसन, यज्केल और यूहन्ना दोनों ने एक जैसी बातों को देखा। अब ध्यान दे, अब हम अंत में पहुंचने पर हैं, बस थोड़ी ही देर में। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीजों को पकड़ें। ओह, कृपा से मत चूकना। अब कितने लोग जानते हैं कि वे करूब जीवित प्राणी थे, न कि पशु? वे एक सबसे उच्च वर्ग में थे। अब क्या एक दूत एक मनुष्य की तुलना में उच्च वर्ग में है या एक निचले वर्ग में है? तो ठीक है श्रीमान, कौन सबसे बड़ा है, परमेश्वर का पुत्र या एक दूत? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर किसकी ज्यादा सुनेगा, एक दूत जो उसके सामने खड़े होकर कुछ तो विनती कर रहा है, या आप सब में से कोई एक जो विनती कर रहा है? आप सब में से एक की देखो, क्योंकि आप बेटे और बेटियां हो। वे तो दास हैं, समझे, वे दास हैं, और आप पुत्र और पुत्रियां हो। तो देखा, आपके पास क्या अधिकार है, हम बस इसका उपयोग करने से डरते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें, यह सुंदर है। ओह प्रभु, मैं यहां पर आऊंगा और इसमें से कुछ को छोड़ दें, जिससे कि मैं इस पर जा सकूं। अब अपनी कलम को उठा लें, यहां है ये जिसे मैं वास्तव में चाहता था कि आप चित्रित कर लें। हो सकता है मैं इसे थोड़ा छोटा सा बनाऊं। अब इसराइल उनकी यात्रा में जब उन्होंने तंबू को डाला था, तो अब इस पर ध्यान दे, उन्होंने तंबू डाले, 1, 2, 3, 4। नहीं, मैं सोचता हूं कि मैं गलत हूं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. इसी प्रकार से उन्होंने दया के आसन के चारों ओर तंबू डाले। अब मैं जानता हूँ आप सभी ये जानते हैं, आपने पुराने नियम को देखा और पढ़ा है। अब पूर्व की ओर ठीक यहाँ मैं इसे नीचे डाल दूंगा ताकि आप इसे समझ के सुनिश्चित कर सकें। पूर्व की ओर हमेशा ही यहूदा था। यह फाटक है JUDA यहूदा, और यहूदा के साथ तीन गोत्रों का सिर उनके झंडे के साथ था। उनके झंडे के साथ तीन गोत्र, यहूदा का झंडा। आपको याद है कितने लोगों ने 10 आज्ञाएं फिल्म देखी है, सेसिल डेमिल की 10 आज्ञाएं। तो ठीक है, या आप इसे ठीक यहाँ वचन में पढ़ते हैं, मतलब वहाँ वचन में पढ़ते हैं पूर्व की ओर यहूदा था। तो ठीक है, पश्चिम की ओर यहाँ नीचे आप इसे लिख कर रखें, आप इसे पढ़ें। ठीक, यह निर्गमन पर है और इत्यादि जब वे बाहर निकले। अप्रेम था EPH, और उसके झंडे के साथ तीन गोत्र थे। तो ठीक है, अप्रेम। अब और दक्षिण की ओर रुबेन था RUB, जिसके तीन गोत्र थे और उनका झंडा। और उत्तर की ओर दान और तीन गोत्र और उनका झंडा था। तो ठीक है, अब इस तरह से उन्होंने तंबू को डाला। अब याद रखें, आइए अब वचन में पढ़ते हैं ताकि हम इसे बिल्कुल सही से समझ सकें। मैं सातवें पद पर वापस आरंभ करूंगा। और पहला प्राणी सिंह के समान था, और दूसरे प्राणी का मुंह बछड़े के समान था या एक युवा बैल। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का समान था, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान था। और चारों प्राणियों के हर एक के पास उसके 6-6 पंख थे, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद देते हैं, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीवता है आराधना करते हैं और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देते हैं कि हे हमारे प्रभु, तू ही महिमा आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से हैं और सृजी गई। अब आप देखना पूर्व दिशा की ओर उसने किस प्रकार के एक मुख को देखा। यदि आप ध्यान दें तो वो सिंह था, LION, यह वो झंडा था, यही वो यहूदा का मान्य झंडा था, क्योंकि वही वो यीशु वहीं से बाहर सत्य है और वह यहूदा के गोत्र का सिंह है। अब कितने लोगों ने कभी नक्षत्र को देखा है? आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि यह क्या है, तारा। समझे, यह परमेश्वर की पहली बाइबल है। अब यह किस तरह से आरंभ होता है? नक्षत्र में पहली राशि ये कुआरी है, क्या यह सही है? और अंतिम क्या है? सिंह। पहला आगमन और मसीह का दूसरा आगमन, वहाँ सभी में से होते हुए उन्हें आड़ा तिरछा केकड़ा मिलता है। मेरा मतलब आड़ा तिरछा युग बस वही है जहाँ वह आड़ी तिरछी मछलियाँ हैं, जो कि केकड़ा युग है, और हम ठीक इसमें से होकर रहते हैं। और ध्यान दे, पिरामिड जब उसने इसे बनाया हनोक के समय में, हर एक पत्थर उसमें था। वे बिल्कुल ठीक ठीक उन चीजों को माप सकते थे और युद्धों और चीजों को बता सकते थे। हर एक चीज पूरी है सिवाय सिरे के पत्थर के। क्यों? आप अपने डॉलर के नोट पर ध्यान दिया है? इसे निकाल कर और देखें, इसे ढापा हुआ नहीं है। क्यों? इसे कभी भी ढापा नहीं गया था। मसीह वह सिरे का पत्थर है जिसे ठुकराया गया था, पर ठुकराया हुआ सिरे का पत्थर था। वो बहुत ही जल्द वापस आ रहा है। देखो कैसे वो कलीसिया बहुत पहले वहाँ लूथरन युग में नीचे की तरफ चौड़ा था, उसके बाद संख्या कम हो जाती है, फिर थोड़ी संख्या और कम हो जाती है, थोड़ा और कम, जब तक ये ठीक नीचे तक नहीं आ जाता है। ये पेंटिकॉस्टल युग को छोड़ने के बाद ये नीचे आकर उसमें हर एक पत्थर पर फिट बैठता है, ताकि वहाँ उस पर सिरे को रखे एक कलीसिया जो यीशु को कल आज और युगानुयुग के लिए एक साथ लेकर आएगी, बस उतने ही सिद्ध रूप से जितना ये हो सकता है। अब वो यहूदा के गोत्र का सिंह था। अब कोई भी जो हमेशा बाइबल को पढ़ता है वो जानता है कि दान की संख्या क्या थी, या क्या दान, ओ मेरा मतलब है क्या, जी हाँ, दान क्या था, उसका वो एक उकाब था। यह सही बात है, वो एक उकाब था। कोई बाइबल पढ़ रहा है, वो एक उकाब था। अब रूबेन वो मनुष्य था, वो पहला एक था जो झुंड में सबसे कमजोर था। क्या उत्पत्ति 1:49 में याकूब ने ऐसा नहीं कहा, रूबेन तू मेरी शक्ति का पहला भाग है, लेकिन जल की नाई तू मेरी ही खाट पर चढ़ा और मेरे खाट को अशुद्ध किया, और वो अपने पिता की रखेल के साथ रहा था। देखिए, यही मनुष्य जाति की अनैतिकता या चरित्रहीनता है। आप समझे, जानवरों के पास वे अनैतिकताएं नहीं होती है, न ही सिंह में, इनमें से किसी के भी पास नहीं होती है, लेकिन मनुष्य ऐसा करता है। दूसरे पुरुष की पत्नी और आदि के साथ भागता फिरता है, बिल्कुल जैसे बस वही चीज, हर एक चीज पूरी हो गई है। अब यह यहाँ नीचे, ये दान एक उकाब था और ये रूबेन मनुष्य का मुख था और अप्रेम बैल है। अब आपको वहाँ वो तस्वीर मिल गई, अप्रेम। बाइबल में इसी तरह से उन्होंने तंबू को डाला था। अब यदि आप ध्यान दें, दान 3 गोत्रों का प्रमुख है, यहूदा 3 गोत्रों का प्रमुख है, रूबेन 3 गोत्रों का प्रमुख है और अप्रेम 3 गोत्रों का प्रमुख है। 3 × 4 = 12 होते हैं, इसराइल के 12 गोत्र। देखो, हर एक अपने झंडे के साथ है, और यहूदा का झंडा सिंह था, रूबेन का झंडा मनुष्य, अप्रेम का झंडा एक बैल, दान का झंडा एक उकाब था। अब यहाँ वापस देखें कि यूहन्ना ने क्या कहा और एक का मुख। आइए अब यहाँ पर पढ़ें, बस देखें कि क्या यह वही चीज नहीं है जो स्वर्ग में थी। वो पहला पशु सिंह के समान था, यहूदा। दूसरा पशु एक बछड़े के समान था, यह एक युवा बैल है। तीसरा पशु एक मनुष्य का मुख था और चौथा पशु था एक उड़ता हुआ उकाब। ठीक वैसे ही इसराइल के गोत्रों ने चारों ओर तंबू डाले, पहरा दे रहे हैं, वे ठीक संदूक तक धरती पर के रक्षक हैं। ओ हालेलुया, क्या आप इसे नहीं देखते हैं? यहाँ दया, MERCYSEAT, दया का आसन उन गोत्रों को पार किए बिना इसके आसपास कहीं भी कोई भी नहीं आ सकता था। किसे पार किए बिना? सिंह, मनुष्य को पार करना, मनुष्य की बुद्धिमता, और सबसे परिश्रमी मनुष्य को पार करना, जैसे एक बैल या उकाब को पार करना, उसके वेग को, समझे। आकाश, धरती, बीच में और चारों ओर आप देखो, वे पहरेदार थे और इसके ऊपर अग्नि का स्तंभ था। भाई, उस दया के आसन को कोई भी नहीं छूता है बिना वहाँ पहुँचे, और केवल एक चीज जो उस तक जा सकती थी, ये लहू में से होते हुए था। हारून वर्ष में एक बार लहू को लेकर वहाँ जाता था। अब आप इसे देखते हैं, अब देखो, 3 जातियों के प्रत्येक प्रमुख दया के आसन का पहरा देते हैं, पुराने नियम का दया का आसन। अब क्या आप हर एक ने इसे लिख दिया है? अब यहाँ एक नया है भाई, इसे सुनना, उसके बाद हम चले जाएंगे। अब याद रखें, ये पुराने नियम के पहरा देने वाले थे। कितने लोगों ने इसे कभी बाइबल में पढ़ा है? आप जानते हैं कि ये क्या सही है? देखिए, ये पुराने नियम के पहरा देने वाले हैं। अब हम दूसरे युग में जी रहे हैं, महिमा। ओह, मैं इस युग को प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते? अब परमेश्वर के पास आज दया का आसन है जिसकी रक्षा की जानी है, क्या आप यह विश्वास करते हैं? दया का आसन कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के हृदय में। मनुष्य के हृदय में ये कहाँ से आया? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा, जो कि परमेश्वर है, मनुष्य के हृदय में आया। क्या यह सही है? अब इसे यहाँ चिन्हित कर लें, और यदि आप चाहें तो इसका चित्र बनाने के लिए तैयार हो जाएं। पेंटिकॉस्ट, PENT, मैं पेंटिकॉस्ट लिखूंगा। यह दया का आसन है, पवित्र आत्मा, यहाँ लिखें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसे और अधिक उपयुक्त बनाते हैं। आइए, यहाँ पर पिंडुक लिखेंगे, जिसका अर्थ है पक्षी। देखो, तो ठीक है, दया के आसन का पहरा दे रहे हैं। क्या अब परमेश्वर को आज दया के आसन के पहरेदार मिल गए हैं? अब देखें कि इसे कितना सुंदर चित्र बनाया गया है। मैं एक दिन बैठा हुआ था और इसे देखा, और मैं बस उछल पड़ा और कुर्सी के गोल गोल और गोल गोल और गोल गोल दौड़ने लगा, ऐसा कहते हुए, महिमा 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 महिमा, गोल 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 गोल। चार्ली, मैं कभी कभी जंगल में जितना करता हूँ उससे भी ज्यादा मेरा बर्ताव होगा। बहन नैली, यदि मैं ऐसा बर्ताव करता हूँ तो आप मुझे अपने घर से बहुत जल्दी निकाल देंगी। ओह, मेरे पास तब एक महिमा में समय था, अब देखो ये क्या था, प्रभु ने क्या किया। अब पेंटिकॉस के बाद एक किताब लिखी, क्या पवित्र आत्मा के कार्य, ACTS। क्या यह सही है? प्रेरितों के काम की शुरुआत किससे होती है? उद्धार में प्रवेश करने वाली पहली चीज, प्रेरितों के काम 2:38। यहाँ यह लगभग आखिरी है। क्या यह सही है? वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलना आरंभ किया, और पतरस उठ खड़ा हुआ और उन्हें एक उपदेश को प्रचार किया। उन्होंने कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें इसके अंदर कैसे जाते हैं? उसने कहा, प्रेरितों के काम 2:38, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक जन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। अब याद रखना, परमेश्वर के पास उस दया के आसन के लिए कुछ पहरेदार हैं। वे किस दया के आसन का पहरा देते हैं? तो ठीक है, MATH, मती, पूर्व में लुका, लुका, मरकुस और यूहन्ना, उनके सारे चार सुसमाचार आने वाली प्रेरितों के काम की किताब को प्रमाणित करते हैं। वे इसे कहीं पर भी पहरा देते हैं, जहां कहीं भी आप इसे देखना चाहते हैं। आइए बस एक को लेते हैं, बस एक, हमारे पास समय नहीं है। मैंने यहाँ 20 या उससे अधिक लिखे हुए हैं, लेकिन आइए इस उद्धार के विषय के लिए एक को ही लेंगे। क्या हमारे पास प्रार्थना करने का समय होगा? नहीं, यह 1 बजे है, इसलिए मुझे लगता है कि हम यह नहीं कर पाएंगे जब तक आप बीमारों के लिए सभी प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे। अब मेरे पास अभी काफी समय है, देखा? तो ठीक है, अब इस पर ध्यान दें। मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये क्या है? सुसमाचारों की धरती पर की संख्या 4। तो ठीक है, ध्यान दें। अब मती 28:19, अब यही है जहां आप त्रिएकता वाले भाई लोग जाते हैं, 28:19। तो ठीक है, मती के अध्याय के अंतिम भाग में कहा, इसलिए जाओ सभी राष्ट्रों को सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। लेकिन यह पेंटिकॉस के पास आता है और पतरस ने कहा, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। वहाँ कुछ तो गलत है। मती, क्या तू पूर्वी फाटक का पहरा देने वाला है? फाटक कैसा है? फाटक क्या है? यीशु ने कहा, सकेत है वो फाटक। क्या यह सही है? क्या ऐसा उच्चारण है? इसे कैसे उच्चारण किया जाता है? STRAIT या STRAGHT? STRAIT का अर्थ होता है जल। जल ही फाटक है। आप अंदर कैसे आते हो? तुम में से हर एक जन पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, फाटकों को खोल देता है। ओह, लेकिन भाई ब्रैनम, आपने मती 28:19 को वहाँ नीचे रखा है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन मती, क्या तू उसका पहरेदार है? निश्चय ही मैं पूरी तरह पहरेदार हूँ। अब मती 1:18 को निकालें और देखें कि यह क्या कहता है। देखें कि क्या यह इसका पहरा करता है। देखें कि क्या मती 1:18 मती 1:28 का पहरा कर रहा है, और प्रेरितों के काम 2:38, देखें कि क्या यह इसका पहरा करता है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ था। यहाँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वे कहने की कोशिश करते हैं। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। कौन सा एक? यह उन दोनों को एक रखा, और यह जो था तब हो गया। और देखो, अब उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने इस तरह से उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। देखो, प्रभु का दूत उतर रहा है, उस पर उतरा आप जानते हो, और कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। देखा, और वह पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, जो कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, यशाया 9:6, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और वे उसका नाम पुकारेंगे क्या वो इसका पहरा देता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, बस यही उस एक नाम के शीर्षक। तो पहरेदार ठीक वहाँ खड़ा होता है उसका समर्थन देने के लिए। आपने इसे समझा? ओह प्रभु, अब कितने ये जानते हैं, यहाँ है ये, वो एक पहरेदार है। अब आइए, बस मेरे पास उद्धार के लिए दूसरों की तमाम ढेर सारी चीजें हैं, इन दूसरों को लूं। लेकिन अब यदि हम बस कुछ ही मिनट में प्रार्थना की पंक्ति लेने जा रहे हैं, लगभग 10 मिनट के लिए, तो आइए यहाँ कुछ और प्रयास करें, बस कुछ मिनट के लिए। आइए अब कुछ वचनों को लें। मैंने यह कहाँ लिखा है? यहाँ है ये, तो ठीक है। अब आइए लेंगे और देखेंगे कि क्या मती अब यहाँ पर दिव्य चंगाई के लिए इसका पहरा देगा। अब आपने अपनी पेंसिल और चीजों को ले लिया जो आप इसे लिख रहे हैं, तो ठीक है, देखें कि क्या मती विभाजित इसका पहरा देगा। आइए मती 10:1 को लें। आइए लेंगे और देखें कि क्या यूहन्ना, बस एक या दो, आइए दो ले लेंगे, या इसमें से जो एक या दो को, यूहन्ना 14:12 और 15:7 को लें। देखें कि क्या वे परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर दिव्य चंगाई का पहरा दे रहे हैं। मरकुस 16, मरकुस 11:21 और 22, लूका 10:1 से लेकर 12 और लूका 11:29 से लेकर 31 तक। आइए उसमें से कुछ में से होकर जल्दी से जाएंगे, देखें कि क्या वे पहरा देते हैं, देखें कि क्या वे देव चंगाई के लिए सीधे पहरा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे यीशु के नाम के बपतिस्मे के फाटक के लिए पहरा देते हैं। हम इसे उसमें से प्रत्येक में से होकर ले सकते हैं, ये सही बात है। अब आइए हम तब वापस जाएंगे और देखेंगे मती 10:1। अब वापस पीछे जाएं तो हम, और उसके बाद हम लगभग और 5-10 मिनट में बंद करेंगे, अधिक से अधिक प्रभु की इच्छा हुई तो ठीक है। आइए हम मती 10 को लें, देखें कि क्या मती प्रेरितों के कामों का पहरा देता है। क्या आपने ऐसा सोचा था कि परमेश्वर अपने वचन के चारों ओर पहरा नहीं देता है? देखें कि क्या यह बैल, सिंह, मनुष्य, उकाब अब भी यहाँ धरती के उन फाटकों पर बैठे हुए नहीं है? यहाँ भी सुसमाचार है, 4 सुसमाचार, देखा? और अब ध्यान दें, वे जिस तरफ भी गए वे सीधे आगे की ओर बढ़े, वे एक दूसरे के विपरीत या खंडन नहीं करते हैं, वे एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। देखा, एक मनुष्य की चतुराई के साथ जाता है, दूसरा उकाब के वेग से चला जाता है, दूसरा एक पास्टर है, एक सुसमाचारक है ताकि सुसमाचार की तरह उड़े। देखो, दूसरा एक पास्टर है, दूसरा एक बलवान है, दूसरा एक चतुर है। देखो, हर तरफ से पहरा है, परमेश्वर इस पवित्र आत्मा सुसमाचार का पहरा दे रहा है, इसे विश्वास करे भाई, तो ठीक है। आइए अब मती 10:1 को लेंगे। और जब उसने उसके 12 चेलों को अपने पास बुलाया, तब उसने उनको सामर्थ्य दी।
I'm so glad that I can say I'm one of them.
और अब बस एक मिनट बालक को शांत करें, जरा सुनना, ध्यान से सुनना। और उन्हें अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध सामर्थ्य दी। बहुत से पास्टर अशुद्ध आत्माओं को अपनी कलीसियाओं में बने रहने देते हैं, महिलाओं के वस्त्र, नाटक, ताश के पत्तों की पार्टियां, जुआ के खेल, नाच, तूप भोज, हर एक, ओह दया, अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध, ताकि उन्हें बाहर निकाले और हर तरह की बीमारियां और हर तरह के रोगों को चंगा करने के लिए। उस पहरेदार को वहां फाटक पर बैठे हुए देखा, सुसमाचार का पहरा, ताकि प्रेरितों के काम की उस किताब का समर्थन करने के लिए जो लिखी गई थी। अब ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने एक बड़े शिक्षक को सुना, कहा एक महान मनुष्य, भला मनुष्य, उससे मिला, उससे हाथ मिलाया, एक भला भाई, उसने कहा लेकिन प्रेरितों के काम कलीसिया के लिए सिर्फ एक रूपरेखा या ढांचा था। दूसरे शब्दों में उसके पास यहाँ पर ढांचा या रूपरेखा थी। देखो, जब प्रेरितों के कार्य अंदर थे और ये सुसमाचार का ढांचा या रूपरेखा है ताकि इसे एक साथ थामे रखें और इसकी रक्षा करें। देखें कि किस तरह से उस एक मनुष्य का दिमाग कुछ भी कर सकता है। यदि ये उसके लिए नहीं होता तो मैं भी यही सोचता। देखा, वो रूपरेखा या ढांचा पेंटिकॉस्ट सुसमाचार का ढांचा या रूपरेखा नहीं थी। चार सुसमाचार रूपरेखा है उस पेंटिकॉस्ट के समर्थन के लिए। उसके बाद उनके पास ये ढांचा या रूपरेखा थी। पेंटिकॉस्ट अस्तित्व में आ गया। क्या ये सही है जिसे पहले लिखा गया था, कार्यों की किताब या प्रेरितों की? प्रेरितों। यीशु कामों को करते हुए चलता रहा और भविष्यवाणी कर रहा था कि क्या होने वाला है। और मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चार पहरेदार आए और जो कुछ बातों को घटित होते हुए देख रहे थे वे सब कुछ लिख रहे थे। बिल्कुल जैसा है वैसा ही बता रहे थे। ये कैसे घटित होने जा रहा है, क्या बात जगह लेने जा रही है। उसके बाद सभी एक ही बार में उन्होंने इसकी लगभग रूपरेखा की और ये आ गई। आमीन। मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये ढांचा या रूपरेखा है या पहरेदार का काम जो मुख्य मंदिर सियासन पेंटिकॉस्टल की आशीषों की रक्षा करता है, न ही पेंटिकॉस्टल संप्रदाय की। भाइयों बहनों, वे संपूर्ण बातों से वापस बाहर निकल आए हैं। किसी भी अन्य कलीसियाओं की तुलना में बहुत ही पीछे चले गए हैं। जो लूथरन थे उनकी तुलना में बहुत दूर जा चुके हैं। उन्होंने जो किया लूथरन ने उससे थोड़ा बेहतर बनाए रखा और यह सही बात है और अधिक इसके जैसे हैं। बस बिल्कुल ठीक जीन, क्योंकि अब मैंने यीशु को लूथरन कलीसिया के बाहर नहीं देखा जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो पहले स्थान पर कभी था ही नहीं, लेकिन वो पेंटिकॉस्टल कलीसिया में था और उसे बाहर रखा गया था। यह सही बात है। अब मती 10:1, आइए अब हम यहाँ यूहन्ना 14:12 की ओर जाएंगे और देखें कि क्या यूहन्ना पेंटिकॉस्ट की बहुमूल्य बातों का समर्थन करने और उनका पहरा देने जा रहा है। यूहन्ना 14:12 में यीशु बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा और वो इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। ओ भाई, वह फाटक वहाँ ठीक जहाँ पर उकाब बैठा हुआ था, क्योंकि यही सुसमाचारीय सभा है। आप जानते हैं, उकाब की तरह उड़ते हुए तेजी से भविष्यवाणी के देश के अंदर वहाँ उतरता है। आप देखो, चीजों को पहले से देख सकता है और उन चीजों को बता सकता है जो थी, जो है और आने वाली है। देखा, ठीक वहाँ बैठा हुआ इसका पहरा देता है। कहा, जो काम मैं करता हूँ उस उकाब की ओर दृष्टि करें। देखें, यहाँ वो सिंह है, सेवक। यीशु ने उन्हें सामर्थ्य दी और वो इसकी रक्षा करता है। वो प्रेरितों के काम 2:38 की रक्षा करता है। वह उसका ठीक वहाँ समर्थन करता है। वो सिंह, यहाँ सुसमाचार की वह गति आती है इस उकाब के साथ, कहते हुए ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर करोगे। इसके साथ दुनिया भर में उड़ान भरें, उस पिंडुक की तरह जिसके साथी के सर को अलग किया गया था और लहू को उंडेला गया था, जमीन पर छिड़कता है पुकारते हुए, पवित्र पवित्र पवित्र, प्रभु के लिए कोड़ी को शुद्ध करता है। जी हाँ, अब मेरे पास वहाँ एक और है, यूहन्ना 15:7। आइए हम ठीक 15:7 की ओर जाएं। यदि तुम मुझ में बने रहो, अब और मेरे वचन, न ही धर्म विद्यालय का वचन, मेरे वचन तुम में बने रहें, जो कुछ तुम मांगोगे और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सही है। तब उस सुसमाचार ने ठीक वहाँ पर पहरा दिया। यह पेंटिकॉस्टल की आशीष को यूहन्ना और उसके सुसमाचार के द्वारा रक्षित किया गया है। यह मती उसके सुसमाचार के द्वारा रक्षित करता है। अब आइए हम अगले सुसमाचार की ओर जाएंगे, मरकुस 16:16। देखें कि क्या मरकुस ने इस पेंटिकॉस्टल आशीष की रक्षा की। मरकुस 16:16। अब आइए यहाँ से आरंभ करते हैं, लगभग उसके बाद पुनरुत्थान के बारे में बताता है। अब आइए आगे जाते हैं जब तक कि हम लगभग उस मरकुस 16:14 तक न पहुँच जाएं। उसके बाद वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर फटकार लगाई, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। उन्हें उन लोगों पर विश्वास नहीं हुआ जो उन्हें संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, आज ये इसी तरह से है। वे लोग जिनके पास पवित्र आत्मा की गवाही है, लोगों ने कहा बकवास, वे पवित्र शोर शराबा करने वालों का एक झुंड है। और उसने उनके मन की कठोरता और उनके अविश्वास के कारण उन्हें फटकार लगाई जो उसे उसके पुनरुत्थान में जानते थे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार करने? यह वहाँ केवल एक ही सुसमाचार है। चार पहरेदार हर एक सृष्टि को इस सुसमाचार का प्रचार करो। अब याद रखें, वो सभी को लेता है, सारे चारों पहरेदारों को, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। देखो, हर एक सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार को पाएगा, और वो जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। देखो, आपको इस बपतिस्मे में प्रवेश करना होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ओ भाई, विश्वास करें कृपा करके। और जोड़ है ताकि शेष वाक्यों को एक साथ जोड़े, और विश्वास करने वालों के पीछे पीछे ये चिन्ह जाएंगे। तो ठीक है, अब आइए देखते हैं मेथोडिस्ट क्या कहता है। यदि आप चिल्ला सकते हैं एक अच्छा जीवन जीते हैं, बैप्टिस्ट कहते हैं बस विश्वास को रखें और बपतिस्मा लें, एपिस्कोपलियन कहते हैं एक एपिस्कोपलियन की तरह खड़े हो जाएं इस तरह से, और जब धार्मिक गान किया जा रहा हो तो झुक जाएं। कैथोलिक कहते हैं कहें मरियम तेरी जय हो। पेंटिकॉस्टल कहते हैं हमारी संप्रदाय में शामिल हो जाएं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लें। आप वहां जाते हैं, समझे? विश्वास करने वालों के पीछे पीछे ये चिन्ह जाएंगे मेरे नाम में। ना ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके बारे में, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर उनके हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। ओ भाई, अब सीधे वापस 11 पर जाएंगे और उसके बाद हम बस बंद करने के लिए तैयार हैं। मती 11 और मेरे पास 20 और 21 है। यीशु बोल रहा है, ये सब यीशु बोल रहा है। अब ना ही उनमें से कोई एक भी सिवाय यीशु के जो बोल रहा है हर एक जन को। और अगले दिन जब वे बैतनिया के पास थे तो उसको भूख लगी और अंजीर के पेड़ को देखकर तभी उसने पेड़ को शापित किया। यह मती 21 है, मेरे पास 12, कृपया मुझे क्षमा करें, मरकुस 11:21-22। और पतरस को वो बात याद आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने मार्ग में शापित किया था। और यीशु ने उत्तर दिया और उससे कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, देखा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तब ये अंदर की तरफ है, तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुन्द्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि परमेश्वर जो कहता है वह पूरा हो जाएगा, तो उसके हो सकता तो उसके लिए वही होगा। भाई, उस दक्षिण फाटक पर बैल के द्वारा पहरा दिया गया है, उत्तरी फाटक पर सिंह के द्वारा पहरा है, उत्तरी द्वार का पहरा है, मेरा मतलब पूर्वी फाटक का, और उत्तर फाटक पर उड़ते उकाब के द्वारा पहरा है यूहन्ना वो सुसमाचारक, तब इस ओर का चिकित्सक लूका वो मनुष्य। अब आइए देखें कि लूका क्या कहता है। लूका को लेंगे, पहला मैं विश्वास करता हूँ कि अपने लूका 10:1-12 तक लिया है। ये वो आदेश है, आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, लेकिन लूका 10:1-12। तो ठीक है, हम ठीक आगे जा सकते हैं और ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा करने के लिए समय नहीं होगा। अपने रास्ते जाओ, मैं तीसरे पद से आरंभ करूंगा। अपने मार्ग पर जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली, देखो किसी संप्रदाय के नाम पर मत जाओ, तुम जाओ जैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। देखा, इस भरोसे के साथ मत जाना कि तुम्हें इस बेदारी के लिए $1,00,000 मिलेंगे, यदि तुम नहीं जाते हो तो मत जाना। तुम देखो अपने अभियान को तैयार करो। उसने बोला, वहाँ जाओ जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, देखो इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। रुकना मत और न कहना, मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूंगा कि कैसे इन्हें साथ ही करते हुए कैसे ये सीधे आगे चले जाना जहाँ मैं तुम्हें भेजता हूँ, किसी और पर ध्यान न देना। और जिस किसी घर में तुम जाओ पहले कहो कि इस घर पर शांति हो, यदि वहाँ शांति का पुत्र होगा तो तुम्हारी शांति लौट आएगी, उस पर ठहरेगी, यदि नहीं तो तुम्हारे पास फिर से लौट आएगी। और उसी समय रहने पर, मेरा मतलब उस घर में रहने पर, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ, और पियो। अब ये सब चीजों के बारे में कि मांस नहीं खाना और ऐसे ही इत्यादि बातें, हे परमेश्वर देखा, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, एक घर से दूसरे घर न फिरना। आज जॉनसिस के साथ रात्रि भोज पर जाते हैं और उस अगले जोड़े के साथ अगले दिन जाते हैं और अगले जोड़े के साथ अगले दिन, तुम ठीक वहीं पर रहो। जब मैं सभाओं में जाता हूँ तो आप जानते हैं मैं होटल में क्यों रहता हूँ और सीधा वहीं पर रहता हूँ। यही वो स्थान है जहाँ मैं शांति को पाता हूँ। देखा, एक घर से दूसरे घर मत जाना, और जिस नगर में तुम जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें स्वीकारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और वहाँ के बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो कि राज्य परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। लेकिन अब ठीक है, मैं अगले पद को पढ़ता हूँ। लेकिन जिस नगर में तुम जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो वहाँ से चले जाओ, नगर से उसी दिन, यहाँ तक नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है। हम आइए अब देखें, यहाँ तक वो, और यहाँ तक कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। ओ भाई, उस धन्य आश्वासन के साथ, यदि वे आपको नहीं देखते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो आगे निकल जाएं, बस कहें तो ठीक है, यदि तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैं बस धूल को झाड़ दूंगा और अपने जूते पर से झाड़ दूंगा और बाहर आगे निकल जाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहें, मैंने कभी कुछ नहीं लिया, यदि मैं कुछ भी खाता हूँ तो मैं आपको इसके लिए भुगतान करूंगा और आगे चला जाऊंगा। उसने कहा, सच सच, और जिस किसी भी नगरों में वे गए और उन्हें ग्रहण नहीं किया गया, उनमें से हर एक आज डूब गया और आज खत्म हो चुका है, और हर एक वो नगर जिसने उन्हें ग्रहण किया वो आज तक खड़ा है। आप यहाँ हो, अब एक और फिर बंद करेंगे। आइए देखें, हमारे पास 10 है, 11:29 से लेकर 31, लूका 11:29 से लेकर 31, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। और जब लोग इकट्ठे हुए थे, आइए देखें, क्या ये लूका है, लूका 11:29 है, जी हाँ, मुझे लगता है कि यही होगा, जी हाँ। और जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी, तो वह कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं, कि वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर वहाँ दिया कोई योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, क्योंकि जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि जब वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की शोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। मैं अब क्या कह रहा हूँ बंद करते हुए, मुझे बस बाकी का छोड़ना होगा, लेकिन अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत लंबे समय तक रोके रखा है, वो यहाँ क्या कह रहा है, वहाँ एक दिन आएगा कि एक दुष्ट और एक व्यभिचारी पीढ़ी, अब याद रखें, एक चिन्ह को ढूंढेंगे, और यह एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी है, और उसने कहा उस पीढ़ी को एक चिन्ह दिया जाएगा। देखें कि यह कैसे शेष बाइबल के अनुरूप है, योना का चिन्ह। योना 3 दिन और रात वेल मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और रात अवश्य ही उस धरती के पेट में रहेगा। यह क्या होगा, पुनरुत्थान का चिन्ह। देखा, पुनरुत्थान का चिन्ह दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी में किया जाएगा, और इसे प्रेरितों के काम की किताब में किया गया था। यीशु मरे हुओं में से जी उठा, पतरस के अंदर आया, याकूब और यूहन्ना और प्रेरितों के अंदर, और उन्होंने कार्यों की इस किताब को किया। यह प्रेरितों के कार्य नहीं थे, ये पवित्र आत्मा के कार्य थे जो प्रेरितों में कार्य कर रहा था। यह आज एक मनुष्य नहीं है, यह पवित्र आत्मा है जो एक मनुष्य में से होते हुए या मनुष्य में से होते हुए काम कर रहा था। देखो यह काम को करता है, यह मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो बस एक बर्तन है, देखो, लेकिन पवित्र आत्मा वो तेल है जो उस बर्तन में है, समझे? और देखो उन्होंने क्या किया, उन चिन्हों को देखो जो उन्होंने यीशु के विषय में किए। उन्होंने उन पर ध्यान दिया था क्योंकि वे अशिक्षित अनपढ़ पतरस और यूहन्ना थे, लेकिन उन्होंने उन पर ध्यान दिया था कि वे यीशु के साथ थे। उन्होंने उन कामों को किया जो उसने किए थे। सो आप देखते हैं बाइबल की हर एक किताब, प्रत्येक चार किताबें, चार सुसमाचार हर एक वचन के साथ पेंटिकॉस्टल आशीष को पहरा देते हैं, समर्थन करने के लिए जो उन्होंने कहा था। और अब प्रेरितों के कार्य चार सुसमाचारों के साथ आज पुष्टि करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या आप उसे प्रेम करते हैं?
Baptized with the Holy Ghost, then power for service came. What he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
मुझे इसे गाने दें। वे ऊपरी कमरे में इकट्ठा हुए थे, सभी उसके नाम में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया और सेवा के लिए सामर्थ आ गई। यही है जो आज हमें चाहिए। उसने उनके लिए उस दिन जो किया, वो तुम्हारे लिए भी वही करेगा। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। हो सकता है कि ये लोग शिक्षित नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल पतरस, याकूब और यूहन्ना की तरह, या न संसारिक प्रसिद्धि का घमंड। उन सभी ने अपने पेंटिकॉस्ट को पा लिया है, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया और अब बता रहे हैं हर कहीं और दूर दूर तक, उसकी सामर्थ अब भी वैसी ही है, बिल्कुल वैसी ही जैसी ये थी। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ।
Oh, come, my brethren, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I am glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
यह उनमें से बहुत से लोगों को भरमाता है। वे कलीसिया जाने वाले रास्ते में, यहाँ बहुत से लोग हैं जो कलीसिया से हैं, उन्हें भरमाया गया है, जैसे हवा को आरंभ में भरमाया था। वे फर्क को नहीं जानते। ओह, आकर जीवन के पेड़ को ले लो। अब बजाय करूबों के, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन करूबों के बजाय जो इस सिंहासन का पहरा दे रहे थे, वे यहाँ खोज रहे हैं, लोगों को फेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सिंहासन के लिए पहरा देते हैं, उन्हें फाटक में से होकर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस फिर से जीवन के पेड़ की ओर लाने के लिए, जिससे कि वे इसे ले सकें। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है। वह जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन जिलाऊंगा। ये सही बात है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। कब्रे में कितने लोग बीमार हैं? आइए हाथों को देखते हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं तो ठीक है। कितने लोगों के पास यह, क्या मैं बिल्ली को समझ पाया? वो कहाँ पर है? क्या उसने प्रार्थना कार्ड दे दिए? क्या आपने? तो ठीक है, किसके पास? अब आप सभी इस तरफ देखें। अब ये ठीक वैसा ही है जैसे ये यहाँ महिमा के नीचे आता है। देखो, देखा, समझे? ये आता है, ये यहाँ पर प्रकाश है। आप यहाँ घूम रहे हैं, आप देखो, अब देखो, यह बस एक प्रतिबिंब है, केवल एक प्रतिबिंब। यही है, देखो, ये प्रकाश नहीं है। यहाँ पर ठीक यहाँ प्रकाश मंडरा रहा है। देखो ठीक यहाँ इस महिला पर, मैंने अभी इसे होते हुए देखा और मैंने सोचा कि यह किसी के ऊपर है। अब आप एक को देख रहे हैं और मैं दो को देख रहा हूँ। उनमें से एक स्वाभाविक है और दूसरा एक अलौकिक है। यहाँ बाहर एक मनुष्य बैठा हुआ है, इस पंक्ति के साथ उस प्रकाश की ओर देख रहा है। वो उस पर रुक गया है, वो सैमूर इंडियाना से है और उसे एक दौरा पड़ा था। यदि आप विश्वास करें श्रीमान, तो परमेश्वर आपको इस दौरे से चंगा कर देगा। आमीन। अब विश्वास करें। क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? तब यदि प्रभु परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, मुझे कुछ ऐसा करने दे जिससे कि मैं आपके सामने यह प्रमाणित करूं कि ये परमेश्वर है, तब आप पूरे हृदय से विश्वास करेंगे। आपकी स्थिति एक नसों से संबंधित स्थिति है, जिसका कारण एक रजो निवृत्ति है। आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप यहाँ से भी नहीं हैं। आपकी परेशानी क्या है और ऐसा करने पर कि वो आपको चंगा कर देगा? आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि यह आप नहीं हैं जो चंगा होना चाहते हैं, ये आपका बेटा है। देखा, वो वर्जीनिया में है। क्या विश्वास करते हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके साथ क्या गलत है? परमेश्वर की सहायता के द्वारा उसे अल्सर हुआ है, यह सही बात है। और उसके साथ एक और बात गलत है, उसका उद्धार नहीं हुआ है और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब श्रीमती बेकर, आप समरसेट की ओर वापस लौट जाएं और पूरे हृदय से विश्वास करें, यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा। आपको चंगा करता है, क्या आप उसे अपने चंगा करने वाले के रूप में स्वीकार करते हो? यदि आप कर सकते हैं, चंगा करने वाला। पौलुस ने एक समय कहा, लोगों के यह श्रोतागण जो दिन में यहाँ तक दिन भर ध्यान लगाकर सुनते हैं प्रभु, अब प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया और भलाई उन पर बनी रहे। शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में चुनौती देता हूँ, इन लोगों में से बाहर निकल। वे सुसमाचार को सुनने के लिए रुके हुए हैं, तो उन्हें अब और नहीं पकड़ कर रख सकता। वो शैतान की सामर्थ जिसने इन लोगों को बांध रखा है, छोड़कर चली जाए।